रक्षा की बारीकियों के बारे में लिन फैंग ने सुझाव दिया कि दोनों पक्ष बारी बारी से बैकहिल गांव की रक्षा करें। ऐसा करने से दोनों पक्षों को पर्याप्त आराम मिलेगा और अगर किसी एक पक्ष को कोई खतरा हो तो दूसरा पक्ष तुरंत सहायता प्रदान कर सकेगा। उन्होंने इस मामले पर पहले ही स्पष्ट रूप से विचार कर लिया था, इसलिए बोलने के बाद उन्होंने रॉकी की ओर देखा। हालांकि रॉकी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उसने अपना सिर घुमाकर लिलिया की तरफ देखा, इस मामले पर उसकी राय जानना चाहता था। रॉकी के लोगों में सिर्फ लिलिया को ही सेना की कमान संभालने का अनुभव था, इसलिए इस बातचीत से पहले ही रॉकी ने अपनी सेना की कमान लिलिया को सौंप दी थी। अब स्वाभाविक रूप से फैसला उसी से प्रभावित होगा, ये स्वीकार्य है। जब रॉकी ने उसकी तरफ देखा तो लिलिया ने लिन फैंग की विधि से सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने आगे कहा, कैप्टन लिन फैंग, वैकल्पिक बचाव का सुझाव अच्छा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कोई चाल नहीं चल रहे हैं। जब सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होती है तो हमारे कमांडर कोई दुर्घटना नहीं देखना चाहते। लिलिया ने हर शब्द का उच्चारण करते हुए लिन फैंग से यह कहा। लिलिया की लिन फैंग के बारे में राय अच्छी थी, वह हट्टा कट्टा आदमी वाकई ईमानदार और भरोसेमंद लग रहा था। हालांकि वह एक बात नहीं भूली थी, उसके परिवार और बैकहिल विलेज के बीच कोई मजबूत रिश्ता नहीं था और उनके बीच भरोसे की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसी स्थिति में लिलिया निश्चित रूप से नहीं चाहती थी कि रॉकी को मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाए, नहीं वह चाहती थी कि थंडरहॉक सिटी के गार्ड कोर को राक्षसों को रोकने में खर्च करने योग्य समझा जाए। उसके बारे में लिलिया की स्पष्टवादिता से लिन फैंग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन जल्द ही एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोले, निश्चिंत रहिए मिस लिलिया, हम कभी आपकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि कमांडर रॉकी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। बोलते समय लिन फैंग ने रॉकी की ओर देखा, स्पष्ट रूप से उसकी चिंताएं भी लिलिया जैसी ही थीं। इसके बाद दोनों पक्षों ने बचाव पक्ष की बारीकियों पर बातचीत की। जब तक रॉकी लिलिया और मोटे के साथ शिविर में लौटा तब तक रात हो चुकी थी। लिलिया, क्या वैकल्पिक बचाव करना वास्तव में अच्छा है? कैंप लौटते हुए रॉकी ने मन ही मन संदेहों से भरे लिलिया से पूछा। हालांकि उसे सैन्य मामलों की सीमित समझ थी, फिर भी उसे लगा कि उनकी सेना, जो कुल मिलाकर केवल 300 सैनिक हैं, को मिलाकर ज्यादा मजबूत होगी। उन्हें जानबूझकर अलग क्यों किया जा रहा है? नहीं, उन्हें अलग रखना आसान है। फिर भी उनके प्रश्न पर लिलिया ने अपना सिर हिलाया, ये सच है कि हमारी ताकतों को मिलाने से समूह बड़ा हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम मजबूत हो जाएं। ऐसा क्यों? सहयोग के कारण, विश्वास के कारण तथा हमारी अलग अलग युद्ध शैलियों के कारण। लिलिया को स्पष्ट रूप से सैनिकों की कमान संभालने का बहुत ज्ञान था, उसने आगे कहा, बैकहिल विलेज के साथ हमारा रिश्ता पूरी तरह से मिशन पर आधारित है, न केवल हमारे बीच कोई विश्वास नहीं है, बल्कि कुछ हद तक हम दोनों एक दूसरे के प्रति सतर्क भी हैं। इन परिस्थितियों में हमारे सैनिकों का विलय हमारी युद्ध शक्ति को नहीं बढ़ाएगा। इसके अलावा हमने पहले कभी सहयोग नहीं किया है, और एक बार जब सैनिक एकजुट हो जाएंगे तो न केवल समन्वय नहीं रहेगा, बल्कि इससे व्यक्तिगत कमान में भी बाधा आएगी और सैनिक एक अव्यवस्थित समूह में बदल जाएंगे। ऐसी स्थिति में अलग अलग रहना ही बेहतर है। तो यह ऐसा है? लिलिया की बात सुनकर रॉकी खुद को सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसे एहसास हुआ कि सेना का नेतृत्व करना कोई आसान काम नहीं था। उसने जो कुछ भी पहले सोचा था वह साफ तौर पर बहुत सरल और नासमझी भरा था। इस तरह रॉकी, लिलिया और मोटे चलते चलते बातें करते रहे, रक्षा तैयारियों की बारीकियों पर चर्चा करते रहे, जबकि मोटे उन्हें काली आंखों वाले राक्षसों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता रहा। कुछ ही देर में वे शिविर में लौट आए। कैंप में वापस आकर रॉकी ने टीम के लिए कोई और काम नहीं रखा, बल्कि सभी को आराम करने की हिदायत दी। आखिरकार मिशन कल से ही आधिकारिक तौर पर शुरू होना था। रॉकी से अलग होने के बाद लिलिया अपने तंबू में लौट आई, जिसे रॉकी ने उसके लिए खास तौर पर तैयार किया था। चूंकि रॉकी द्वारा लाए गए सभी लोगों में वह अकेली औरत थी, इसलिए उसके लिए अपने तंबू में रहना स्वाभाविक था। जैसे ही उसने तंबू में कदम रखा, लिलिया ने आह भरी, उसे अचानक बहुत थकान महसूस हुई। मिशन की कमान रॉकी ने उसे सौंपी थी। यह न केवल विश्वास और अधिकार का प्रतीक था, बल्कि थंडरहॉक सिटी के गार्ड कोर के प्रति उसकी जवाबदेही भी थी। और यह स्पष्ट रूप से एक अथाह दबाव था, क्योंकि थंडरहॉक सिटी में केवल यही गार्ड कोर था। अगर मिशन के दौरान कोई गलती हुई तो उसकी जिम्मेदारी रॉकी पर आ जाएगी और रॉकी बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार लिलिया ने शुरू से ही अपना मन कड़ा और केंद्रित रखा था, और अब जब वह अपने तंबू में वापस आ गई थी तो उसने खुद को कुछ आराम दिया। जैसे ही वह आराम करने लगी, वह बिस्तर पर चली गई और अपने चमड़े के कवच को खोलना शुरू कर दिया, और इसे उतारने के बाद उसने अपनी बगल की तलवार को निकालना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही वह अपनी कमर से तलवार निकालने वाली थी, उसने अचानक तलवार खींच ली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे वार कर दिया। लिलिया को लगा कि उसके पीछे कोई है। बहन लिलिया, यह मैं हूँ, रुकिए कृपया। जिस क्षण लिलिया को अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ और उसने बिना कुछ सोचे समझे पीछे मुड़कर अपनी तलवार आगे बढ़ाई, उसके पीछे से एक घबराई हुई और चिंतित आवाज आई। यह आवाज सुनकर लिलिया पहले तो चौंक गई, फिर उसने अपनी तलवार की दिशा बदलने के लिए तुरंत अपनी कलाई को एक तरफ झटका और फिर उसने देखा कि उसकी तलवार दुसा की गर्दन को छूती हुई निकल गई है। हाँ, उसके पीछे कोई अपराधी नहीं बल्कि दुसा खड़ा था। दुसा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह महसूस करते हुए कि उसके पीछे दुसा था, लिलिया आश्चर्यचकित हो गई और जल्दी से अपनी तलवार म्यान में रख ली। मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई है ना? नहीं, लेकिन तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। हफ़। लिलिया के सामने स्तब्ध खड़ा दुसा का चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था। लिलिया द्वारा तलवार रख देने के बाद ही उसने राहत की सांस ली और अपनी छाती थपथपाई। जब से मोटे ने रॉकी के प्रति वफादारी की शपथ ली थी, उसकी बेटी दुसा भी उनमें से एक बन गई थी। हालांकि उन्होने उसे माना रून के बारे में नहीं बताया था, दुसा, लिलिया और एलिन के बीच का रिश्ता बेहद करीबी हो गया था। दुसा के मन में वीर लिलिया के प्रति भी आदर का भाव था। बेशक, मुख्य बात यह नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि वह बैकहिल विलेज में क्यों थी। लिलिया को स्पष्ट रूप से याद था कि मोटे जब थंडहॉक सिटी से निकला था तो वह दुसा को अपने साथ नहीं लाया था। ये सोचकर उसने दुसा पर भौहें चढ़ाकर कहा, छोटी बच्ची, क्या तुम अकेले ही यहां से निकल आए हो? अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं जाग गया और अपने आप को यहां पाया। लिलिया के कठोर प्रश्नों का सामना करते हुए दुसा की बड़ी बड़ी आंखें कई बार इधर उधर घूमी, फिर उसने मासूम चेहरे से जवाब दिया। दुसा की प्रतिक्रिया सुनकर लिलिया ने अपना माथा थपथपाया और खुद को पूरी तरह असहाय महसूस करने लगी। लिलिया बहन, कृपया आप मेरे पिता को मत बताना, वरना वह मुझे फिर से डांटेंगे। जैसे ही लिलिया असहाय महसूस कर रही थी, दुसा ने उससे विनती करना शुरू कर दिया कि वह मोटे को उसके चुपके से भाग जाने के बारे में न बताए। लेकिन इस अनुरोध ने लिलिया को वाकई मुश्किल में डाल दिया। आखिरकार दूसा बाकियों से अलग थी, वह मोटे की बेटी थी। अगर उसने मोटे से यह बात छिपाई और इस दौरान दूसा को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? लिलिया और रॉकी उस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकते थे। इसलिए दूसा पर एक नज़र डालने के बाद लिलिया ने निर्णय लिया, छोटी लड़की, तुम यही मेरा इंतजार करो और कहीं मत जाओ। ओह, यह महसूस करते हुए कि लिलिया कुछ नाराज थी, दुसा ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया, फिर विनम्रतापूर्वक बिस्तर पर बैठ गई, जबकि लिलिया तुरंत तंबू से बाहर चली गई। तंबू से निकलने के बाद वह मोटे को खोजने नहीं गई बल्कि रॉकी को खोजने चली गई। वह स्वयं इस मामले को संभाल नहीं सकती थी, इसलिए उसे रॉकी को इसका ध्यान रखने देना पड़ा। कुछ ही देर बाद वह रॉकी को अपने तंबू में वापस ले आई और अंदर जाते ही रॉकी ने दूसा को देखते ही दंग रह गया। दूसा को तंबू में पाकर वह बेहद हैरान हुआ और थोड़ा निराश भी हुआ।
दूसा, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बंद नहीं किया था?
मैं चुपके से बाहर निकल गया। रॉकी का सामना करते हुए दूसा की झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने सच बता दिया। ये जानने के बाद कि दूसा चुपके से भाग गया है, रॉकी भी परेशान होने लगा। जैसा कि लिलिया ने सोचा था, दूसा मोटे की बेटी थी। रॉकी उससे यह बात कैसे छिपा सकता था? अगर कुछ हुआ तो क्या मोटे उसे जमकर दोषी नहीं ठहराएगा?
लेकिन दुसा की हताशा भरी विनती के सामने उसके लिए अविचलित रहना कठिन हो गया, क्योंकि वह ये जानने पर मोटे की प्रतिक्रिया की कल्पना कर सकता था। कोई भी बीस्टमैन अपने गुस्से के लिए नहीं जाना जाता है। इसलिए असहाय महसूस करते हुए रॉकी के पास दुसा के अनुरोध को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसने उसे सख्त आदेश दिया कि वह तंबू से बाहर न जाए, अन्यथा अगर मोटे ने उसे खोज लिया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे और न तो वह और न ही लिलिया उसकी ओर से हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, नगर स्वामी, रॉकी को अपने पिता से यह बात गुप्त रखने में मदद करने के लिए सहमत होते देख दुसा ने उसकी सभी शर्तों को तुरंत मान लिया और यहां तक कि उसे आश्वासन भी दिया कि वह परेशानी पैदा नहीं करेगी। हालांकि रॉकी को इस तरह की गारंटी पर विश्वास करना मुश्किल लगा और इसलिए दुसा लिलिया के तंबू में ही रुक गया और रॉकी त्याग की भावना के साथ वहां से चला गया। यद्यपि दूसा की उपस्थिति ने उसे असहाय महसूस कराया, लेकिन उसकी परेशानी ने मिशन के तनाव को कुछ हद तक कम कर दिया, जिससे रॉकी को अपने तंबू में वापस आते ही जल्दी से नींद आ गई।
जब वह उठा तो दिन का उजाला हो चुका था और रॉकी जल्दी उठ गया और खुद को तैयार कर लिया, क्योंकि अब से मिशन वास्तव में शुरू हुआ।
सुबह सुबह बैकहिल गांव के मुखिया ओल्ड जैक गांव वालों के एक बड़े समूह को गांव के अंत में स्थित खदान में अयस्क खनन शुरू करने के लिए ले गए। उसी समय रॉकी और लिन फेंग ने भी आधिकारिक तौर पर अपने सैनिकों को सतर्क कर दिया। लिन फेंग के अनुसार खनन के पहले कुछ दिन अपेक्षाकृत सुरक्षित थे, क्योंकि भले ही खनन का शोर काली आंखों वाले राक्षसों को आकर्षित कर सकता था, लेकिन इन राक्षसों के इकट्ठा होने के स्थान काफी दूर थे, इसलिए वे तुरंत नहीं पहुंच सकते थे। हालांकि जब पहला काली आंखों वाला दानव प्रकट हुआ तो अधिक से अधिक दानव एक अंतहीन धारा में उभरने लगे और तब वास्तविक खतरा शुरू हुआ। जैसा कि पहले से तय था, लिन फेंग बैकहिल गांव के सैनिकों के साथ पहले दिन की रक्षा का प्रभार संभालेंगे और दूसरे दिन गार्ड कोर के साथ रॉकी कार्यभार संभालेंगे और फिर वे इसी क्रम में बारी बारी से कार्यभार संभालेंगे। इसलिए मिशन के पहले दिन रॉकी और बाकी लोग ज्यादा तनाव में नहीं थे। हालांकि पहरेदार पूरी तरह सतर्क थे, उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी और सिर्फ रॉकी, लिलिया और मोटे ही सुबह जल्दी उठे और लिन फेंग के साथ ऊंची दीवार पर निगरानी के लिए शामिल हुए। आप सभी को यहां आने की आवश्यकता नहीं है, आराम करने के लिए समय निकालें, कठिन समय अभी भी आगे है। ये देखकर कि रॉकी उसके पीछे ऊंची दीवार पर चढ़ गया है, लिन फेंग बोलने से खुद को रोक नहीं सका। रॉकी उसके अच्छे इरादों को समझता था, लेकिन उसके अपने विचार भी थे, यद्यपि कुछ हद तक स्वार्थी। रॉकी को दिल से उम्मीद थी कि लिन फेंग और उसके लोग पहले राक्षसों का सामना करेंगे, इस तरह वह देख सकेगा कि वे कैसे लड़ते हैं और खुद भी बेहतर तैयारी कर सकेगा, क्योंकि उसने पहले कभी 100 से ज्यादा लोगों का नेतृत्व नहीं किया था, नहीं उसे कभी एक से ज्यादा राक्षसों का सामना करना पड़ा था, इसलिए रॉकी पहले सीखना चाहता था। हालांकि वह ऐसे मामलों को नियंत्रित नहीं कर सकता था। दरअसल जैसा कि लिन फेंग ने बताया था, खनन के पहले दिन कोई खतरा नहीं था और रॉकी पूरे दिन ऊंची दीवार पर खड़ा रहा, उसे किसी भी राक्षस की परछाई तक नहीं दिखी। पलक झपकते ही एक दिन बीत गया और कोई लड़ाई नहीं हुई। अगले दिन तक रक्षा की जिम्मेदारी रॉकी को सौंप दी गई। अगली सुबह रॉकी ने गार्ड कोर को ऊंची दीवार के चारों ओर इकट्ठा होने के लिए प्रेरित किया तथा मोटे को गार्ड कोर का नेतृत्व करने तथा सतर्क रहने के लिए पीछे छोड़ दिया, जबकि वह और लिलिया दीवार के शीर्ष पर चढ़ गए। बैकहिल विलेज की ऊंची दीवार पर खड़ा होना उसका दूसरा मौका था। कल वो लिन फेंग के साथ एक दिन वहां खड़ा था, लेकिन आज फिर से ऊंची दीवार पर खड़े होकर उसे पहली बार से भी ज्यादा घबराहट महसूस हुई, क्योंकि कल तक वह एक पर्यवेक्षक की तरह था, लेकिन आज उसकी मानसिकता पूरी तरह से अलग थी, क्योंकि गांव और उसके पीछे की दीवार की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी थी। इस दबाव ने रॉकी को कुछ हद तक घबरा दिया और कुछ देर ऊंची दीवार पर खड़े रहने के बाद वह आगे पीछे टहलने लगा। शायद मुझे उड़कर जाकर देखना चाहिए, अगर हम राक्षसों को पहले ही देख लें तो हम पहले से तैयारी कर सकते हैं, उसने दीवार पर कुछ बार आगे पीछे चक्कर लगाने के बाद कहा। नहीं, शून्य जादुई कवच का मान सीमित है और हम इस बार ज्यादा जादुई पत्थर नहीं लाए हैं, आप इसे केवल कुछ ही बार रिचार्ज कर सकते हैं, इसलिए आप अपना मान अंधाधुंध बर्बाद नहीं कर सकते, लिलिया ने तुरंत इस विचार को अस्वीकार कर दिया। शून्य जादुई कवच उनकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों में से एक था, लेकिन इसका मान सीमित था, इसलिए इसे युद्ध के लिए जरूरी न होने पर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। रॉकी के सुझाव को ठुकराने के बाद लिलिया ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हमने इस मिशन के लिए 2 महीने से तैयारी की है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, और वैसे भी गांव वालों ने कल ही खनन शुरू किया है, काली आंखों वाले राक्षस इतनी जल्दी हमला नहीं करेंगे। आप सही कह रहे हैं, शायद मैं बहुत ज्यादा घबरा गया हूँ। रॉकी ने सिर हिलाया, खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और फिर लिलिया के पास खड़ा हो गया। दोनों चुपचाप अंतहीन बंजर जमीन को देख रहे थे। अगला दिन भी ऐसे ही बीत गया, यद्यपि रॉकी कल की तरह ही पूरे दिन सतर्क रहा, फिर भी कोई खतरा नहीं हुआ। और जब तीसरा दिन आया तो रक्षा का दायित्व वापस लिन फेंग को सौंप दिया गया, लेकिन पिछले 2 दिनों के अनुभव के कारण रॉकी फिर कभी लिन फेंग के साथ ऊंची दीवार पर नहीं गया। ये पहले ही साबित हो चुका था कि इन दिनों कोई खतरा नहीं है, इसलिए उसे रोज खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए तीसरे दिन रॉकी गार्डों के साथ प्रशिक्षण लेने चला गया। सुबह भर गार्डों के साथ प्रशिक्षण के बाद हालांकि वह थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसका मूड काफी हद तक शांत हो गया था, और दोपहर के समय रॉकी ने गार्डों के साथ दोपहर का भोजन किया, जिससे वे उसके काफी करीब आ गए। लेकिन जब सभी लोग भोजन की दुकान पर दोपहर का भोजन कर रहे थे तो अचानक एक तीखी घंटी बज उठी। क्या हो रहा है? रॉकी, जो पहरेदारों के साथ बैठा था, घंटी की आवाज सुनते ही तुरंत उठ खड़ा हुआ और जल्दी से आवाज के स्रोत की ओर देखने लगा। उसने देखा कि सैनिक ऊंची दीवार के पास मीनारों पर बेतहाशा घंटी बजा रहे थे। राक्षस हमला कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? ये देखकर कि घंटी टावरों से आ रही है, रॉकी को गहरा सदमा लगा, क्योंकि इसका मतलब था कि राक्षस प्रकट हो गए थे। पुनश्च मिशन आखिरकार आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है, एक भीषण युद्ध शुरू होने वाला है, सुझाव मांगें, पसंदीदा के लिए पूछें। दुश्मन के हमले का संकेत देने वाली घंटी बज उठी, जिससे रॉकी, जो पहले तो गार्डों के साथ अच्छा समय बिता रहा था, तुरंत मोटे के साथ ऊंची दीवार की ओर भागा। क्या चल रहा है? इस समय लिलिया भी अपने तंबू से बाहर निकली और रॉकी को देखते ही जल्दी से पूछा। मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है जैसे राक्षस आ गए हैं। लिन फेंग ने कहा था कि जब टावर पर खतरे की घंटी बजती है तो इसका मतलब होता है कि राक्षस आ रहे हैं, और यह निस्संदेह सच था, लेकिन ये सही नहीं था, क्योंकि लिन फेंग ने यह भी कहा था कि ब्लैक आइड डायमंड्स को बैकहिल विलेज पहुंचने में कई दिन लगेंगे, और कल भी हैंडओवर के दौरान उसने रॉकी को तैयार रहने को कहा था। ये भी बताया था कि लड़ाई 3 से 5 दिन में शुरू होगी, फिर भी आज डायमंड्स आ ही गए। वे इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं? गहरी शंकाओं के साथ रॉकी और लिलिया जल्दी से ऊंची दीवार पर चढ़ गए और लिन फेंग से मिले, जो दीवार से नीचे आ रहा था।
कैप्टन लिन फेंग, घंटी का क्या मतलब है? राक्षस आ गए हैं।
रॉकी को ज्यादा स्पष्टीकरण दिए बिना लिन फेंग ने जवाब दिया और फिर उसे धक्का देकर ऊंची दीवार से पहले से तैयार सैनिकों की ओर बढ़ गया और उन पर जोर से चिल्लाया, सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, लिन फेंग के आदेश पर बैकहिल गांव की सेनाएं तुरंत व्यवस्थित होकर तैयार खड़ी हो गईं, और कुछ ही देर बाद ऊंची दीवार का विशाल द्वार धीरे धीरे खुला, फिर 100 सैनिकों वाली यह सेना तेजी से और व्यवस्थित ढंग से बाहर निकली। जैसे ही सेनाएं आगे बढ़ीं, रॉकी और लिलिया भी ऊंची दीवार पर चढ़ गए, जहां पहले से ही धनुष बाण और जादू की छड़ी पकड़े लोगों की भीड़ थी। वे बैकहिल गांव के धनुर्धर और जादूगर थे।
भीड़ भरी ऊंची दीवार पर खड़े होकर रॉकी ने बाहर देखा और जल्द ही लिन फेंग को सैनिकों का नेतृत्व करते हुए देखा। लिन फेंग, जो सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था, लगातार आदेश दे रहा था और उसके हर आदेश का पालन करते हुए बैकहिल गांव की सेना 3 चौकोर टुकड़ियों में बंट गई।
3 वर्गाकार संरचनाएं, प्रत्येक पंक्ति में 15 सैनिकों की 2 पंक्तियां। आगे की पंक्ति के सैनिक बिना हथियार के ढाल लिए हुए थे, जबकि पीछे की पंक्ति के सैनिक बिना ढाल लिए लंबे भाले चला रहे थे। हालांकि रॉकी, जो अभी भी रणनीति से अनजान था, इन संरचनाओं का उद्देश्य नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वह ये जरूर बता सकता था कि बैकहिल गांव के सैनिक संख्या में ज्यादा न होते हुए भी अच्छी तरह प्रशिक्षित थे। ऐसी अचानक स्थिति का सामना करते हुए किसी भी सैनिक ने घबराहट का जरा भी संकेत नहीं दिखाया और सभी सुचारू रूप से और व्यवस्थित रूप से अपनी संरचना में आगे बढ़े। इसके बाद जब रॉकी ने दूर की ओर अपनी नजर घुमाई तो उसे बंजर जमीन पर 3 आकृतियां मंडराती हुई दिखाई दीं। 3 राक्षस। यद्यपि वे तीनों आकृतियां अभी भी दूर थीं, कम से कम 100 मीटर या उससे अधिक, फिर भी रॉकी तुरंत पहचान गया कि वे राक्षस थे। उसकी दृष्टि में ये 3 राक्षस तेजी से आ रहे थे। कुछ ही पलक झपकते ही वे पहले से ही बहुत करीब आ गए थे। ये काली आंखों वाला दानव है। जैसे जैसे राक्षस आगे बढ़ते गए, रॉकी के पास से मोटे की आवाज आई और यह सुनकर रॉकी ने तीनों राक्षसों को और भी ध्यान से देखा। ये तीनों राक्षस, जिनमें से प्रत्येक 2 मीटर से ज्यादा लंबा था, दैत्यों की तरह सीधे खड़े होकर चलते थे, लेकिन देखने में वे विशालकाय छिपकलियों जैसे लगते थे। उनके न केवल बड़े छिपकली जैसे सिर और जानवरों जैसे मजबूत अंग थे, बल्कि उनकी त्वचा भी बेहद खुरदरी थी, जिस पर घने उभार थे, जो देखने में बहुत ही घिनौना लग रहा था। और उनके नाम के अनुरूप उनके पास शुद्ध काली आंखें थीं। तो क्या ये काली आंखों वाले राक्षस थे? 3 राक्षसों को लगातार आते देख रॉकी ने एक गहरी सांस ली और फिर ऊंची दीवार के नीचे लिन फेंग और अन्य लोगों की ओर देखा। क्या ये लोग एक साथ 3 राक्षसों से निपट सकते हैं? रॉकी ने पहले कभी ऐसी लड़ाई का अनुभव नहीं किया था, इसलिए उसे अपने सामने होने वाली लड़ाई का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वह चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। इसके विपरीत ऊंची दीवारों के बाहर खड़ा लिन फेंग ज्यादा शांत और निश्चिंत लग रहा था। जैसे जैसे 3 काली आंखों वाले राक्षस पास आते गए, वह लगातार आदेश जारी करता रहा। सभी लोग अपनी संरचना बनाए रखें, फॉर्मेशन बनाए रखें, फॉर्मेशन बनाए रखें। लिन फेंग की आवाज गूंजने के साथ तीनों संरचनाओं के कप्तान भी जोर जोर से चिल्लाते रहे, ये सुनिश्चित करते हुए कि राक्षसों के आने के बावजूद उनकी संरचनाएं बरकरार रहें। सब लोग आगे बढ़ो। इसके तुरंत बाद, जब तेजी से आगे बढ़ रहे राक्षस और बैकहिल गांव की सेना केवल 10 मीटर की दूरी पर थे, लिन फेंग ने अचानक आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसके आदेश पर तीनों टुकड़ियों के सैनिक अपनी एकजुटता बनाए रखते हुए आगे बढ़े। हालांकि उनकी गति बहुत तेज नहीं थी, फिर भी उनके आगे बढ़ने से राक्षसों पर भारी दबाव पड़ा। हिस 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 हिस। जैसे ही लिन फेंग सैनिकों को आगे ले जा रहा था, छिपकली जैसे दिखने वाले 3 काली आंखों वाले राक्षस अचानक रुक गए। फिर सैनिकों का सामना करते हुए उन्होंने कई कर्कश चीखें निकाली और अचानक आगे बढ़ गए। राक्षसों का आक्रमण बिना किसी चेतावनी के हुआ और बहुत तेज था। ऐसा लगा जैसे 3 बवंडर तुरंत ही 10 मीटर की दूरी पार कर लिन फेंग और उसके आदमियों तक पहुंच गए। दौड़ते हुए राक्षसों का सामना करते हुए लिन फेंग आगे बढ़ा और सबसे आगे वाले राक्षस से सीधे टकराया। राक्षस के हमले का इंतजार किए बिना उसकी लंबी तलवार जोर से नीचे गिरी, जिससे राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने कई और वार किए, जिससे राक्षस जमीन पर लौटने लगा। बेशक ऐसा परिणाम आश्चर्यजनक नहीं था। लिन फेंग एक स्तर 6 योद्धा था और काली आंखों वाले राक्षस विशेष रूप से मजबूत नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे पराजित थे। हालांकि इस लड़ाई का असली केंद्र लिन फेंग पर नहीं था। अगर वह लोहे का भी होता तो क्या वह एक कील भी ठोक पाता? इसकी कुंजी उसके पीछे खड़े सैनिकों के पास थी।
जबकि लिन फैंग ने अपनी ताकत से एक राक्षस को बांध दिया, अन्य दो काली आंखों वाले राक्षस तेजी से उसके पास से भाग गए और कुछ ही क्षणों में तीनों संरचनाओं के सामने पहुंच गए।
काली आंखों वाले राक्षसों को अपनी ओर आते देख तीनों दल रुक गए और आगे की पंक्तियों में बैठे प्रत्येक सैनिक ने अपनी ढालें उठा ली। हिस हिस हिस, काली आंखों वाला राक्षस तेजी से एक टुकड़ी के सामने पहुंच गया और दहाड़ते हुए अग्रिम पंक्ति के सैनिकों पर अपने पंजे चलाने लगा। इसके बाद कई आवाजें आईं जब राक्षस के व्यापक प्रहार से चार या पांच सैनिक घायल हुए, लेकिन केवल उनकी उठी हुई ढालों पर ही प्रहार हुआ, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन उसी समय पीछे की पंक्तियों से सैनिक अपने भालों को कसकर पकड़े हुए अचानक आगे बढ़े और अपने भालों को जोर से बाहर निकाल दिया। एक क्षण में एक दर्जन से अधिक भाले उस दल से निकल आए जो काली आंखों वाले राक्षस पर निशाना साध रहे थे। इन हमलों में से कुछ चूक गए और कुछ लगे, लेकिन काली आंखों वाले राक्षस की त्वचा को भेदने में असफल रहे। फिर भी दो भाले राक्षस के शरीर में भयंकर रूप से घुस गए, जिससे उसने एक तीखी चीख निकाली और उसे पीछे की ओर छलांग लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे वास्तव में उन्हें इस तरह पीछे धकेल सकते हैं। ऊंची दीवार के ऊपर खड़े होकर रॉकी ने युद्ध को स्पष्ट रूप से देखा और जब उसने बैकहिल गांव के सैनिकों को राक्षसों को पीछे हटाने के लिए इस विधि का उपयोग करते देखा तो उसका मुंह थोड़ा खुला का खुला रह गया। तो यह वास्तव में इस तरह किया जा सकता है? ऊंची दीवार के ऊपर खड़े होकर रॉकी ने देखा कि बैकहिल गांव के सैनिकों ने न केवल दानव के हमले का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया बल्कि उन्हें पीछे हटाने में भी कामयाब रहे, और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इन सैनिकों ने यह उपलब्धि लिन फैंग की मदद से या मजबूत उपकरणों पर निर्भर होकर नहीं बल्कि पूरी तरह से अपने गठन के लाभ के माध्यम से हासिल की। रॉकी के लिए, जो कभी युद्ध के मैदान में नहीं गया था, ये बिल्कुल अकल्पनीय था। उसके मन में राक्षसों की दुर्जेय प्रकृति ऐसी चीज थी जिसका सामना साधारण लोग नहीं कर सकते थे, जब तक कि वे उच्च स्तरीय योद्धा या शून्य जादुई कवच से सुसज्जित सैनिक न हों, अन्यथा कोई भी राक्षस से मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन आज ये धारणा चकनाचूर हो गई थी। बैकहिल विलेज से सैनिकों का औसत स्तर ज्यादा नहीं था, मुख्यतः दूसरे स्तर के आसपास, जहां तीसरे स्तर के योद्धा कम थे और उनके हथियार और उपकरण और भी सामान्य थे। नहीं बल्कि सटीक रूप से कहें तो वे बुनियादी थे। उनका उपकरण थंडरहॉक सिटी गार्ड स्क्वाड के पहले के उपकरणों के बराबर था। फिर भी ऐसा ही एक समूह अपनी संरचनाओं की शक्ति और उत्कृष्ट सहयोग से राक्षसों के हमले से बचाव करने में कामयाब रहा, यहां तक कि राक्षसों को घायल भी कर दिया। हालांकि उनका सामना केवल एक ही से हुआ था, लेकिन ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। इस परिणाम ने रॉकी को आश्चर्य से भर दिया, जबकि रॉकी विस्मय में था। ऊंची दीवारों के बाहर लड़ाई जारी रही। लिन फैंग एक काली आंखों वाले दानव से आमने सामने उलझकर छठे स्तर के योद्धा का पूरा पराक्रम दिखा रहा था। आम लोगों के लिए उनकी नजर में राक्षसी दानव उसके सामने बिल्कुल असहाय था, बस वार झेल सकता था। और अगर लिन फैंग के पास मन हथियार होता तो विजेता का फैसला बहुत पहले हो सकता था।
दूसरी ओर तीनों संरचनाओं पर हमला करने वाले अन्य दो दानवों ने भी अपनी क्षमता से अधिक काम लिया। संरचनाओं पर उनके अथक हमले के बावजूद हर हमला व्यर्थ रहा, और हर बार हमला करने के बाद उनके भालों से कई खूनी छेद हो जाते। बैकहिल गांव से सैनिकों की टुकड़ी का उद्देश्य स्पष्ट रूप से राक्षसों का मुकाबला करना था। अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए थे, लेकिन उनके दोनों हाथों में पकड़ी हुई बड़ी ढालें काली आंखों वाले राक्षसों के हमलों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकती थी। जैसे ही वे हमले का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करते, पीछे के सैनिक तुरंत अपने भाले आगे बढ़ा देते। शायद हर बार किसी दानव को नहीं मारता या घायल नहीं करता, लेकिन यदि हर बार केवल एक या दो वार लगते भी हैं तो छोटी मात्रा में वार एकत्रित होते जाएंगे और अंततः दानवों की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार युद्ध तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ रहा था। जब दोनों राक्षस, जो बार बार सेनाओं पर आक्रमण कर रहे थे, अब आक्रमण करने की शक्ति नहीं बची तो सेनाएं फिर से गतिमान हो गईं। तीनों सेनाएं तीन गतिशील दीवारों की तरह न केवल पीछे हटने का मार्ग अवरुद्ध कर रही थीं, बल्कि दोनों राक्षसों को लगातार पीछे हटने पर मजबूर भी कर रही थीं। टुकड़ियों की अग्रिम पंक्ति के सैनिक तेजी से आगे बढ़े। जैसे ही वे राक्षसों के पास पहुंचे, पीछे की पंक्ति के सैनिकों ने अपने भाले तान दिए। इस तरह दसियों मीटर आगे बढ़ते हुए दोनों राक्षस अंततः शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़े। इस बीच दूसरी तरफ लिन फैंग ने भी अपनी लड़ाई समाप्त कर ली थी। उसने एक ही तलवार के वार से काली आंखों वाले दानव का सिर काट दिया और कटे हुए सिर को जमीन से ऊंचा उठाकर अपने पीछे सैनिकों के साथ विजयी गर्जना में शामिल हो गया। विजय की गगनभेदी गर्जना के साथ अंततः युद्ध समाप्त हो गया, तीनों दानवों का सफाया हो गया तथा बैकहिल गांव के सैनिकों में कोई हताहत नहीं हुआ। सच कहूं तो युद्ध का पैमाना बहुत बड़ा नहीं था बल्कि काफी छोटा था, जिसमें केवल 100 बैकहिल गांव के सैनिक और तीन दानव थे। लेकिन फिर भी रॉकी, जिसने ऊंची दीवारों से पूरी लड़ाई देखी थी, रोमांचित था। हालांकि उत्साह के बीच उन्हें थोड़ी घबराहट भी महसूस हुई, क्योंकि कल रक्षा में सैनिकों का नेतृत्व करने की बारी उनकी थी। काली आंखों वाले राक्षसों से डरने की कोई बात नहीं है। उसी समय लिलिया की आवाज आई और जब रॉकी उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर मुड़ा तो उसने देखा कि लिलिया उसे देख रही थी। यदि बैकहिल गांव के सैनिक इन राक्षसों का सामना कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे गार्ड उनसे ज्यादा बुरे नहीं होंगे, मोटे ने भी बगल से कहा। लिलिया और मोटे के शब्दों से उत्साहित होकर रॉकी ने सिर हिलाया और फिर वे तीनों एक साथ ऊंची दीवार से नीचे उतर गए। इस समय तक लिनफेंग अपने सैनिकों को वापस ले जा चुका था, इसलिए ऊंची दीवारों से नीचे उतरी तीनों सेनाएं जल्द ही उनसे भिड़ गईं। रॉकी बधाई देने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि छोटी सी बात के बावजूद जीत तो जीत ही होती है। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, लिनफेंग ने गंभीर भाव के साथ पहल कर दी। कमांडर रॉकी, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या गलत? लिनफेंग के शब्दों से रॉकी की भौहें थोड़ी आश्चर्य से तन गईं। इस बार राक्षस बहुत जल्दी आ गए, उन्हें इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था। हालांकि उन्होंने अभी अभी राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी, लिनफेंग के चेहरे पर खुशी का जरा भी भाव नहीं था। इसके बजाय वह गहरी चिंता में डूबा हुआ दिखाई दिया और बोला, सामान्य परिस्थितियों में काली आंखों वाले राक्षसों की पहली लहर 2-3 दिन बाद आती, लेकिन इस बार वे बहुत जल्दी आ गए और उनकी संख्या भी ज्यादा थी। अधिक संख्या? हाँ, पहले राक्षसों की पहली लहर सिर्फ एक होती थी, ज्यादा से ज्यादा 2, लेकिन आज 3 दिखाई दिए। इससे पता चलता है कि आगे चलकर और भी राक्षस दिखाई देंगे। तो इस बिंदु पर उसने रॉकी की ओर देखा, तो यह संभव है कि कल हमें और भी अधिक राक्षसों का सामना करना पड़े। कमांडर रॉकी को बहुत सावधान रहना होगा। मैं ऊंची दीवारों के ऊपर से सहायता प्रदान करने के लिए धनुर्धारियों और जादूगरों की भी व्यवस्था करूंगा। जैसे ही लिनफेंग ने बोलना समाप्त किया, रॉकी के चेहरे का भाव खराब हो गया और उसका पिछला उत्साह और अच्छा मूड पूरी तरह से गायब हो गया। उसने काफी देर तक अपनी भौहें सिकोड़ते हुए सोचा और फिर बोला, निश्चिंत रहो कैप्टन लिनफेंग, मैं सतर्क रहूंगा। ये शब्द कहकर वह लिलिया और मोटे के साथ शिविर में लौट आया। बाकी दिन राक्षस फिर नहीं दिखाई दिए, लेकिन पिछली लड़ाई की वजह से यह साफ था कि राक्षस आ चुके हैं। इसलिए न तो बैकहिल गांव के सैनिक और न ही रॉकी जैसे लोग इसे हल्के में लेने की हिम्मत कर पाए, खासकर रात में। लिनफेंग ने किसी भी अप्रत्याशित घटना के डर से अपनी आधी सेना ऊंची दीवारों पर निगरानी रखने के लिए छोड़ दी। हालांकि रात बिना किसी राक्षस के आक्रमण के शांतिपूर्वक बीत गई। ये स्वाभाविक रूप से बैकहिल गांव के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन रॉकी के लिए इसके विपरीत सच हो सकता था, क्योंकि इसका मतलब था कि राक्षस अगले दिन अपना हमला शुरू कर सकते थे जब पहरा देने की बारी उसकी थी। इसलिए जब अगला दिन आया और अभी भी अंधेरा था, तो वह जल्दी उठ गया और अपने शून्य जादुई कवच की जांच करने लगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि युद्ध के दौरान कवच के साथ कोई समस्या न हो। जैसे ही भोर हुई, रॉकी ने लिनफेंग से रक्षा का कार्यभार संभाल लिया और अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए कार्यभार सौंप दिया। जब रॉकी ऊंची दीवारों पर चढ़ा तो लिनफेंग और उसके सैनिक आराम करने लगे, लेकिन कप्तान होने के नाते लिनफेंग कुछ दस्ते के नेताओं के साथ इकट्ठा हो गया। वे आगे की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही विषय शुरू हुआ, बातचीत रॉकी की ओर मुड़ गई। कप्तान, क्या हम इन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे इसमें संदेह है, उनके सैनिक बहुत घबराए हुए हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि वे नौसिखिए हैं और उन्हें बड़ी लड़ाइयों का कोई अनुभव नहीं है। इससे पहले कि लिनफेंग कुछ कह पाते, उनके बगल में एक दल का नेता जो लगभग उनकी ही उम्र का था और जिसने कल की लड़ाई में एक दल का नेतृत्व किया था, ने स्पष्ट रूप से वह टिप्पणी की, जिससे लिनफेंग के अधीनस्थों के बीच उनकी पर्याप्त स्थिति का पता चलता है। थंडहॉक भाड़े के समूह के ये सैनिक वास्तव में औसत हैं, लेकिन कम से कम उनके पास 10-13 युद्धपोत हैं और यह पर्याप्त है, लिनफेंग ने जवाब दिया। लिनफेंग थंडहॉक सिटी गार्ड स्क्वाड से बहुत प्रभावित नहीं था, लेकिन जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा परवाह थी वह थी रॉकी द्वारा अपने साथ लाए गए 10 फ्लोटिंग युद्धपोत। इसलिए बाद में उन्होंने कहा, चलो उनकी चिंता ना करें, सोचें कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। राक्षस इतने अचानक आ गए हैं, मुझे डर है कि आधे साल पहले की घटनाएं फिर से दोहराई जा सकती हैं। आधा साल पहले बैकहिल गांव की ऊंची दीवारें बड़ी संख्या में राक्षसों ने तोड़ दी, जिससे गांव में भारी जनहानि हुई। उस समय लिनफेंग 200 की नहीं बल्कि 700 की सेना का नेतृत्व कर रहा था, और फिर भी इसके बावजूद ऊंची दीवारें तोड़ दी गईं। सैकड़ों काली आंखों वाले राक्षसों ने उन्हें घेर रखा था, उसकी सेना और गांव की दीवारें दोनों ही कागज की तरह नाजुक थीं। लिनफेंग को डर था कि वर्तमान स्थिति भी ठीक वैसी ही हो सकती है जैसी आधे साल पहले हुई थी। लिनफेंग और उसके सैनिक किसी बात पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन रॉकी को पता नहीं था कि वह क्या था और न ही उसके पास अन्य लोगों के मामलों में ध्यान देने की विलासिता थी। इस समय रॉकी बैकहिल गांव की ऊंची दीवारों पर खड़ा था और पूरी सुबह वहीं खड़ा था। कल की लड़ाई अपनी आंखों से देखने के बाद आज का रॉकी किसी भी बात को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था, खासकर जब लिन फैंग के शब्दों में पहला जत्था निकलते ही राक्षस लगातार प्रकट होने लगेंगे। इसलिए किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति को छोड़कर राक्षस आज भी हमला करेंगे। वह कैसे चाहता था कि कोई दुर्घटना घटित हो। ऊंची दीवार पर खड़े होकर रॉकी ने एक से ज्यादा बार किसी दुर्घटना की आशा की जो राक्षसों को आने से रोक दे। हालांकि यह विचार कायरतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति राक्षसों से लड़ना नहीं चाहेगा जब तक कि वह पागल न हो। हालांकि उनकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रहीं। आखिरकार जो होना तय था वह हो ही गया। जैसे ही दोपहर करीब आए और रॉकी, जो पूरी सुबह हाई अलर्ट पर था, कुछ खाने और आराम करने वाला था, टावर पर लगी घंटी अचानक बज उठी। घंटी की अचानक आवाज सुनकर सबकी नसें तंग गईं। रॉकी, जिसने अभी अभी खाना शुरू किया था, तेजी से ऊंची दीवार के किनारे पहुंचा और जब उसने दीवार के उस पार देखा तो उसकी सांसें थम सी गईं। 1, 2, 3, 4, 5। जैसे ही उसने ऊंची दीवार के पार अपनी नजर डाली, उसे तुरंत आकृतियों का एक समूह दिखाई दिया। सिर्फ एक नहीं बल्कि एक पूरी भीड़। ये आकृतियां निश्चित रूप से हमलावर राक्षस थी और एक पल में कुल 8 प्रकट हो गईं। हे भगवान, ऊंची दीवार के बाहर 8 राक्षसों को देखकर रॉकी का दिल बैठ गया। हालांकि लिन फैंग ने उसे कल ही आगाह कर दिया था कि इस बार राक्षस बहुत तेजी से आ रहे हैं और उनकी संख्या पहले से अधिक हो सकती है, फिर भी उसकी आंखों के सामने 8 राक्षसों को देखकर रॉकी की सांसें तेज हो गईं। लेकिन उस वक्त उसे आश्चर्य करने का वक्त नहीं मिला। राक्षसों की संख्या देखकर वह तुरंत ऊंची दीवार से नीचे उतर आया। सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऊंची दीवार से उतरकर रॉकी गार्ड कोर के सामने पहुंचा और जोर से चिल्लाया। और इस समय तक घंटी की वजह से गार्डों को राक्षसों के आगमन के बारे में पहले से ही पता चल चुका था और उन्होंने मोटे के नेतृत्व में युद्ध के लिए खुद को तैयार कर लिया था। हालांकि इसके बावजूद गार्ड कोर के अधिकांश गार्ड अपनी घबराहट को छिपा नहीं सके, खासकर रॉकी के प्रकट होने के बाद। भीड़ के हाव भाव रॉकी ने समझ लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश समय की कमी के कारण उसके पास सभी को फिर से एकजुट करने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल चिल्ला सका, क्या सभी को याद है कि मैंने रवाना होने से पहले क्या कहा था? हम याद रखते हैं, मिशन से पहले रॉकी ने इन गार्डों से कहा था कि उनके सिटी लॉर्ड के रूप में वह युद्ध में नेतृत्व करेगा, उनके सिटी लॉर्ड के रूप में वह हर किसी का सबसे वफादार संरक्षक बन जाएगा। रॉकी के शब्दों को याद करते हुए गार्डों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ और फिर वे लिलिया के नेतृत्व में रॉकी के पीछे ऊंची दीवार के पार चले गए। ऊंची दीवार के बाहर पहुंचकर समग्र कमांडर लिलिया ने आदेश दिया, सभी लोग टुकड़ियों में फैल जाओ। उसके आदेश पर 100 सदस्यीय गार्ड कोर तुरंत 10 टुकड़ियों में विभाजित हो गया। प्रत्येक में 10 लोग थे जिनका नेतृत्व एक दस्ते के नेता द्वारा किया गया और फिर ऊंची दीवार के सामने बिखर गए। टुकड़ियों में लड़ना एक रणनीति थी जिसे रॉकी, लिलिया और मोटे ने एक दिन पहले तैयार किया था। बेकहिल गांव की सेना की लड़ाई देखने के बाद रॉकी ने लिलिया और मोटे की राय मांगी। वह चाहता था कि गार्ड कोर राक्षसों से लड़ने के लिए बेकहिल गांव की सेना जैसी ही टुकड़ियां तैनात करे, क्योंकि बेकहिल गांव में 200 सैनिक होने के बावजूद उनमें से आधे धनुर्धर और जादूगर थे और राक्षसों का सीधा सामना करने वाले योद्धा केवल लगभग 100 थे जो कि रक्षक दल के बराबर थे। इससे रॉकी को यह विश्वास हो गया कि अगर दूसरा पक्ष राक्षसों से लड़ने के लिए उस दो पंक्ति वाली संरचना पर भरोसा कर सकता है तो उसका रक्षक दल भी ऐसा कर सकता है। उनके विचारों को लिलिया और मोटे ने तुरंत अस्वीकार कर दिया। थंडरहॉक सिटी के गार्ड कोर ने कभी ऐसा प्रशिक्षण नहीं लिया था और इसलिए वे फॉर्मेशन नहीं बना सकते थे। ये समझना जरूरी है कि फॉर्मेशन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, इसके लिए सैनिकों का आपस में मौन सामंजस्य जरूरी होता है। ऐसा सामंजस्य केवल दीर्घकालिक प्रशिक्षण और बार बार युद्ध करने से ही आ सकता है, ऐसी क्षमताएं जिनका गार्ड कोर में फिलहाल अभाव है। हालांकि रॉकी के सुझाव को अस्वीकार करने के बाद लिलिया ने भी अपना विचार सामने रखा। उसने युद्ध के लिए गार्ड कोर को छोटे दस्तों में विभाजित करने की योजना बनाई। बेकहिल विलेज के सैनिकों की तुलना में थंडरहॉक सिटी की गार्ड कोर अनुभव, गुणवत्ता और प्रशिक्षण के मामले में कमजोर थी, इसलिए उनके समकक्षों के समान युद्ध तरीके अपनाना असंभव था। लेकिन गार्ड कोर के पास एक फायदा जरूर था, उपकरण। युद्ध में भाग लेने वाले 100 रक्षकों में से प्रत्येक के पास 2 रून उपकरण थे। ये रक्षक दल का सबसे बड़ा लाभ था। 2 रून उपकरणों द्वारा प्रदान की गई रक्षात्मक शक्ति रक्षक दल की ताकत को और भी बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। गार्ड्स को छोटे छोटे दस्तों में बांटकर और इस तरीके से राक्षसों को बांटकर वे एक स्थानीय बढ़त बना सकते थे जहां एक दस्ता एक राक्षस का सामना कर सकता था। इस रणनीति से उन्हें अपनी ताकत का फायदा उठाने और अपनी कमजोरियों से बचने में मदद मिलती। जब तक राक्षस बहुत ज्यादा न हो वे जवाबी हमला कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पहले से ही तैयार थे। लिलिया के आदेश पर गार्ड तुरंत अपने अपने कप्तानों के नेतृत्व में 10 दस्तों में विभाजित हो गए। वे क्या कर रहे हैं इस समय? लिन फैंग, जिसने घंटी की आवाज सुनी थी, बेकहिल गांव के लोगों को भी ऊंची दीवार तक ले गया। ठीक पिछले दिन रॉकी की तरह वे भी अपनी सुविधाजनक जगह से नीचे चल रहे युद्ध को देख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने लिलिया को अपने सैनिकों को 10 अलग अलग टुकड़ियों में विभाजित होने का आदेश देते देखा तो किसी ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली। कैप्टन, क्या इन लोगों को लड़ना भी आता है? ये राक्षसों के खिलाफ बिखरने की हिम्मत रखते हैं। क्या इन्हें लगता है कि 10 लोगों का एक छोटा सा दस्ता किसी राक्षस को रोक पाएगा? जाहिर है, बैकहिल गांव के लोगों को लिलिया की रणनीति मूर्खतापूर्ण लग रही थी। उसका विचार भले ही गलत न रहा हो, लेकिन वह बहुत ही नासमझी भरा था। हालांकि बिखरी हुई संरचना वास्तव में संख्यात्मक लाभ पैदा कर सकती थी, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका मुकाबला राक्षसों से था। ये कल्पना करना कि 10 लोग किसी राक्षस को रोक सकते हैं या मार सकते हैं, मजाक जैसा लगता था। और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो स्थिति तुरंत पलट जाती और एक भयावह परिदृश्य में बदल जाती, जहां राक्षस एक एक करके छोटे छोटे दस्तों को हरा देते। इसलिए बैकहिल गांव के लोग लिलिया के दृष्टिकोण को पूरी तरह से खारिज कर रहे थे, इसे मूर्खतापूर्ण मान रहे थे। यहां तक कि लिन फेंग भी इस समय भौचक के रह गए और उन्होंने तुरंत अपने आसपास के लोगों को निर्देश दिया कि वे ऊंची दीवारों पर लंबी दूरी के समर्थन के लिए धनुर्धारियों और जादूगरों को तैयार रखें, साथ ही अपने स्वयं के सैनिकों को भी तैयार रखें। इन व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट था कि लिन फेंग भी रॉकी और उसकी टीम की लड़ाई में संभावनाओं के बारे में संदिग्ध था। हालांकि जब ये विचार उनके मन में आए, तब भी रॉकी और उसके साथी पहले से ही गंभीर तैयारी की स्थिति में थे, क्योंकि जब वे टुकड़ियों में विभाजित हो रहे थे तो राक्षस पहले ही निकट आ चुके थे। पिछले दिन की तरह जो लोग दिखाई दिए वे सभी काली आंखों वाले राक्षस थे, और उभरने के बाद वे तेजी से करीब आ गए। कुछ ही समय में केवल कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर पहुंच गए। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर डटे रहें और राक्षसों के आक्रमण की प्रतीक्षा करें। लिलिया, जो स्वयं एक दस्ते का नेतृत्व कर रही थी, अपने हाथों में रूनिक शील्ड और रून लॉन्गसवॉर्ड लिए हुए थी। जैसे ही उसने राक्षसों को करीब आते देखा, उसने सभी को आदेश दिया कि वे राक्षसों के पहले आने का इंतजार करें। प्रत्येक दस्ते के कप्तानों द्वारा उनकी कमान शीघ्रता से प्रसारित की गई, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि सभी गार्ड स्थिर रहें। लेकिन जैसे ही लिलिया ने अपना आदेश जारी किया, काली आंखों वाले राक्षसों ने अपना कदम बढ़ा दिया। 8 काली आंखों वाले राक्षस अचानक तेजी से बढ़े और इकट्ठे योद्धाओं की ओर बढ़े। यद्यपि राक्षस केवल 8 थे, फिर भी उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि वे सच्चे राक्षस थे। इनमें से हर एक दुर्जेय जानवर 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। हर कदम पर जमीन कांप उठती थी और उनकी आक्रमण गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, इसलिए सिर्फ 8 राक्षसों का प्रभाव और आघात हजारों की सेना के आक्रमण जैसा था। इस तरह के चौंका देने वाले हमले का सामना करते हुए युद्ध के मैदान में हर कोई बेहद तनाव में था, सिवाय एक व्यक्ति के, रॉकी। जैसे ही 8 काली आंखों वाले राक्षस आगे बढ़े, शून्य जादुई कवच पहने रॉकी जमीन से ऊपर उठा। धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए उसने अचानक गति बढ़ा दी और धनुष से छूटे तीर की तरह राक्षसों की ओर दौड़ पड़ा। प्रस्थान से पहले कहे गए अपने शब्दों के अनुसार, नगर के स्वामी के रूप में उन्हें राक्षसों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व करना था। वे दोनों एक ही समय में एक दूसरे पर टूट पड़े। रॉकी और दानव इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि पलक झपकते ही दोनों एक दूसरे से बुरी तरह टकरा गए। डोरी से छूटे तीर की तरह रॉकी सबसे आगे वाले राक्षस से सीधे टकराया। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, वह सचमुच राक्षस से टकरा गया था। टक्कर के जबरदस्त बल ने 2 मीटर लंबे काली आंखों वाले राक्षस को पलट दिया था। राक्षस को पलटने के बाद रॉकी ने उससे आगे कोई लड़ाई नहीं की। इसके बजाय वह हवा में ऊपर उठा और हवा में पहुंचते ही तुरंत नीचे कूद पड़ा और एक दूसरे राक्षस को निशाना बनाया। यही राक्षस उसका असली निशाना था। रॉकी द्वारा चुना गया राक्षस 2.5 मीटर से अधिक लंबा था, जो 8 राक्षसों में सबसे बड़ा और सबसे क्रूर था। राक्षसों के मामले में भौंकते तो हैं, काटते नहीं वाली कहावत लागू नहीं होती। राक्षस जितना बड़ा और भयानक दिखता उतना ही भयानक होता। और रॉकी, जिसने शून्य जादुई कवच पहना हुआ था, ने स्वाभाविक रूप से सबसे दुर्जेय राक्षस को अपना निशाना चुना। वह सबसे बड़े काली आंखों वाले राक्षस पर झपटा और गति का लाभ उठाते हुए रॉकी ने अपनी तलवार को एक ही झटके में नीचे की ओर घुमाया, जिससे काली आंखों वाले राक्षस का कंधा जा लगा। हालांकि राक्षस की खाल बहुत मोटी थी। रूनों से सजी एक तलवार, जिसकी शक्ति कम से कम 2 सितारों के बराबर थी, उसके सामने आते ही तलवार टूटकर राक्षस के कंधे पर एक छोटा सा घाव छोड़ गई। इस प्रहार से राक्षस को गंभीर चोट नहीं पहुंची, बल्कि इससे काली आंखों वाला राक्षस क्रोधित हो गया, जिसने कर्कश दहाड़ लगाई और तुरंत रॉकी की छाती पर पंजे से हमला कर दिया, जिससे उसे एक ही पल में 2 बार खरोंच लग गई। अगर कोई साधारण सैनिक राक्षस के पंजे में होता तो उसकी मौत हो जाती, लेकिन रॉकी ने शून्य जादुई कवच पहना हुआ था और उसके पास रून संवर्धन भी था, इसलिए भले ही वह उड़ गया था, उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। गति का फायदा उठाकर वह फिर से हवा में उछला और उस विशालकाय राक्षस की ओर गोता लगाया। ये कमांडर काफी बहादुर है। रॉकी, जो सबसे पहले राक्षस से भिड़ने वाला था, ने स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया, विशेष रूप से ऊंची दीवार पर स्थित बैकहिल गांव के लोगों का। और जब उन्होंने रॉकी को सबसे बड़े काली आंखों वाले राक्षस के साथ लड़ते देखा तो उन्होंने आंतरिक रूप से उसकी बहादुरी के लिए उसकी सराहना की। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने शून्य जादुई कवच पहन रखा है। रॉकी और राक्षस को बार बार लड़ते देखकर लिन फेंग के आसपास के लोगों को थोड़ी ईर्ष्या हुई। वे शून्य जादुई कवच की प्रतिष्ठा से परिचित थे, लेकिन दुर्भाग्य से बैकहिल गांव इतने महंगे उपकरण नहीं खरीद सकता था, इसलिए शून्य जादुई कवच पहने रॉकी को राक्षस से लड़ते देखकर इन लोगों को बहुत ईर्ष्या हुई। बेकार की बातें बंद करो और धनुर्धारियों और जादूगरों को तैयार करो। जब बाकी लोग रॉकी पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लिन फेंग गंभीर भाव से देख रहा था। उसे रॉकी पर नजर रखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि शून्य जादुई कवच में उसे कोई खतरा नहीं था। उसका पूरा ध्यान रॉकी के पीछे खड़े सैनिकों पर था। जब सभी लोग बातचीत कर रहे थे, अन्य राक्षस पहले ही रॉकी के पीछे के सैनिकों की ओर बढ़ चुके थे। इन काली आंखों वाले राक्षसों में दिमाग नहीं था, या शायद उन्हें टीम वर्क का मतलब ही समझ नहीं आया। कल जब लिन फेंग ने एक राक्षस से आमने सामने की लड़ाई लड़ी तो बाकी राक्षस सैनिकों पर टूट पड़े, और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। जब रॉकी ने सबसे ताकतवर काली आंखों वाले राक्षस से मुकाबला किया तो बाकी 7 राक्षस उसके पीछे के सैनिकों पर बेतहाशा टूट पड़े, और उसके बाद ही असली लड़ाई शुरू हुई। सभी लोग शांत रहें, आदेश का पालन करें। अपनी छोटी सी टीम का नेतृत्व करते हुए लिलिया जोर जोर से चिल्ला रही थी और अपनी टीम के सबसे नजदीक खड़े राक्षस को गौर से देख रही थी। ये राक्षस भले ही रॉकी से उलझे राक्षस जितना विशाल न हो, लेकिन फिर भी बड़ा था, और जिस दिशा से आ रहा था उससे लग रहा था कि वह उसकी टीम को निशाना बना रहा है। जैसे ही राक्षस निकट आया, लिलिया ने अपनी ढाल उठाए और अपनी टीम को आदेश दिया, ढाल ऊपर करो। एक आदेश पर दस्ते के बाकी सदस्यों ने अपनी ढालें उठाई और एक साथ अपनी ढालों और कवच में मान को सक्रिय कर दिया, जिससे अन्यथा साधारण ढालें और कवच प्रकाश के प्रभामंडल में ढक गए। पहरेदारों द्वारा अपनी ढालें उठाने के कुछ ही सेकंड बाद काली आंखों वाला राक्षस आगे बढ़ा और बिना किसी चेतावनी के अपना पंजा चला दिया। राक्षस के व्यापक हमले से 4 रक्षकों पर 2 बार जोरदार आवाजें आईं, जिनमें से 2 अपनी प्रचंड शक्ति से गिर गए, जबकि अन्य 2 भी कई कदम पीछे धकेल दिए गए। लेकिन क्योंकि उन्होंने समय पर अपनी ढालें उठा ली थी, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपनी ढालों और कवच में मौजूद मान को सक्रिय कर लिया था, वे कुछ हद तक अस्त व्यस्त दिख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई। इसे घेर लो, काली आंखों वाले राक्षस के हमले के बाद गिरकर पीछे धकेले गए पहरेदारों की परवाह न करते हुए लिलिया ने तुरंत चिल्लाकर बाकी लोगों को राक्षस को घेरने के लिए प्रेरित किया। गिरकर पीछे धकेले गए पहरेदार भी उठकर घेरे में शामिल हो गए। इस प्रकार लिलिया ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और राक्षस को पूरी तरह से घेर लिया। अन्य लोग आक्रमण करने का अवसर तलाशते रहो, ऐसा कहकर लिलिया घेरे हुए राक्षस की ओर दौड़ी और हवा में ऊंची छलांग लगाते हुए अपनी तलवार से उस पर वार किया, जिससे काली आंखों वाले राक्षस की छाती पर 1 फुट लंबा घाव बन गया। लिलिया की रून तलवार शून्य जादुई कवच की पार्श्व तलवार से भी बेहतर थी। आज के मानकों के हिसाब से देखा जाए तो इस रून तलवार को आसानी से 3 सितारा हथियार माना जा सकता है। काली आंखों वाले राक्षस की कठोर खाल भी इस वार को झेल नहीं पाए और उसकी छाती पर लगे बड़े घाव से तुरंत खून की धार बहने लगी। ची 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 ची, गंभीर रूप से घायल काली आंखों वाले राक्षस ने चीख मारी और बिना सोचे समझे निकटतम रक्षक पर अपना पंजा चला दिया। पंजा लगते ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वह कई मीटर दूर उड़ गया, लेकिन इससे उसकी मौत नहीं हुई क्योंकि उसके रूनिक कवच ने अधिकांश बल को अवशोषित कर लिया, जिससे वह शीघ्र ही जमीन से उठकर फिर से घेरे में शामिल हो गया। अपनी ढालें उठाओ, अपनी सभी ढालें उठाओ, ढाल उठाओ, मन को सक्रिय करो, सभी लोग व्यवस्थित रहें। जब लिलिया एक राक्षस को घेरने और उससे भयंकर रूप से लड़ने के लिए अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी तो उसके पीछे से भी लगातार कार्रवाई और मन सक्रियण के लिए आह्वान आ रहे थे, जो ये दर्शाता था कि अन्य टुकड़ियां भी राक्षसों से युद्ध में संलग्न थीं। क्योंकि सभी ने लड़ाई शुरू कर दी थी, इसलिए लगभग एक ही क्षण में युद्ध का मैदान प्रकाश की चमक से भर गया। इस दृश्य ने ऊंची दीवार पर खड़े सभी लोगों को अचंभित कर दिया। हे भगवान, उनके पास इतने अच्छे उपकरण कैसे हैं? क्या इन सभी सैनिकों ने जादुई ऊर्जा उपकरण पहने हुए हैं? जब उन्होंने गार्डों को अपने जादुई ऊर्जा उपकरणों को सक्रिय करते देखा तो बैकहिल गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। इस थंडहॉक भाड़े के सैनिक समूह के साथ क्या मामला है? उन्होंने अपने सैनिकों को मन उपकरण भी प्रदान किया है। जब रॉकी ने अपने गार्ड कोर को राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में ले जाया तो लिन फेंग और अन्य, जो ऊंची दीवारों के ऊपर से लड़ाई को करीब से देख रहे थे, पूरी तरह से अचंभित थे, उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए थे। इससे पहले उन्हें रॉकी और उसकी सेना से कोई खास उम्मीदें नहीं थीं। बैकहिल गांव के उन लोगों की नज़र में जो लगातार राक्षसों से लड़ते रहते थे, रॉकी की सेना नौसिखिए से ज्यादा कुछ नहीं थी। इतना कि लिन फेंग ने अपने आदमियों को पहले ही तैयार कर लिया था कि जैसे ही रॉकी की सेनाएं टिक ना पाएं, वे तुरंत उनकी मदद के लिए तैयार रहें। लेकिन उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि रॉकी के नेतृत्व में सभी सैनिक मैना उपकरण से सुसज्जित थे, जिससे उनके सभी पूर्व निर्णय निरर्थक हो गए। उदाहरण के लिए वर्तमान स्थिति को ही लीजिए। लिन फैंग और अन्य लोग ऊंची दीवार से अपनी प्रभावशाली दृष्टि से युद्ध क्षेत्र के हर कोने को देख सकते थे। उनकी नज़र में युद्ध के मैदान की स्थिति पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। पहली नज़र में ये बिखरी हुई अव्यवस्था से अलग नहीं लग रही थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि लिलिया की रणनीति में सैनिकों को छोटी छोटी टीमों में बांटकर राक्षसों को एक एक करके अलग थलग करना और उनका खात्मा करना शामिल था। सीधे शब्दों में कहें तो ये रणनीति कुछ और नहीं बल्कि एक राक्षस पर हमला करने वाले लोगों का एक समूह था। स्वाभाविक रूप से युद्ध का मैदान अव्यवस्थित, यहां तक कि अराजक लग रहा था, लिन फैंग और अन्य लोगों की व्यवस्थित युद्ध संरचनाओं के विपरीत। इसी वजह से बैकहिल गांव के लोग इस लड़ाई को लेकर आशावादी नहीं थे। उनका मानना था कि रॉकी की हार तय है और हो सकता है कि पहली ही चोट में वह बिखर जाए। हालांकि जब युद्ध वास्तव में शुरू हुआ तो अपेक्षित परिणाम नहीं निकला। लिन फैंग और अन्य लोगों की कल्पना के विपरीत, जब रॉकी की सेना ने छोटे छोटे दल बनाकर राक्षसों को बांटना और घेरना शुरू किया, तो न केवल ये छोटे दल राक्षसों के पंजे के नीचे नहीं टूटे, बल्कि वे अपने अपने राक्षसों को भी पकड़ने में कामयाब रहे। ऐसा परिणाम निश्चित रूप से गार्ड कोर के मन उपकरण के कारण संभव हुआ। अगर थंडरहॉक सिटी के गार्ड कोर की गुणवत्ता पर गौर किया जाए तो यह वाकई औसत दर्जे का था। राक्षसों के हमलों का सामना करते हुए ज्यादातर गार्ड तुरंत पीछे हट जाते, कुछ तो उड़ भी जाते। लेकिन चूंकि उन्होंने दो मन उपकरण पहने हुए थे, इसलिए भले ही ये गार्ड हमलों का सामना नहीं कर पाए, फिर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। जो लोग पीछे धकेल दिए जाते थे या दूर फेंक दिए जाते थे, वे आसानी से जमीन से उठ खड़े होते थे और पुनः लड़ाई में शामिल हो जाते थे। इस बीच हालांकि गार्ड कोर की समग्र गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी कुछ लोग विशेष रूप से चमक रहे थे। रॉकी का जिक्र करना जरूरी नहीं था, जो अपने शून्य जादुई कवच में लिपटा हुआ था। उसके अलावा लिलिया और मोटे के प्रदर्शन ने भी बैकहिल गांव के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। युद्ध के मैदान में लिलिया पुरुषों के समूह के बीच एक चमकते गुलाब की तरह थी। उसकी उपस्थिति किसी भी अन्य की तरह प्रभावशाली थी। पराक्रम और बहादुरी के मामले में वह बेजोड़ थी और उसने केवल तीसरे स्तर की ताकत से एक राक्षस का अकेले ही सामना किया था। और लिलिया द्वारा अकेले ही राक्षस को चुनौती देने का कारण स्वाभाविक रूप से उसके पास रून उपकरणों का पूरा सेट होना था, जिससे बैकहिल गांव के लोग ईर्ष्या करते थे। बेशक लिन फैंग और बाकी लोगों को पता नहीं था कि लिलिया ने रून उपकरण पहना हुआ है। उन सबको लगा कि यह मन उपकरणों का एक सेट है और वे बहुत ईर्ष्यालु थे। आखिरकार यह मन उपकरणों का एक पूरा सेट था। उपकरणों की गुणवत्ता के मामले में अगर रॉकी का शून्य जादुई कवच पहले स्थान पर था, तो लिलिया का मन उपकरणों का सेट दूसरे स्थान पर होना चाहिए। इसलिए लड़ाई की शुरुआत से ही लिलिया सबके ध्यान का केंद्र बन गई, रॉकी से भी ज्यादा। आखिरकार एक खूबसूरत औरत को चमकते हुए देखना किसे अच्छा नहीं लगेगा। भीड़ का ध्यान एक अन्य आकर्षण मोटे पर भी था। बैकहिल गांव के लोग मोटे को लेकर दुविधा में थे। वे उसकी ताकत को पहचानते थे, लेकिन यह न भूलें कि मोटे का एक हाथ नहीं था, जिससे उनकी नज़र में वह असल में विकलांग था। इस बात पर पर्दे के पीछे काफी बहस हुई। वे सचमुच समझ नहीं पा रहे थे कि रॉकी ने एक विकलांग व्यक्ति को अपनी टीम का प्रभारी क्यों बनाया। लेकिन राक्षसों के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ऐसे विचार रखने वाले लोग, विशेष रूप से वे जो मोटे को एक विकलांग व्यक्ति के रूप में देखते थे, वे सभी चुप हो गए, क्योंकि मोटे युद्ध के मैदान में अविश्वसनीय रूप से भयंकर था। एक बीस्टमैन होने के नाते मोटे की लंबाई भी 2 मीटर से अधिक थी, जो कि काली आंखों वाले दानवों के बराबर थी, जिससे उनकी मुठभेड़ें आम लोगों की कल्पना से परे लड़ाई में बदल जाती थीं। विशालकाय बीस्टमैन ने बिना पीछे हटे काली आंखों वाले दानव का डटकर सामना किया और पूरी ताकत से उसका सामना किया। खास तौर पर उसका ब्रॉडेक्स, जो एक बेसिन से भी बड़ा था और रून से जड़ा हुआ था, और 5वें स्तर के योद्धा के रूप में मोटे की अंतर्निहित शक्ति के साथ मिलकर उसे क्रूर काली आंखों वाले दानव को पहली ही भिड़ंत में चकनाचूर कर देने में सक्षम बनाया, जिससे वह पूरी तरह से चकरा गया। लगता है हमें कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। युद्ध के मैदान की स्थिति का आकलन करते हुए लिन फैंग ने राहत की सांस ली और अपने आसपास के लोगों से मुस्कुराते हुए कहा, जिन्होंने भी सहमति में सिर हिलाया। लिन फैंग का आकलन सही था। उस समय रॉकी और बाकी लोग अभी भी भीषण युद्ध में लगे हुए थे, लेकिन ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती। जैसे ही रॉकी, मोटे या लिलिया उस राक्षस को हरा देते जिसका वे सामना कर रहे थे, बाकी टीमों को उनका समर्थन मिल जाता। इससे राक्षसों के मारे जाने की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा युद्ध शीघ्र ही अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा। दरअसल मोटे और लिलिया पहले ही अपने अपने राक्षसों पर विजय पा चुके थे और जल्द ही उनका सफाया कर देंगे। इन परिस्थितियों में लिन फैंग और उसके समूह को सहायता देने की कोई जरूरत नहीं थी। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ, मुझे देखने दो, एक तरफ हट जाओ, रास्ता मत रोको। जैसे ही लिन फैंग ने यह मानकर कि लड़ाई अब पूरी तरह से नियंत्रण में है और उसे अपनी उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है, अचानक ऊंची दीवार के ऊपर से एक कर्कश आवाज आई। एक व्यक्ति तुरंत भीड़ को चीरता हुआ दीवार के किनारे की ओर दौड़ा और नीचे हो रहे दृश्य को उत्साह से देखने लगा। ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दुसा था। लीलिया के तंबू में छुपकर दूसा इतने दिनों से अंदर ही थी, इसलिए पिछले कुछ दिनों से वह काफी घुटन महसूस कर रही थी। जैसे ही उसने सुना कि लड़ाई शुरू हो गई है, वह अपनी बोरियत को और नहीं रोक पाए और बाहर निकल गई। दुसा भीड़ को चीरती हुई ऊंची दीवार पर चढ़ गई और फिर युद्ध क्षेत्र की ओर देखा और तुरंत ही उसने अपने पिता को देख लिया। उस समय मोटे काली आंखों वाले दानव से भीषण युद्ध में उलझा हुआ था और उसे बुरी तरह से पीट रहा था। ये देखकर दुसा खुशी से झूम उठी। वह खुशी से उछल पड़ी और अपने आसपास खड़े लोगों से बोली, क्या तुमने देखा? ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता हैं। ये कहने के बाद वह अपने उत्साह को रोक नहीं सकी और युद्ध क्षेत्र की ओर चिल्लाई, पिताजी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। धत्तेरी की, लिन फैंग ने तुरंत मन ही मन कोसा। उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि दुसा को इस तरह चिल्लाने की हिम्मत थी। युद्ध के मैदान में अन्य लोगों द्वारा दुसा की आवाज को अनदेखा किया जा सकता था या सुना ही नहीं जा सकता था, लेकिन मोटे ने उसे सुना। मोटे, जो युद्ध में राक्षस को कड़ी टक्कर दे रहा था, ने अचानक अपनी बेटी की आवाज सुनी। उसने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा और दीवार पर दूसा को अपनी ओर इशारा करते हुए देखा। ये दृश्य देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। आश्चर्य के उस क्षण में, जिस काली आंखों वाले दानव को वह बुरी तरह पीट रहा था, उसने हमला बोल दिया और अपना पंजा मोटे के सिर की ओर बढ़ा दिया। तेज हवा का झोंका महसूस करते हुए मोटे ने होश संभालते हुए सिर पर वार से बचने के लिए समय रहते खुद को बचा लिया, लेकिन राक्षस के पंजे ने उसके कंधे पर जोरदार वार किया। वह न सिर्फ लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरा, बल्कि उसका कंधा भी फट गया, जिससे मांस और खून बाहर निकल आया। उसी समय लिलिया ने दूसा की आवाज भी सुनी, जिससे उसकी नजर अनजाने में ऊंची दीवार पर और फिर मोटे की ओर गई। उसने मोटे को चोट लगने का ठीक वही पल देखा था, लेकिन एक विशाल वस्तु के उस पर टूट पड़ने से वह दंग रह गई। लिलिया को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है और वह गिरकर दूर जा गिरी। एक क्षण में, बस एक क्षण में, पूर्व में व्यवस्थित युद्ध क्षेत्र अराजकता में बदल गया। कप्तान, कप्तान, प्रशिक्षक, मोटे और लिलिया को राक्षसों ने एक के बाद एक नीचे गिरा दिया था, जिससे उनके दस्ते एक पल में ही अस्त व्यस्त हो गए और इस अराजकता ने निस्संदेह राक्षसों को पलक झपकते ही घेरा तोड़ने का मौका दे दिया। दो दस्ते, जो मूल रूप से राक्षसों को सबसे पहले मारने के लिए सबसे अधिक आशाजनक थे, उस समय उनकी पंक्तियां सबसे पहले बिखर गईं। इस समय अन्य दस्तों ने भी यहाँ की स्थिति पर ध्यान दिया और जब गार्डों ने देखा कि लिलिया और मोटे के नेतृत्व वाले दस्ते बिखरे हुए थे और लिलिया और मोटे को नीचे गिरा दिया गया था, तो नए सैनिकों की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर हुई। थंडरहॉक सिटी के गार्ड कोर ने कभी युद्ध का मैदान नहीं देखा था, इसलिए उम्र की परवाह किए बिना सभी गार्ड नए सैनिक थे और नए सैनिकों की सबसे घातक खामियों में से एक बाधाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने में असमर्थता है। युद्ध के मैदान में गार्ड राक्षसों को रोकने में सक्षम थे। इसका पहला कारण यह था कि रॉकी, शहर के स्वामी, ने मोर्चे पर हमला करके मनोबल को बहुत बढ़ा दिया था, जिससे हर कोई उत्साहित महसूस कर रहा था। दूसरा, ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉकी, लिलिया और मोटे गार्ड की रीढ़ थे और हर किसी को लगता था कि जब तक वे तीनों वहां हैं, युद्ध निश्चित रूप से जीता जा सकता है। यह विचार शायद कुछ हद तक भोला भाला था, लेकिन यही वह मूल प्रेरणा थी जिसने सभी को राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार रखा, और जब वास्तविक युद्ध शुरू हुआ तो स्थिति वास्तव में सभी की अपेक्षाओं से मेल खाती थी। रॉकी, लिलिया या मोटे, सभी ने असाधारण बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। जो राक्षस दूसरों को राक्षस जैसे लगते थे, उन्हें तिकड़ी ने पूरी तरह से दबा दिया, जिससे गार्डों का मनोबल बढ़ा और राक्षसों के हमले के बावजूद सभी को अपनी जमीन पर डटे रहने में मदद मिली। लेकिन अब दुसा के प्रकट होने के कारण मोटे और लिलिया दोनों को लगातार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा और तीन में से दो रीढ़ की हड्डी एक ही पल में गिर गई, जिससे पहरेदारों की मानसिकता को गहरा धक्का लगा। उनके नेतृत्व वाले दस्ते सबसे पहले अराजकता में फंस गए और यह अराजकता तेजी से दूसरे दस्तों में फैल गई, जिससे पूरी स्थिति अस्त व्यस्त हो गई। यद्यपि इसका एक कारण है और यद्यपि गिरे हुए मोटे और लिलिया वास्तव में बहुत जल्दी फिर से खड़े हो गए, यह मत भूलिए कि यह एक युद्ध का मैदान है और अधिकांश लोग नहीं जानते कि वास्तव में क्या हुआ है। हर कोई केवल इतना जानता है कि मोटे और लिलिया जैसे दोनों रीढ़ की हड्डी के आंकड़े राक्षसों द्वारा मारे गए थे और पहले से बढ़ते मनोबल अचानक गिर गए। युद्ध के मैदान में नए सैनिकों के साथ यही सबसे आम समस्या है। अनुभव की कमी के कारण वे स्वयं स्थिति का आकलन नहीं कर पाते और साथ ही मानसिक दृढ़ता की कमी के कारण अक्सर या तो अत्यधिक मनोबल या पूरी तरह से निराशा का प्रदर्शन करते हैं। थंडरहॉक सिटी के गार्ड अब ऐसी स्थिति में हैं, और जब मनोबल गिर गया तो गार्ड पूरी तरह से अराजकता में पड़ गए, और जैसे ही अराजकता फैल गई, युद्ध के मैदान पर स्थिति भी तुरंत बदल गई। राक्षसों ने, जो पहले से ही घेरे में थे, जैसे ही रक्षकों में घबराहट होने लगी, चारों ओर कत्लेआम शुरू कर दिया। राक्षसों के इस तांडव के चलते यह मजबूत घेरा टूट गया और जैसे ही घेरा टूटा हताहतों की संख्या बढ़ने लगी। समय पर बच न निकलने के कारण राक्षसों के पंजों से रक्षक घायल हो गए और कुछ तो गिरकर फिर कभी नहीं उठे। घबराओ मत, अपना स्थान बनाए रखो, कैप्टन लिलिया ठीक हैं। सब लोग घबराए नहीं, शांत रहें, प्रशिक्षक मोटे ठीक हैं, अराजकता को अपने ऊपर हावी न होने दें। जैसे ही युद्ध के मैदान में अराजकता फैलने लगी, प्रत्येक दस्ते के कप्तानों ने शांत रहने की कोशिश की तथा दूसरों को स्थिर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अराजकता बेरोकटोक जारी रही। लगभग एक ही पल में युद्ध का रुख पूरी तरह बदल गया। कैसे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? युद्ध का मैदान एक क्षण में ही अस्त व्यस्त हो गया, जिससे पहले से प्रसन्न दुसा स्तब्ध रह गई। भोली लड़की को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। कुछ ही क्षण पहले सब कुछ ठीक था, तो ये सब अचानक कैसे बदल गया? कोई, उसे यहाँ से बाहर निकालो। तभी लिन फैंग ने भी अपनी भौहें गहरी सिकोड़ ली। उसके आदेश पर स्तब्ध दुसा को जल्दी से ऊंची दीवार से नीचे उतारा गया और फिर उसने जल्दी से अपना ध्यान युद्ध के मैदान की ओर मोड़ लिया। दरअसल दुसा के व्यवहार के आधार पर लिन फैंग ने पहले ही उसकी पहचान का पता लगा लिया था और अपने अनुभव के साथ वह मोटे की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति से स्थिति के अंदरूनी और बाहरी पहलुओं को बता सकता था। इसने उसे असहायता की गहरी भावना से भी भर दिया। प्राचीन काल से ही यह नियम रहा है कि युद्ध में जाने वाले सैनिक अपनी पत्नियों और बच्चों को साथ नहीं ला सकते। सैनिक अपनी पत्नियों और बच्चों को युद्ध में क्यों नहीं ले जा सकते? अभी मोटे के व्यवहार पर गौर कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। एक बार जब सैनिक युद्ध के मैदान में दुश्मन का सामना कर रहे होते हैं, तो अगर उनका दिल अभी भी घर पर अपने प्रियजनों से जुड़ा होता है, तो अगर वे युद्ध में नहीं मारे जाते हैं तो वे भगोड़े बन जाएंगे। दुसा का दिखना स्पष्ट रूप से इस निषेध का उल्लंघन था। हालांकि अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि दुसा को ऊंची दीवार से नीचे खदेड़ दिया गया था, युद्ध क्षेत्र में पहले से ही अराजकता फैल चुकी थी और हार का रुख स्पष्ट हो चुका था। लिन फैंग ने तुरंत बैकहिल गांव के सैनिकों को हमले की तैयारी करने का आदेश दिया। वह हमले का नेतृत्व करना और उनका समर्थन करना चाहता था। लेकिन ठीक इसी समय, जब थंडहॉक शहर की गार्ड कोर पहले से ही बुरी तरह से अव्यवस्थित हो चुकी थी और हार की प्रवृत्ति अपरिहार्य थी, लिन फैंग बस बैकहिल गांव के सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए उनका समर्थन करने वाले थे, जब अचानक एक दयनीय चीख सुनाई दी जिसने पूरे आकाश को चीर दिया। शशशश 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 शश, चीख कानों को चीर देने वाली तेज थी, इतनी करुण की खून जमा दे। उसकी आवाज न सिर्फ पूरे आसमान में गूंजी बल्कि आते ही सबके कानों तक पहुंच गई। युद्ध के मैदान में मौजूद लोगों ने उसे सुना, ऊंची दीवारों पर खड़े लोगों ने सुना, यहां तक कि बैकहिल गांव के ग्रामीणों ने भी उसे सुना। इस भयानक विलाप ने सभी को, चाहे वे युद्ध के मैदान में हों, ऊंची दीवारों पर हों या हर जगह कहर बरपा रहे राक्षसों को, एक ही समय में एक ही दिशा में देखने पर मजबूर कर दिया। ध्वनि का स्रोत। वास्तव में रोने का स्रोत हर किसी से दूर नहीं था। ये युद्ध के मैदान के किनारे पर था, ठीक वहीं जहां रॉकी था। पहले से ही हालात में आए तेज बदलाव के कारण कई लोगों ने रॉकी की मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया था, यहां तक कि उसे भूल भी गए थे। लेकिन जब उन्होंने एक बार फिर उस पर ध्यान दिया तो उन्हें एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। ठीक इसी समय रॉकी अपनी लंबी तलवार हाथ में लिए काली आंखों वाले दानव पर वार कर रहा था। उसने अपनी तलवार दानव की छाती में जोर से घुसा दी, फिर उसकी पीठ से बाहर निकाल दी और विशालकाय काली आंखों वाले दानव को सीधा चीर डाला। काली आंखों वाला दानव, जिसकी छाती तलवार से छिद गई थी, करुण क्रंदन कर रहा था। उसकी आवाज भयानक थी और अपने पंजों की नाराजगी भरी फड़फड़ाहट से ऐसा लग रहा था मानो वह रॉकी को भी अपने साथ घसीटकर मार डालना चाहता हो। लेकिन ऐसा करने का उसे कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि अपनी तलवार से उसे छेदने के बाद रॉकी ने दोनों हाथों से मूठ को दबाया और एक तेज वार के साथ काली आंखों वाले दानव को उसकी छाती से अलग कर दिया। हे भगवान, उसने अभी क्या किया? इस खूनी दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया तथा कुछ लोगों को तो पेट में उल्टी जैसा महसूस होने लगा। दानव को दो टुकड़ों में काटने के बाद रॉकी धीरे धीरे घूमा। अपनी खून से सनी तलवार को पकड़े हुए उसने युद्ध के मैदान की ओर देखा। उस क्षण वह स्वयं वध के देवता की तरह लग रहे थे। न केवल उपस्थित सभी लोगों को चौंका रहे थे बल्कि शेष राक्षसों को भी अचंभित कर रहे थे। युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह अस्त व्यस्त देखकर रॉकी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हवा में छलांग लगाई और फिर युद्ध क्षेत्र के केंद्र की ओर उड़ चला। गार्ड कोर की आधारशिला अंततः आ गई थी। जब रॉकी पैराशूट से युद्ध के मैदान में उतरा तो गार्ड और राक्षस पिछले क्षण के सदमे से उबर भी नहीं पाए थे। और यह रॉकी नहीं था जिसने अंततः सभी को होश में लाया, बल्कि एक और चीख थी। रॉकी, जो पैराशूट से युद्ध में उतरा था, ने एक स्तब्ध राक्षस को निशाना बनाया और तलवार से उसे नीचे गिराने के बाद उसने अपनी लंबी तलवार से राक्षस पर तीन बार वार किया, जिससे वह प्राणी लगातार चीखता रहा। हालांकि यह मानना होगा कि राक्षस वास्तव में राक्षसी स्वभाव के होते हैं। रॉकी द्वारा लगातार 3 बार काटे जाने के बाद भी ये राक्षस तब तक नहीं मरा जब तक रॉकी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चौथा वार नहीं किया और आखिरकार राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस का सिर काट दिए जाने के बाद युद्ध क्षेत्र में मौजूद सभी लोग अंततः वास्तविकता में लौट आए। गार्ड कोर अब पुनः सशक्त हो चुके थे, पहले से पूरी तरह भिन्न थे। कुछ ही क्षण पहले जो पतन के कगार पर थे अब उनमें मनोबल बढ़ गया था तथा उन्होंने एक बार फिर युद्ध क्षेत्र की गतिशीलता को बदल दिया। अराजक युद्ध क्षेत्र तुरंत स्थिर हो गया। विभिन्न दस्तों के नेताओं के निर्देश पर रक्षकों ने एक बार फिर राक्षसों को पूरी तरह से घेर लिया और पिछली सारी अराजकता ऐसी लग रही थी जैसे कि वह कभी हुई ही नहीं थी, मृत राक्षसों और घायल रक्षकों को छोड़कर। इस बिंदु पर लिलिया द्वारा दस्तों को सौंपे गए नेताओं का उल्लेख करना उचित होगा। ये वास्तव में गार्ड कोर के कुलीन वर्ग थे। जब सारे पहरेदार अस्त व्यस्त थे, सैंड्रो जैसे नेताओं ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर भी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और हालांकि उनका कोई खास असर नहीं हुआ, फिर भी उनके प्रयास निस्संदेह सराहनीय थे। दरअसल उन्हीं की बदौलत रॉकी के लड़ाई में शामिल होने से गार्ड्स ने जल्दी से राक्षसों को फिर से घेर लिया। मोटे और लिलिया ने भी इस मौके का फायदा उठाया और रॉकी के साथ मिलकर जवाबी हमला किया। स्थिति जो पतन के कगार पर थी अचानक पलट गई और इस परिवर्तन का उत्प्रेरक स्पष्ट रूप से रॉकी था। रॉकी के लिए उस राक्षस को मारना एक बहुत ही आम बात थी जिससे वह उलझा हुआ था, इतना आम कि किसी ने ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि उसके द्वारा मारे जाने का समय बहुत अहम था। जिस क्षण उसने राक्षस को मारा ठीक उसी समय गार्ड कोर अराजकता और हार के कगार पर पहुंच गया था। ये समय निर्णायक था और उसके संहारक देवता जैसे युद्धभूमि में उतरने और राक्षस के शीघ्र विनाश के साथ उसने हतप्रभ रक्षकों के हृदय को स्थिर कर दिया जिससे उन्हें अपना सहारा मिल गया। रॉकी गार्डों के लिए समर्थन का स्तंभ था। उनकी नजरों में रॉकी का दर्जा बेमिसाल था। वह न सिर्फ उनके दिलों में शहर का राजा था बल्कि सबसे शक्तिशाली योद्धा भी था जिसका वे आदर करते थे। दिलचस्प बात यह है कि रॉकी के लड़ाई में शामिल होने के बाद उसकी उपस्थिति से न केवल गार्डों का मनोबल बढ़ा बल्कि राक्षस भी प्रभावित हुए। शायद इसलिए कि उसने उनके बॉस को मार डाला था, घिरे हुए राक्षसों में अब पहले जैसी हेकड़ी नहीं रही। जब रॉकी ने उन पर नजर डाली तो ये राक्षस सचमुच विलाप करने लगे और उनकी काली आंखों में डर साफ झलक रहा था। इसे देखते हुए आगे की लड़ाई का नतीजा साफ था। रॉकी, लिलिया और मोटे ने एक एक करके घिरे हुए राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। राक्षस जल्दी से जमीन पर गिर पड़े और देखते ही देखते सभी मारे गए। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हाहा, हम जीत गए, हम जीत गए। जब अंतिम राक्षस रॉकी के पैर के नीचे दबा हुआ था और उसकी लंबी तलवार ने उसके सिर को छेद दिया तो ये स्पष्ट नहीं था कि किस रक्षक ने विजयी जयघोष शुरू किया था, लेकिन जल्द ही वह जयघोष एक कोरस में बदल गया जो जयकार की लहरों में बदल गया। जयकारे के बीच रॉकी ने अपनी तलवार राक्षस की खोपड़ी से बाहर निकाली और गार्डों की लगातार जयकार का सामना करने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह धीरे से मुड़ा पहरेदारों की जय जयकार अचानक थम गई। सब उसे देख रहे थे, रॉकी को धीरे से अपनी लंबी तलवार उठाते हुए और उसके राक्षसी रक्त से सने चेहरे पर मुस्कान फैलते हुए देख रहे थे। हम जीत गए। अपने ही गार्ड कोर का सामना करते हुए रॉकी ने अपनी रक्त से सनी तलवार को ऊपर उठाया और विजय की घोषणा की। जैसे ही उसने अपना वक्तव्य समाप्त किया सभी गार्डों ने अपने हथियार उठा लिए और वे और भी जोर से जयकार करने लगे। वे जीत गए थे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? गगनभेदी जयघोष के बीच लिलिया रॉकी के पास पहुंची, उसकी रक्तरंजित आकृति को देखा और चिंता से पूछा। नहीं, ये सब राक्षसों का खून है। रॉकी ने अपना सिर हिलाते हुए लिलिया के गाल से खून पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया जिससे वह शर्मा गई, लेकिन उसने तुरंत कहा, घायल को तुरंत गांव में ले जाओ और मोटे का ध्यान रखो। जितनी जल्दी हो सके उसके घावों पर पट्टी बांध दो। हाल ही में हुई अफरा तफरी में गार्ड कोर के कई लोग घायल हो गए थे, खासकर मोटे जिसकी चोटें गंभीर थीं। लिलिया से आगे बातचीत में समय बर्बाद किए बिना रॉकी ने उसे घायलों की देखभाल के लिए भेज दिया, फिर सैंड्रो को बुलाया। सी कमांडर, रॉकी को अपने लिए हाथ हिलाते देख सैंड्रो खुशी से भरे चेहरे के साथ तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। ये स्पष्ट नहीं था कि उसकी खुशी उनकी हालिया जीत से थी या रॉकी के उसे बुलाने से थी। सैंड्रो, कुछ आदमियों को लेकर राक्षसों की लाशें गांव में ले जाओ, रॉकी ने आदेश दिया। इन्हें बर्फ के जादू से जमा दो, ये हमारी युद्ध की लूट है, समझे? हाँ महाराज, निश्चिंत रहें, सैंड्रो ने जवाब दिया। उनकी सहमति से सैंड्रो जयकार कर रही भीड़ के पास दौड़ा और कई गार्डों को बुलाकर युद्ध क्षेत्र की सफाई शुरू कर दी। यद्यपि युद्ध भयंकर था और अंततः वे जीत गए थे, रॉकी ने सफलता को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। उसे अभी भी युद्ध की लूट का असली माल 8 राक्षसों के शव जब्त करना याद था, जो कि यदि कुछ क्षतिग्रस्त भी होते तो अच्छी खासी रकम में बेचे जा सकते थे। जब सब कुछ निपट गया तो वह अपने लोगों को वापस बैकहिल गांव ले गया। जैसे ही वे ऊंचे द्वार से गुजरे विजयी रॉकी और उसके सैनिकों का स्वागत लिनफेंग और अन्य लोगों ने किया जो कुछ समय से इंतजार कर रहे थे। कमांडर रॉकी, यह एक शानदार जीत थी। बड़े कदमों से रॉकी के पास पहुंचते हुए लिन फैंग कुछ कहे बिना नहीं रह सका। उसके शब्द कोई चापलूसी नहीं थे, युद्ध वाकई रोमांचक था। युद्ध के मैदान में कई बार स्थिति बदली जिससे लिन फैंग बेचैन हो गया, लेकिन अंत में रॉकी और उसके आदमियों की जीत हुई और बहुत कम हताहतों के साथ। शानदार जीत। धन्यवाद कैप्टन लिन फैंग, कृपया सुनिश्चित करें कि हमारे घायलों की ग्रामीणों द्वारा अच्छी देखभाल की जाए, रॉकी ने उत्तर दिया। चिंता मत करो, घायलों की देखभाल गांव वाले करेंगे, लिन फैंग ने उसे आश्वासन दिया। दोनों ने पहले ही घायलों के मामले पर चर्चा कर ली थी और बैकहिल गांव के ग्रामीण उनके लिए जिम्मेदार थे, इसलिए लिन फैंग ने सहमति में केवल सिर हिलाया। उसके बाद रॉकी ने लिन फैंग के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की और तुरंत अगली लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। अगर और राक्षस आ गए तो क्या होगा? रॉकी को सतर्क रहना था, और इसलिए रॉकी और गार्ड कोर अपनी जीत के तुरंत बाद आराम करने के बजाय रात तक किसी और राक्षसी हमले की आशंका में सतर्क रहे। रॉकी द्वारा रात की पहरेदारी का प्रबंध करने के बाद आखिरकार सभी आराम कर सके। फिर भी रॉकी ने आराम नहीं किया, वह तुरंत घायलों का हालचाल जानने चला गया। हालांकि हाल ही में हुई लड़ाई में किसी की जान नहीं गई थी, फिर भी कई लोग घायल हुए थे, कुल 9 गार्ड। स्वाभाविक रूप से रॉकी उन पर नजर रखना चाहता था और बाकी सब देखने के बाद वह लिलिया को मोटे के तंबू में ले आया। सभी घायलों में मोटे की हालत सबसे ज्यादा गंभीर थी। तंबू में घुसते ही रॉकी ने देखा कि मोटे के कंधे पर मोटी पट्टियां बंधी हुई थी। मोटे, आराम करो और शांति से स्वस्थ हो जाओ, लिलिया और मैं आगामी लड़ाइयों का ध्यान रखेंगे, रॉकी ने उसे आश्वासन दिया। रॉकी स्वाभाविक रूप से मोटे की चोटों को लेकर सबसे अधिक चिंतित था और उसने उसे बिना किसी चिंता के ठीक होने के लिए कहा। हालांकि मोटे के उत्तर का सैनिकों, रॉकी या किसी अन्य से कोई लेना देना नहीं था। नगरपाल दुसा कैसा है? उसने पूछा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मोटे के सवाल से अचंभित रॉकी को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, बस लिलिया की तरफ देखता रहा जो स्थिति को समझते हुए तंबू से बाहर निकल गई। जब वह वापस लौटी तो दुसा उसके साथ था। उस पल दुसा बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। वो जिंदा दिल जवान लड़की अब मुरझाई हुई लग रही थी, खासकर उसकी सूजी हुई आंखें, साफ लग रहा था कि वो बहुत देर से रो रही थी। पिताजी, मैं गलत थी, उसने कांपते हुए कहा। मोटे के बिस्तर के पास जाकर वह अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाए। रॉकी और लिलिया ने अनुमान लगाया था कि इस समय मोटे शायद गुस्से में दहाड़ेगा, खासकर इसलिए क्योंकि इस बार दुसा ने वास्तव में एक बड़ी समस्या पैदा कर दी थी। अप्रत्याशित रूप से गुस्से में फूट पड़ने के बजाय मोटे ने बस अपनी बेटी की ओर देखा और आह भरते हुए अपनी नजर रॉकी की ओर घुमा ली। नगरपालिका, दुसा ने गंभीर समस्या खड़ी कर दी है, आवश्यकतानुसार उसे दंडित करने या अनुशासित करने में संकोच न करें, लेकिन उसने कहा, कृपया मुझे उसकी जगह बोझ उठाने दीजिए। यह रॉकी पहले तो अचंभित हुआ और फिर असहाय होकर आहें भरने लगा, क्योंकि स्थिति वास्तव में संभालने योग्य बहुत कठिन थी। मोटे के शब्दों ने रॉकी को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। इस बार दुसा ने वाकई बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। अगर वह न होती तो थंडरहॉक सिटी के गार्ड कोर को पिछली लड़ाई शानदार तरीके से जीत लेनी चाहिए थी और कोई हताहत भी नहीं होता। लेकिन दुसा की वजह से ही लड़ाई लगभग नाकामी में ही खत्म हो गई और कई गार्ड घायल हो गए। ऐसे गंभीर परिणामों का सामना करते हुए दुसा पर सेना का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाना अतिशयोक्ति नहीं होगी, और सजा निश्चित थी क्योंकि उसे दंडित न करना सेना के मनोबल को स्थिर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन रॉकी को जो बात परेशान कर रही थी वह ये थी कि हालांकि दुसा की गलती थी, लेकिन उसका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। उसने ये दुर्घटना केवल अज्ञानता के कारण की थी, इसलिए अज्ञानी दोषी नहीं होते का सिद्धांत उस पर भी लागू हो सकता था। दूसरी बात, गार्ड कोर की अराजकता का मुख्य कारण वास्तव में मोटे और लिलिया थे, इसलिए दोष पूरी तरह से दुसा पर नहीं मढ़ा जा सकता था, उन दोनों की भी जिम्मेदारी थी। और अंतिम बात यह थी कि दुसा मोटे की बेटी थी। रॉकी स्वाभाविक रूप से मोटे के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकता था जैसा वह दूसरों के साथ करता। आखिरकार मोटे उसका मूल्यवान सहयोगी था, ऐसी स्थिति में वह दूसरा को सजा कैसे दे सकता था। इस प्रकार रॉकी को वास्तव में स्थिति कठिन लगी। गार्ड कोर के गार्ड इस मामले में पहले ही घायल हो चुके थे। अगर वह इसे बिना किसी समाधान के छोड़ देता तो गार्ड शायद असंतुष्ट हो जाते, लेकिन अगर वह दूसरा को सचमुच सजा देना चाहता तो रॉकी ऐसा नहीं कर सकता था। थंडरहॉक सिटी के कानून के अनुसार ऐसी गलती करने पर दुसा को कोड़े मारे जाने चाहिए थे। नगरपालिका, ये दुसा की गलती थी, उसकी वजह से गार्ड कोर के सभी भाई युद्ध के मैदान में लगभग मर ही गए थे, इसलिए हमें सबको जवाब देना होगा, रॉकी की हिचकिचाहट देखकर मोटे ने कहा। तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, जो करना है करो, मैं सारे परिणाम भुगतूंगा, रॉकी को अनिर्णीत देखकर मोटे ने फिर से बोलना शुरू किया। वह जानता था कि रॉकी दुविधा में है, लेकिन मोटे को और भी स्पष्ट रूप से पता था कि उन्हें गार्ड कोर को स्पष्टीकरण देना होगा, वरना निश्चित रूप से कुछ गार्ड्स के मन में द्वेष की भावनाएं होंगी। ऐसा असंतोष उसके और रॉकी दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ये कैसा रहेगा? चलो अभी इस घटना को नोट कर लेते हैं। जब मिशन पूरा हो जाएगा और हम थंडरहॉक सिटी लौट आएंगे, तब हम कोई फैसला लेंगे, लिलिया ने बगल से एक अस्थायी समाधान सुझाया। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे मामलों में देरी नहीं की जा सकती। रॉकी के सहमत होने या न होने से पहले ही मोटे ने तुरंत जवाब दिया, लड़ाई अभी शुरू हुई है और अभी एकता की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम इस मामले से नहीं निपटे तो हम आगे की लड़ाइयां नहीं लड़ पाएंगे। मोटे की बातें बिल्कुल सही थीं। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और पता नहीं आगे कितनी लड़ाइयां होंगी। यही सही समय था कि सबके दिलों को एक किया जाए और उन्हें सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। अगर गार्ड कोर ने अभी से नाराजगी पालनी शुरू कर दी तो वाकई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। नगर स्वामी, रॉकी के फटेहाल होते ही दुसा, जो तंबू में आने के बाद से सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी, अचानक बोल पड़ी। उसने आंसुओं से भीगी आंखों से रॉकी को देखा और होंठ काटते हुए बोली, नगरपाल पिताजी सही कह रहे हैं, मैंने बहुत बड़ी तबाही मचाई है और मुझे सजा मिलनी चाहिए। कृपया मेरे कारण दया न करें, लेकिन एक बात का वादा करो, दूसरा ने रॉकी की ओर मुड़ने से पहले मोटे की ओर देखते हुए कहा। मैंने जो तबाही मचाई है उसके परिणाम मैं भुगत सकती हूँ, मेरे पिता को मेरे लिए भुगतने की जरूरत नहीं है। दूसरा की इतनी बहादुरी भरी बातें सुनकर रॉकी दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लड़की जैसी दूसरा में इतनी हिम्मत होगी, खासकर इसलिए क्योंकि अगर उसे सजा मिलती तो उसे कोड़े मारे जाते। मोटे भी अपनी बेटी की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन फिर गर्व से मुस्कुराया। यह उसकी बेटी थी। ठीक है, इतना कहकर रॉकी केवल सिर हिला सका, फिर उसने दूसा के सिर पर थपथपाया, युवती तुम बड़ी हो गई हो। ये कहकर उसने दूसा को मोटे के तंबू में छोड़ दिया। अब जब सबको पता चल गया था कि दूसा आ गई है तो उसे छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके लिए बेहतर यही था कि वह वहीं रहकर मोटे की देखभाल करे। इसके तुरंत बाद रॉकी लिलिया के साथ चला गया, और रॉकी और लिलिया के चले जाने के बाद दूसा मोटे के बिस्तर के पास बैठ गई और काफी देर बाद अभी भी अपने होंठ काटते हुए उसने पूछा, पिताजी क्या कोड़े मारने से दर्द होता है? दर्द तो होता है, मोटे ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। रात बिना कुछ कहे बीत गई और पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। सुबह सुबह लिन फेंग के साथ हैंडओवर पूरा करने के बाद रॉकी गार्ड कोर को वापस कैंप ले गया, लेकिन उसने तुरंत सैनिकों को नहीं हटाया। कैंप में घुसते ही सभी को हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि मोटे पट्टी बांधे अपने बगल में दूसरा के साथ खड़ा है। रॉकी ने सैनिकों को रोका और उन सबके सामने खड़ा हो गया। कल की लड़ाई में तुम सब ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, रॉकी ने पहरेदारों से ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारी बहादुरी ने राक्षसों को थर्रा दिया और तुम्हारी ताकत ने राक्षसों को चौंका दिया, मुझे तुम पर गर्व है। रॉकी के शब्द सीधे दिल से निकले थे क्योंकि कल की जीत ने उसे सचमुच गर्व से भर दिया था। ये सुनकर पहरेदारों ने भी सीना फुला लिया और खुद पर गर्व महसूस किया। लेकिन तभी रॉकी का स्वर अचानक बदल गया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हालांकि कल कुछ लोगों ने एक घातक गलती की, इस गलती के कारण कई भाई घायल हो गए और इसका परिणाम लगभग हमारा पतन ही था। मैं ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऐसा कहकर रॉकी ने अपना हाथ हिलाया और मोटे ने दूसा को आगे लाया। मोटे आप सबके प्रशिक्षक हैं और दूसा आपकी बेटी है, हमें बताए इससे कैसे निपटा जाना चाहिए, पहले मोटे और फिर दूसा की ओर देखते हुए रॉकी ने ठंडे स्वर में पूछा। महाराज, दूसा ने युद्ध के दौरान सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया और उसे कोड़े मारे जाने चाहिए। कितने कोड़े? 6 कोड़े, रॉकी के सामने सीधे खड़े होकर मोटे ने ऊंची आवाज में कहा। उसके बोलते ही सारे पहरेदारों ने जोर से सांस ली, 6 कोड़े। दूसा तो बस एक लड़की थी, इतनी सजा कैसे सह सकती थी। इन परिस्थितियों में गार्ड कोर से किसी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, महाराज कृपया दूसा को छोड़ दीजिए, उसने ये जानबूझकर नहीं किया। हाँ मेरे प्रभु, कृपया छोटी दूसा को जाने दीजिए, कृपया दया करें मेरे प्रभु। 2 महीने की कड़ी ट्रेनिंग ने गार्ड्स और उनके प्रशिक्षक मोटे के बीच एक मजबूत रिश्ता बना दिया था। चूंकि दूसा अक्सर ट्रेनिंग के दौरान आती थी, इसलिए सभी न सिर्फ उससे परिचित थे बल्कि उस छोटी बच्ची से भी लगाव हो गया था जो हमेशा उछलती कूदती रहती थी। इसलिए जब गार्डों को पता चला कि दूसा को कोड़े मारे जाने हैं तो उन्होंने तुरंत उसके लिए दया की गुहार लगाई। हालांकि भीड़ की विनती के जवाब में रॉकी ने बस अपना हाथ हिलाया और फिर मोटे की ओर देखने लगा। मोटे तुम क्या सोचते हो? महाराज कृपया कानून को निष्पक्षता से लागू करें, मोटे ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अच्छे से, रॉकी ने इस जवाब पर सिर हिलाया जिससे वहां मौजूद पहरेदारों के दिलों में एक टीसी दौड़ गई। लेकिन फिर रॉकी बोला, दूसरा ने जो गलती की है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन चूंकि यह अनजाने में हुई गलती थी और वह गार्ड कोर की सदस्य नहीं है, इसलिए उसकी सजा आधी कर दी जाए। ये कहने के बाद रॉकी ने दुसा की ओर देखा और वह, जो कुछ डरी हुई थी लेकिन दृढ़ भी थी, उसने अपना सिर हिलाया और शिविर में एक बड़े लकड़ी के खंभे की ओर बढ़ गई। लिलिया ने उस सुबह सुबह ही खूंटी खड़ी कर दी थी, खास तौर पर दूसा को कोड़े मारने के लिए। इसलिए जब दूसा खूंटी के पास पहुंची और उसे गले लगाया, तो लिलिया, जो पास ही कोड़ा लिए खड़ी थी, ने उसे एक छोटी सी लकड़ी थमा दी। इस पर काट लो। जैसे ही दूसा ने लकड़ी की छड़ी को काटा, लिलिया ने उसे खूंटे से सुरक्षित रूप से बांध दिया और धीरे से फुसफुसाया, इसे सहन करो, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। इस प्रकार बहुत समय नहीं बीता था कि दूसा को खंभे से बांध दिया गया, जिसके बाद लिलिया कुछ दूरी पर पीछे हट गई। दंड दो। रॉकी के आदेश पर दूसा के पीछे खड़ी लिलिया ने चाबुक घुमाया और एक जोरदार आवाज के साथ चाबुक दूसा की पीठ पर लगा। इस प्रहार से दूसा की पीठ पर खूनी घाव हो गया, जिससे गार्ड कोर के कई लोग पीछे हट गए, क्योंकि वे इस क्रूर दृश्य को सहन नहीं कर सके। यहां तक कि रॉकी ने भी उस क्षण सहज ही अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। रॉकी को दूसा बहुत पसंद थी और चूंकि वह लिलिया के बहुत करीब थी, इसलिए वह अक्सर उस जिंदादिल बच्ची को नगर प्रभु के महल में उछलकूद करते देखता था। अगर हालात की नज़ाकत न होती तो वह उसे ये तकलीफ न देता। जहां तक दूसा की बात है, तो पहली मार के बाद वह बिलखते हुए चिल्लाए और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द दूसा को नहीं बल्कि मोटे को हुआ। उसके पिता होने के नाते उससे ज्यादा दुख और कौन महसूस कर सकता था। लेकिन जैसा कि मोटे ने पिछली रात कहा था, दूसा ने एक नाजुक मोड़ पर एक गंभीर गलती की थी और यही सजा उसे भुगतनी थी। कहीं ऐसा ना हो कि उसके पीछे कोई गंभीर खतरा पैदा हो जाए। जबकि हर कोई दूसा के लिए दुखी था, लिलिया द्वारा दूसरा और फिर तीसरा कोड़ा मारने पर एक और कोड़ा मारने की आवाज आई। लगातार तीन कोड़े मारने के बाद फांसी पूरी हो गई। हालांकि यह प्रक्रिया बहुत छोटी थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों को यह पूरे एक दिन से भी ज्यादा लंबी लगी। अपने हाथों से तीसरा कोड़ा मारने के बाद लिलिया दूसा को खोलने के लिए खूंटी की ओर दौड़ी, तो देखा कि लड़की बेहोश हो चुकी थी। उस स्थिति में लिलिया तुरंत दूसा को उपचार के लिए ले गई और रॉकी के इशारे पर चिंतित मोटे भी उसके पीछे चला गया। उनके जाने के बाद ही रॉकी ने अपनी नजर वापस वहां उपस्थित लोगों पर डाली। मैं चाहता हूं कि हर कोई याद रखे कि यहां क्या हुआ था। भीड़ को संबोधित करते हुए रॉकी के चेहरे पर कठोरता थी, उनका स्वर गंभीर और व्यवहार गंभीर था। मेरे साथ यहाँ, चाहे आप कोई भी हो, पुरस्कार उपलब्धि के साथ आते हैं और गलतियों के साथ दंड भी। क्या आप समझ रहे हैं? समझा। उसके ठीक सामने खड़े होकर गार्ड कोर के गार्ड एक स्वर में चिल्लाए। दूसा को जो कोड़े मारे गए वह न केवल हृदय विदारक था, बल्कि इससे गार्डों को इस कहावत का सही अर्थ भी समझ में आ गया कि कानून प्रवर्तन पहाड़ों की तरह अचल है। यही कारण था कि मोटे ने रॉकी से दूसा को दंडित करने पर जोर दिया, क्योंकि इस कोड़े मारने से न केवल गार्ड कोर को दूसा और मोटे के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रहेगी, क्योंकि कोड़ा पहले ही मारा जा चुका था, बल्कि उनमें भय की भावना भी विकसित हो जाएगी। एक ऐसा भय जो किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि सैन्य कानून से ही उत्पन्न होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण मामला था। एक बार सैन्य कानून और सैन्य शक्ति स्थापित हो जाने पर यह पूरे गार्ड कोर के लिए असीम रूप से लाभदायक होगा। उसी समय रॉकी की हरकतें बैकहिल गांव के लोगों ने भी देखी और कुछ ही समय में लिन फेंग के कानों तक पहुंच गईं। ऊंची दीवार पर यह बात जानकर लिन फेंग पहले तो दंग रह गया, फिर मुस्कुराया और सिर हिलाया। कमांडर, ये रॉकी सचमुच निर्दयी है, इसमें जरा भी दया नहीं दिखती, किसी ने कहा। हाँ, वह बहुत क्रूर है, एक अन्य ने सहमति व्यक्त की। बैकहिल गांव के निवासी दूसा की स्थिति से अच्छी तरह परिचित थे, क्योंकि वे सभी एक दिन पहले वहां मौजूद थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि रॉकी ने मामले को इतनी तत्परता से निपटा दिया है और दूसा को इतनी कड़ी सजा दी है, तो सभी ने आह भरी। कमांडर, रॉकी में सचमुच हिम्मत है, ऐसा लगता है कि हमने पहले इस भाड़े के सैनिक समूह को कम करके आंका था, किसी ने टिप्पणी की। मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाने के बाद लिन फेंग भी बोला। अपनी यूनिट का नेता होने के नाते लिन फेंग स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि रॉकी ने दूसा की स्थिति को इतनी तेजी से क्यों निपटाया था, और हालांकि यह उसके लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं था, लिन फेंग आखिरकार राक्षसों से लड़ने के लिए रॉकी के साथ सहयोग कर रहा था। उन्हें सहयोगी कहना किसी भी तरह से अनुचित नहीं था। ऐसे परिदृश्य में यदि रॉकी अपनी इकाई को अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकता है, तो यह लिन फेंग के लिए फायदेमंद और हानिरहित होगा। उन्होंने आदेश दिया, ये सुनिश्चित किया जाए कि गांव के डॉक्टर थंडहॉक भाड़े के सैनिक समूह के घायलों की अच्छी देखभाल करें, उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। निर्देश देने के बाद लिन फेंग ने मामले को एक तरफ रख दिया और अपनी निगाह ऊंची दीवार के बाहर की ओर घुमा ली। यद्यपि वह सामान्य से कुछ अलग नहीं दिख रहा था, लेकिन वह अंदर से बहुत तनावग्रस्त था, शायद रॉकी से भी अधिक। राक्षसों से लड़ने के वर्षों के अनुभव के साथ लिन फेंग ने पाया कि इस बार बैकहिल गांव पर हमला करने वाले राक्षसों में कुछ अलग था। सबसे बड़ा अंतर उनकी संख्या में था। इस बार बैकहिल गांव पर हमला करने वाले राक्षस बहुत अधिक संख्या में थे। ये कथन थोड़ा गलत लग सकता है, क्योंकि ध्यानपूर्वक विचार करने पर पता चला कि बैकहिल गांव पर हमला करने वाले राक्षसों की संख्या केवल 11 थी और उन्होंने 2 दिनों के अंतराल में हमला किया था, जो कि अत्यधिक नहीं लगता। वास्तव में स्थिति इसके विपरीत थी, क्योंकि बैकहिल गांव में खनन पूरे 1 महीने तक चलता रहा। इस दौरान लगातार और अधिक राक्षस आकर्षित होते रहे और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती रही। इसका मतलब था कि इस महीने के दौरान बैकहिल गांव पर हमला करने वाले राक्षसों की संख्या लगातार बढ़ती रही। यही वजह थी कि लिन फेंग चिंतित था। अगर राक्षसों की दूसरी लहर आठ थी तो तीसरी लहर का क्या होगा? तीसरी लहर में कितने राक्षस आएंगे और क्या ये 10 से ज्यादा होगी? चौथी और पांचवीं लहर में कितने राक्षस होंगे? ये जानना जरूरी है कि राक्षस न केवल व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली थे बल्कि उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी। राक्षसों के झुंड का आना निश्चित रूप से विनाश का कारण बनता था। तो हालांकि राक्षसी हमलों की शुरुआती 2 लहरों को खदेड़ दिया गया था, लेकिन इससे लिन फेंग की चिंताएं कम नहीं हुई। आखिरकार पिछली 2 मुठभेड़ों में राक्षसों की संख्या 10 से कम थी, जो फिर भी काबू में थी। लेकिन जब उनकी संख्या दहाई के अंत तक पहुंच जाती तो लड़ाई पूरी तरह से दूसरे स्तर पर पहुंच जाती। यही बात लिन फेंग को चिंतित कर रही थी और यही उसकी घबराहट का कारण थी। 6 महीने पहले भी उसे ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। उस समय बैकहिल गांव आज की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, फिर भी वह बड़ी संख्या में राक्षसों के हाथों पराजित हो गया था। चाहे वे उसके सैनिक हों या बैकहिल के ग्रामीण, भारी क्षति हुई थी। इसलिए लिन फेंग सचमुच नहीं चाहता था कि 6 महीने पहले वाली घटनाएं फिर से दोहराई जाएं। सभी लोग सतर्क रहें। अपने मन में ये विचार लेकर वह दीवार पर खड़े सभी लोगों पर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका, जिससे वे हतप्रभ रह गए। इस बीच कोड़े मारने के बाद और मोटे को डुसा की देखभाल का काम सौंपने के बाद रॉकी ने लिलिया, सैंड्रो, रॉबिन और अन्य दस्ते के नेताओं को अपने तंबू में बुलाया। हालांकि उन्होंने 1 दिन पहले ही लड़ाई जीत ली थी, लेकिन इससे कई मुद्दे भी उजागर हुए, जैसे कि एक महत्वपूर्ण क्षण में गार्ड कोर का बिखर जाना। अगर रॉकी की निर्णायक कार्रवाई न होती तो नतीजा शायद बिल्कुल अलग होता। इस घटना का दोष अंततः डुसा पर मढ़ा गया, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी तौर पर था। असली समस्या गार्ड कोर के भीतर ही थी। अगर उनका अनुशासन मजबूत होता, अगर गार्डों की मानसिक दृढ़ता ज्यादा होती तो शायद यह अराजकता न होती। गार्ड कोर की पहली वास्तविक लड़ाई के दौरान समस्याएं आना स्वाभाविक था, लेकिन यह उन मुद्दों को नजरअंदाज करने का कोई बहाना नहीं था। इसलिए जब बाकी गार्ड आराम कर रहे थे, रॉकी ने दस्ते के नेताओं को अपने तंबू में बुलाया ताकि एक बैठक, या यूं कहें कि युद्ध के बाद का सारांश, आयोजित किया जा सके और सीखे गए सबक पर चर्चा की जा सके। लेकिन जब सभी लोग तंबू में बैठ गए और रॉकी को बोलने का मौका मिलने से पहले ही लिलिया खुद को और अधिक नहीं रोक सकी। गंभीर भाव से दस्ते के नेताओं के सामने खड़े होकर उसने पूछा, क्या आपको लगता है कि पिछली लड़ाई इतनी बुरी तरह से हार गई थी, इसका कारण केवल डुसा था? यह शायद हाल ही में हुई पिटाई के कारण लिलिया का मूड खराब था और उसकी अशुभ अभिव्यक्ति विशेष रूप से डरावनी लग रही थी। उसके उदास चेहरे को देखकर तंबू में बैठे दस्ते के नेताओं ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया। किसी ने भी जवाब देने का साहस नहीं किया। किसी को जवाब न देते देख लिलिया ने किसी को चुना, आगा तुम बोलो। उसने जिस आदमी का नाम आगा रखा था वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। इस साल उसकी उम्र 35 साल हो चुकी थी। गार्ड कोर में वह सबसे बूढ़ा, सबसे परिपक्व और स्थिर था, इसलिए लिलिया ने उसे एक छोटे से दस्ते का नेता नियुक्त किया था। हालांकि नाम बताने के बाद आगा ने उसकी ओर देखा और अजीब तरह से मुस्कुराया। सैंड्रो, तुम्हारा क्या विचार है? ये देखकर कि आगा ने अपना मुंह नहीं खोला, लिलिया ने अपना भाला सैंड्रो की ओर मोड़ दिया, लेकिन पहले की तरह सैंड्रो, जिसका नाम पुकारा गया था, ने भी अपना सिर झुका लिया। हम तुम में से कोई बोल क्यों नहीं रहा है? जब किसी ने अपना मुंह नहीं खोला तो लिलिया ने ठंडी सांस ली और फिर कहा, ये सही है, एक युवा लड़की को अपनी जिम्मेदारी लेते देख आपके पास कहने के लिए वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं है। भीड़ की ओर ठंडी निगाहों से देखते हुए लिलिया निर्दयी थी, जिससे तुरंत ही एक पूरी टोली के सभी वयस्क पुरुष बुरी तरह शर्मा गए। आप सभी को यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि पिछली लड़ाई में जो गड़बड़ी हुई थी वह दुसा की गलती नहीं थी, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि आपने वह नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। कमांडर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन जब हमने देखा कि आप और प्रशिक्षक दोनों को नीचे गिरा दिया गया है तो उस समय भाई सचमुच घबरा गए। लिलिया द्वारा बुरी तरह डांटे जाने के बाद सैंड्रो के बगल में खड़े एक दस्ते के नेता ने शिकायत के भाव से कहा। उनके शब्द गलत नहीं थे, क्योंकि यद्यपि गार्डों में अराजकता थी, लेकिन वहां उपस्थित ये दस्ते के नेता उनके साथ आतंकित नहीं हुए थे। वे सभी स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत बहस करने की? नतीजा, दस्ते के नेता की बातें लिलिया को सीधे तौर पर भड़क गईं। उसने गोल आंखों से घूरते हुए झुंझलाहट से कहा, जब तुम्हारे दस्ते के लोग घबराते हैं तो क्या यही वह समय नहीं होता जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है? वरना मैं तुम्हें दस्ते का नेता क्यों बनाती? इस टिप्पणी के बाद किसी भी दस्ते के नेता ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि लिलिया बिल्कुल सही थी। उन्होंने वास्तव में उस समय के दौरान अपने दस्ते के सदस्यों को अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं किया था। इस प्रकार दृश्य शांत हो गया तथा काफी समय बीत जाने के बाद सैंड्रो, जो अब तक चुप था, अचानक अपनी सीट से खड़ा हो गया। कमांडर, ये वास्तव में हमारे कर्तव्य की उपेक्षा है। लिलिया को देखते हुए सैंड्रो के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था, और फिर वह रॉकी की ओर मोड़ा। नगरपाल, दस्ते के नेता होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे, कृपया हमें अपनी मर्जी से सजा दीजिए। नगरपाल, अपनी बात खत्म करके सैंड्रो रॉकी के सामने सीधा खड़ा हो गया, और साथ ही उसके आसपास के दूसरे स्क्वाड लीडर भी खड़े हो गए। वे भी रॉकी की डांट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रॉकी उन्हें कैसे डांटता रहता। लिलिया तो पहले ही डांट चुकी थी, सो उसने कहा, बैठ जाओ सब लोग। सैंड्रो और अन्य लोगों के अपनी सीटों पर बैठ जाने के बाद रॉकी ने बोलना शुरू किया, लिलिया ने जो कुछ कहा वह गलत नहीं था। दस्ते के नेता के रूप में आपने वास्तव में अपने गार्डों को अच्छी तरह से संगठित नहीं किया, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। हालांकि याद रखें, किसी भी सैन्य इकाई के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अनुशासन के बिना सबसे मजबूत सेना भी बिखरी हुई भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। नेता के तौर पर युद्ध के मैदान में यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी टुकड़ी में अव्यवस्था न फैले। हो सकता है कि आप अभी ऐसा न कर पाएं, लेकिन आप हमेशा के लिए ऐसा करने में असमर्थ तो नहीं रह सकते। अगर ऐसा है तो मुझे आपके बदले कोई और ढूंढना पड़ेगा। समझे? समझा। अच्छा, अब चलो आपकी भावनाओं के बारे में बात करते हैं। पहली बार राक्षसों का सामना करना, पहली बार राक्षसों के साथ सीधे टकराव में शामिल होना, आप सभी को कैसा लग रहा है? एक संक्षिप्त भाषण देने के बाद रॉकी ने सभी को राक्षसों का सामना करने के बारे में अपनी भावनाएं साझा करने दी। यही एक कारण था कि उसने उन्हें इकट्ठा किया था, सामूहिक रूप से अनुभवों का आदान प्रदान और सारांश तैयार करना, ताकि वे भविष्य की लड़ाइयों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। काफी देर तक ऐसे ही समय बीतता रहा। जब दस्ते के नेता रॉकी के तंबू से बाहर आए तो आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था। दरअसल उन्होंने तंबू के अंदर पूरा दिन बातें की थी। अजीब अंधेरे आकाश को देखते हुए सैंड्रो, जो तंबू से बाहर निकला था, अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका, फिर अपने पास बैठे आगा की ओर मुड़ा। बड़े भाई आगा, क्या तुमने घंटी सुनी? घंटी? मैंने नहीं सुनी। आगा ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसने राक्षसों के हमले का संकेत देने वाली घंटी की आवाज नहीं सुनी थी। क्या अब अंधेरा हो गया है? तभी रॉकी और लिलिया भी तंबू से बाहर निकले, और वे भी ये देखकर दंग रह गए कि रात हो चुकी है। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। आज राक्षस नहीं आए, दोनों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अंधेरा देखकर उन्हें पता चल गया कि पूरे दिन राक्षसों ने कोई हमला नहीं किया था। हालांकि इससे उन्हें जरा भी खुशी नहीं हुई, बल्कि उनके हाव भाव बदल गए। चलो चलें और देखें। इन शब्दों के बाद रॉकी ऊंची दीवारों की ओर दौड़ा। राक्षसों का पूरे दिन हमला न करना बहुत ही असामान्य बात थी। क्या राक्षसों ने सारा दिन हमला नहीं किया? ये स्थिति इतनी असामान्य थी कि रॉकी को तुरंत ऊंची दीवार पर चढ़ना पड़ा। शीर्ष पर पहुंचकर उसने तुरंत लिन फैंग को देखा, जो पूरे दिन वहां पहरा दे रहा था। कैप्टन लिन फैंग, आज कोई राक्षस नहीं दिखाई दिया। हाँ, कोई नहीं। जाहिर है उस शांत दिन ने लिन फैंग को भी बेचैन कर दिया था। उसने भौहें चढ़ाई और रॉकी की तरफ देखा। नहीं, पूरे दिन किसी राक्षस की परछाई तक नहीं। क्या यह एक अच्छी चीज है या बुरी चीज? बैकहिल गांव में नए होने के कारण रॉकी को यह नहीं पता था कि यह सामान्य है या असामान्य, इसलिए वह केवल लिन फैंग से ही पूछ सकता था। लेकिन लिन फैंग की अगली प्रतिक्रिया ने उसका दिल दहला दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसकी ओर मुड़ते हुए लिन फैंग ने चिंता से कहा, आमतौर पर जैसे ही गांव में खनन शुरू होता है, एक के बाद एक राक्षस प्रकट होने लगते हैं। पहले राक्षस से खनन समाप्त होने तक हमले बिना रुके जारी रहते हैं, और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा समय तक। तो मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। ये कहने के बाद लिन फैंग ने आह भरी, और उसे मुस्कुराने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आज रात राक्षस आ जाएं, ये बहुत आम बात है। यद्यपि पहले राक्षस बिना किसी रुकावट के प्रकट होते थे, लेकिन वे केवल दिन के समय ही आक्रमण नहीं करते थे, कभी कभी वे रात में भी आक्रमण शुरू कर देते थे। ठीक है, मैं हर समय सैनिकों को तैयार रखूंगा। अगर आपको सहायता की जरूरत हो तो किसी को तुरंत हमें सूचित करने के लिए भेजिए। चूंकि लिन फैंग ने ऐसा कहा था, रॉकी केवल सिर हिलाकर उसे बता सकता था कि वह किसी भी समय सहायता के लिए सैनिकों को तैयार रखेगा, और फिर वह चला गया। शिविर में वापस लौटने पर रॉकी के पास सभी दस्ते के नेताओं को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तथा उसने उनसे कहा कि राक्षसों के हमले की स्थिति में रात में गार्डों को सतर्क रखें। एक बार जब उसने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया तो वह अंततः अपने तंबू में वापस लौटने में कामयाब हो गया। कल की लड़ाई और पूरे दिन अलग अलग दस्तों के नेताओं से बातचीत के बाद रॉकी पूरी तरह थक चुका था। बिस्तर पर लेटते ही उसकी पलकें झपकने लगी। हालांकि वह खुद को सोने नहीं दे पा रहा था, उसे चिंता थी कि रात में कुछ हो सकता है। हालांकि लिन फेंग ने कहा था कि राक्षस रात में हमला कर सकते हैं, रॉकी फिर भी बहुत बेचैन था। आखिर अगर राक्षस रात में हमला न करें तो क्या होगा? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि जब कल उसकी रक्षा करने की बारी आएगी तो राक्षसों का एक समूह अचानक प्रकट हो जाएगा? यदि ऐसा होता तो यह भयानक होता, क्योंकि रॉकी जानता था कि कल की लड़ाई में उनकी जीत का एक बड़ा कारण उनका अच्छा भाग्य था और राक्षसों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी तथा एकल अंकों में ही थी। यदि कल बचाव की बारी उसकी हो और 10 से अधिक राक्षस एक साथ प्रकट हो जाएं, तो यह परेशानी की बात होगी जिस पर रॉकी को गंभीरता से विचार करना होगा। ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई। रॉकी बस बहुत थक गया था, कोई मदद नहीं कर सकता था। लड़ाई ने न सिर्फ उसके शरीर पर भारी असर डाला था, बल्कि अनगिनत चिंताओं ने उसे मानसिक रूप से भी कमजोर कर दिया था। इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई और वह भोर तक गहरी नींद सोता रहा। रात भर की गहरी नींद के बाद रॉकी उठा और अपनी बेकारी पर खुद को कोसते हुए तंबू से बाहर भागा। वहां उसने देखा कि गार्ड्स की टुकड़ी पहले से ही तैयार थी, सब उसका इंतजार कर रहे थे। लिलिया, कल रात कैसी रही? क्या राक्षस आ गए? लिन फेंग को राहत देने के लिए गार्ड कोर को ऊंची दीवार की ओर ले जाते समय रॉकी ने कल रात लिलिया की स्थिति के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसके सवाल पर लिलिया ने परेशान भाव से अपना सिर हिलाया। कल रात कुछ नहीं हुआ। ... इस उत्तर से रॉकी की भौहें तुरंत तन गईं, क्योंकि यदि राक्षस कल प्रकट नहीं हुए थे तो वे आज अवश्य प्रकट होने वाले थे। ये परेशानी भरा था क्योंकि गार्ड कोर ने परसों ही लड़ाई लड़ी थी। हालांकि उन्होंने एक दिन आराम किया था और उनकी हालत बेहतर थी, फिर भी राक्षसों से लड़ाई जारी रखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता था। इसके अलावा पिछली लड़ाई में घायल हुए लोग अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, जिसके कारण गार्ड कोर की सूची अधूरी रह गई थी। कुछ नियमित गार्डों की अनुपस्थिति को नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन एक प्रमुख सदस्य मोटे की अनुपस्थिति ने निस्संदेह रॉकी की सेना को काफी कमजोर कर दिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि राक्षस कल नहीं आए थे, इसलिए आज आने वाले राक्षसों की संख्या निश्चित रूप से बहुत अधिक होगी, आसानी से 10 से अधिक और संभवतः इससे भी अधिक। इससे रॉकी को बहुत चिंता हुई कि क्या वह और गार्ड कोर ऊंची दीवार को पकड़ पाएंगे। ऐसा लग रहा था कि आज उन्हें लिन फेंग की टीम के समर्थन की आवश्यकता होगी। चिंतित होकर रॉकी और लिलिया ऊंची दीवार पर चढ़ गए और दिन भर की रक्षा ड्यूटी शुरू कर दी। पूरा दिन उसकी चिंताओं में ही बीत गया। जी हाँ, पूरा दिन शांतिपूर्वक बीत गया और राक्षस फिर भी प्रकट नहीं हुए। जब शाम हुई तो रॉकी को चिंता हुई कि राक्षस रात में प्रकट हो सकते हैं, इसलिए उसने गार्ड कोर को शिविर में सोने के लिए वापस नहीं जाने दिया, बल्कि उन्हें ऊंची दीवार के द्वार पर ही आराम करने को कहा, ताकि वे किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार रहें। लेकिन दिन के समान ही, यद्यपि सभी लोग पूरी रात बहुत सतर्क थे, फिर भी यह रात व्यर्थ ही तनावपूर्ण तरीके से व्यतीत हुई, क्योंकि राक्षस अभी भी प्रकट नहीं हुए थे। आखिर दुनिया में क्या हो रहा था? लगातार 2 दिनों तक शांति रहने से रॉकी को चिंता होने लगी, क्योंकि वहां असामान्य रूप से भयावह शांति थी। वास्तव में लिन फेंग भी इस समय ऐसा ही महसूस कर रहा था। जब रॉकी ने खुद अपनी सेना को ऊंची दीवार पर पूरी रात पहरा देने के लिए ले जाया तो लिन फेंग भी पूरी रात जागता रहा। हैरानी की बात यह थी कि उसे सचमुच उम्मीद थी कि उस रात राक्षस प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि तभी उसे सुकून मिलता। लेकिन उसकी आशा पूरी नहीं हुई, क्योंकि राक्षस प्रकट नहीं हुए। और जब रॉकी और लिन फेंग ने फिर से अपने रक्षात्मक कर्तव्यों की अदला बदली की तो यह भारी बोझ अब लिन फेंग के कंधों पर आ गया। रक्षा का दायित्व संभालते हुए वह रॉकी की तरह ही बहुत परेशान था और पूरे दिन और रात ऊंची दीवार पर खड़ा रहा, फिर भी उसे उन राक्षसों का सामना नहीं करना पड़ा जो प्रकट होने चाहिए थे। इतना ही नहीं, बल्कि पूरे 3 दिन बाद भी राक्षस नहीं दिखे। ध्यान से गणना करने पर पता चला कि राक्षसों को प्रकट हुए पूरे 6 दिन हो चुके थे, मानो ये प्राणी बिना किसी निशान के गायब हो गए हों। हालांकि बैकहिल गांव के लिए स्थिति बेहद असामान्य थी, क्योंकि जब कोई खनन कार्य नहीं चल रहा होता था तब भी राक्षस कभी कभार, हालांकि कम संख्या में, वहां आ जाते थे। ऐसा कभी याद नहीं आया कि लगातार 6 दिनों तक राक्षसों का कोई निशान न दिखाई दिया हो। अब सभी लोग चिंतित हो रहे थे, सोच रहे थे कि राक्षस कहाँ हैं, राक्षस कहाँ चले गए, राक्षस गायब हो गए। लगातार 6 दिनों तक राक्षस बिना किसी निशान के गायब रहे, जिससे सभी लोग बहुत बेचैन हो गए। ये बात अजीब लग सकती है, क्या राक्षसों का गायब होना अच्छी बात नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कृपया यह न भूलें कि राक्षसों ने इस धरती पर एक सदी से कब्जा कर रखा था। धरती के हर कोने में राक्षसों के निशान थे, बस उनकी संख्या में अंतर था। ऐसे में उनकी सर्वव्यापी उपस्थिति सामान्य थी और उनका अचानक गायब हो जाना असामान्य था। ये बात इस समय बैकहिल विलेज के लिए विशेष रूप से सत्य थी। लिन फेंग के नेतृत्व में बैकहिल गांव का समूह और रॉकी के नेतृत्व में थंडरहॉक सिटी गार्ड स्क्वाड दोनों ही चिंतित थे। उन्होंने राक्षसों के लगातार हमलों के लिए तैयारी कर रखी थी और पिछले अनुभव के अनुसार एक बार जब बैकहिल गांव में खनन शुरू हुआ तो बिना किसी अपवाद के हमेशा इसी तरह समाप्त हुआ। लेकिन अपवाद स्वरूप ये हुआ कि लगातार 6 दिनों तक गांव पर राक्षसों का कोई हमला नहीं हुआ, यहां तक कि उनकी छाया भी नहीं दिखी, जिससे सभी लोग तुरंत तनाव में आ गए। राक्षस कहाँ चले गए? इस प्रश्न का उत्तर किसी को नहीं पता था, लेकिन जवाब जानने के लिए रॉकी और लिन फैंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अंततः सर्वसम्मति से एक स्काईशिप को टोही के लिए भेजने का निर्णय लिया। इससे पहले स्काईशिप स्काईब्रेकर पीक पर खड़ी थी और पिछली 2 लड़ाइयों के बाद से इसे तैनात नहीं किया गया था, क्योंकि इसके इस्तेमाल की जरूरत नहीं थी। हालांकि राक्षसों की लंबी अनुपस्थिति ने लिन फैंग और रॉकी दोनों को बहुत परेशान किया, जिससे उन्हें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बेहतर तैयारी के लिए स्काईशिप को टोही के लिए भेजना पड़ा। दूसरी ओर राक्षसों का अचानक गायब होना हालांकि सभी के लिए परेशान करने वाला था, लेकिन रॉकी और उसकी टीम के लिए एक अच्छी बात भी थी। इससे उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए कई दिन मिल गए और मोटे के नेतृत्व वाले सैनिकों की अधिकांश चोटें ठीक हो गईं। ये निश्चित रूप से रॉकी के लिए जश्न मनाने लायक अच्छी खबर थी, विशेष रूप से मोटे की रिकवरी, जिसने गार्ड कोर की पूर्व ताकत को बहाल कर दिया, जिससे वे एक बार फिर पूरी ताकत के साथ राक्षसों के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो गए। इसके अलावा दुसा, जिसे 3 बार कोड़े मारे गए थे, भी लगभग ठीक हो गया था। उसकी शीघ्र रिकवरी आंशिक रूप से बीस्टमैन के मजबूत संविधान के कारण थी। एक युवा लड़की होने के बावजूद एक बीस्टमैन के रूप में उसकी रिकवरी एक सामान्य मानव की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। इसके अलावा लिलिया को भी श्रेय दिया जाना चाहिए, जिसने कोड़े मारने का प्रबंध किया। लिलिया ने व्यक्तिगत रूप से कोड़े मारने का कारण एक उदाहरण स्थापित करना और दुसा की रक्षा करना था। तीसरे स्तर की योद्धा होने के नाते लिलिया का अपनी ताकत पर नियंत्रण स्वाभाविक रूप से एक साधारण गार्ड की तुलना में बहुत अधिक था। इस प्रकार हालांकि उसकी कोड़े की मार गंभीर लग रही थी, दुसा पर लगाए गए कोड़े बहुत भारी नहीं थे। निस्संदेह दुसा की पीड़ा को कम करने में बहुत मदद मिली। अपनी रिकवरी के बाद से दुसा ने इस कठिन परीक्षा से सबक सीखा था और वह आज्ञाकारी और अच्छे व्यवहार वाली बन गई थी। अब वह केवल शिविर की सीमाओं के भीतर ही घूमती थी और इधर उधर भागने की हिम्मत नहीं करती थी। हालांकि युवा लड़की का स्वभाव स्वाभाविक रूप से जीवंत था, इसलिए भले ही वह पहले की तुलना में बहुत अधिक आज्ञाकारी और अच्छी तरह से व्यवहार करने लगी थी, फिर भी वह निष्क्रिय नहीं रह सकती थी। उदाहरण के लिए आज की ही बात लें। आज चूंकि लिन फैंग रक्षा कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार थी, ठीक हो चुकी मोटे प्रशिक्षण में गार्ड कोर का नेतृत्व करती रही। जैसे ही उसके पिता तंबू से बाहर निकले, दुसा अपना धनुष बाण लेकर चुपके से बाहर निकल गई। अपने धनुष और बाण के साथ दुसा अकेले ही उस चौकी के सामने पहुंची जहां उसे एक बार दंडित किया गया था। फिर वह उससे 100 कदम की दूरी पर खड़ी हो गई और तुरंत अपने धनुष को खींचकर बाण चढ़ाने लगी। यद्यपि हाल के दिनों में दुसा अधिक आज्ञाकारी हो गई थी, फिर भी वह अभी भी मोटे के साथ लड़ने की इच्छा रखती थी और लगन से अभ्यास करना नहीं भूली थी। और यह मानना ही होगा कि दुसा की तीरंदाजी वाकई लाजवाब थी। उसे तीरंदाजी में प्रतिभाशाली कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मोटे, जो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को कोई नुकसान हो, ने उसे कभी तीरंदाजी नहीं सिखाई, फिर भी दुसा ने खुद सीखकर अंतहीन बुलसाई के कौशल में महारत हासिल कर ली थी। चौकी से 100 कदम की दूरी पर खड़े होकर दुसा ने अपना लंबा धनुष खोला और तीर चलाने से पहले एक छोटा सा निशाना साधा और पलक झपकते ही एक तेज आवाज सुनाई दी, क्योंकि तीर ने चौकी पर सटीक निशाना साधा। इसके बाद दुसा ने लगातार तेज गति से तीर चलाना शुरू कर दिया। हालांकि इस गति से उसकी सटीकता पर थोड़ा असर पड़ा, लेकिन यह मामूली असर ही था और उसके द्वारा छोड़े गए सभी तीर लकड़ी के खूंटों पर ही लगे। ही ये देखकर कि उसके द्वारा छोड़े गए सभी तीर अपने निशाने पर लग गए थे, दुसा गर्व से खिलखिला उठी, अपने छोटे छोटे दांत दिखाए, फिर प्रसन्नतापूर्वक दौड़कर खूंटे तक गई और एक एक करके सभी तीरों को बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने सारे तीर दांव से हटा लिए और अपना अभ्यास पुनः शुरू करने के लिए वापस लौटी, अचानक घंटी की कर्कश ध्वनि सुनाई दी। राक्षस यहाँ हैं। मीनार से घंटी की आवाज सुनकर दुसा पहले तो चौंकी, पर फिर उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। इतने दिनों से गायब राक्षस आखिरकार प्रकट हो गए थे। घंटी की आवाज सुनते ही रॉकी की आकृति कैंप के ऊपर प्रकट हुई। घंटी की आवाज सुनकर उसने शून्य जादुई कवच का इस्तेमाल करके हवा में उड़ान भरी और तेजी से ऊंची दीवार की ओर चल पड़ा। उसके जाते ही लिलिया और मोटे भी कैंप के अंदर से निकलकर ऊंची दीवार की ओर दौड़ पड़े। दुसा, शिविर में ही रहो। जब मोटे ऊंची दीवार की ओर भाग रहा था तो वह शिविर में दुसा से टकरा गया और जोर से चिल्लाया। ये सुनकर दुसा ने अपने होंठ भींच लिए। वह स्पष्ट रूप से अनिच्छुक थी, लेकिन उसने शामिल होने की इच्छा को दबा लिया और आज्ञाकारी रूप से शिविर में ही रही। अंततः राक्षसों के प्रकट होने के बाद दुसा का अब तीरंदाजी का अभ्यास करने का मन नहीं रहा और वह पास के एक खंभे पर कूद गई तथा ऊंची दीवार की ओर देखने के लिए एक खंभे पर खड़ी हो गई, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बाईं और दाईं ओर देखने पर भी कुछ न देख पाने पर दुसा निराश होकर खंभे से कूद पड़ी और उदास होकर अपने तंबू में लौट गई। अरे यार, हर कोई मेरे साथ बच्चे जैसा व्यवहार करता है। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है। अपने तंबू में वापस आकर दुसा अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। वह बहुत असंतुष्ट और नाराज थी। मैं 15 साल का हो चुका हूँ। मेरे पिता मेरी उम्र में ही सेना में भर्ती हो गए थे, लेकिन वे मुझे गार्ड कोर में शामिल नहीं होने देंगे। ये बहुत परेशान करने वाली बात है। बिस्तर पर बैठे हुए दुसा ने गुस्से में गद्दे पर मुक्का मारते हुए शिकायत की, जिससे वह जोर से धड़ाम से गिरा। कुछ देर तक शिकायत करने के बाद शायद थकान महसूस करते हुए वह बिस्तर पर लेट गई, अपने आप से बुदबुदाने लगी कि यह कितना उबाऊ था, और खुद को युद्ध में बिना किसी त्रुटि के निशाना साधते हुए कल्पना करने लगी। इस दिवास्वप्न में उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया, और फिर उसने नींद से आंखें खोली और अनजाने में ही सो गई। हालांकि जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह अभी भी स्तब्ध थी और पूरी तरह से जागी नहीं थी। उसने अचानक तंबू के बाहर एक आवाज सुनी। वह इस आवाज को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। यह उसके पिता की आवाज थी। सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बैकहिल गांव में सैनिकों का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर दुसा अचानक अपने बिस्तर से उठ बैठी और तंबू के बाहर भाग गई। जैसे ही वह तंबू से बाहर निकली, उसने देखा कि गार्ड कोर तेजी से उसके पास से गुजर रहा है। क्या हो रहा है? क्या हुआ? अपने पिता को खोजने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो भ्रमित दुसा के पास एक गार्ड को पकड़कर पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि राक्षसों की संख्या बहुत अधिक है और बैकहिल गांव में सैनिक लगभग अभिभूत हैं। ये कहकर जिस पहरेदार को उसने पकड़ा था, वह तेजी से वहां से चला गया और ऊंची दीवार की ओर बढ़ते हुए मुख्य दल में शामिल हो गया। पलक झपकते ही पूरे कैंप में सिर्फ दुसा ही रह गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पूरा कैंपसाइट खाली हो गया और वह अकेली रह गई। दूसरा अभी अभी झपकी से जागी थी और अभी तक स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। काफी देर तक स्तब्ध रहने के बाद दुसा ने अंततः ऊपर देखा तो पाया कि सूर्य अभी भी आसमान में ऊपर था, जिससे पता चलता था कि वह ज्यादा देर तक नहीं सोई थी, बस एक छोटी सी झपकी ली थी। शिविर में इतने दिन बिताने के बाद वह पहले ही रॉकी और लिन फैंग के बीच रक्षा रोटेशन का पता लगा चुकी थी, और यह भी कि वे एक दूसरे का समर्थन कैसे करते हैं। आज रक्षा ड्यूटी पर लिन फैंग की बारी थी, लेकिन अचानक गार्ड कोर तैनात कर दिया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि बैकहिल गांव के सैनिक अपनी जगह पर डटे नहीं रह पाए? दूसा को ये बात अविश्वसनीय लगी, क्योंकि उसने मोटे को बैकहिल गांव के सैनिकों की प्रशंसा करते हुए सुना था कि वे बेहद कुशल हैं। अगर उनका सीधा सामना थंडहॉक शहर के रक्षकों से होता तो थंडहॉक शहर के रक्षक शायद हार जाते। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने कुशल सैनिक भी राक्षस के हमले का सामना नहीं कर सके और उन्हें थंडहॉक शहर के गार्ड कोर से सहायता की आवश्यकता हो? इस बार कितने राक्षसों ने हमला किया था? इससे दुसा को अपरिहार्य रूप से चिंता हुई, विशेषकर इसलिए क्योंकि मोटे भी युद्ध के मैदान में था। वह चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सकी। शिविर में अकेले खड़ी होकर उसने ऊंची दीवारों की ओर देखा, लेकिन वे इतनी दूर थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहां तक कि युद्ध की आवाजें भी नहीं सुनाई दे रही थी, जिससे उसकी चिंता और बढ़ गई। फिर भी चिंता व्यर्थ थी। हालांकि उसने सोचा कि वह खुद दीवार तक दौड़कर देख लेगी। पिछली बार जो परेशानी उसने पैदा की थी उसे याद करके उसके पास ऐसे विचारों को दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण दुसा अनिच्छा से अपने तंबू में लौट आए और अपना धनुष और तीर उठाया तथा कुछ तीरंदाजी अभ्यास के साथ अपनी घबराहट को शांत करने का निर्णय लिया। तो थोड़ी ही देर में वह फिर से लकड़ी के खूंटों के सामने थी और लगातार तीर चला रही थी। शायद चिंता के कारण उसका निशाना चूक गया था और कई तीर चूक गए थे। इससे उसकी चिंता कम होने की बजाय और बढ़ गई, और कुछ न होने पर वह मुंह बनाकर चिड़कर एक एक करके तीर के पंख इकट्ठा करने लगी। धमाका धमाका धमाका। जैसे ही दुसा चिड़कर सभी तीर पंख इकट्ठा कर रही थी, अचानक तोपों की गड़गड़ाहट की आवाज उसके कानों तक पहुंची और वह जल्दी से दीवारों की ओर देखने के लिए मुड़ी। क्या ये जादुई ऊर्जा तोपों की आवाज है? तोप की आवाज सुनकर दुसा को तुरंत एहसास हुआ कि यह जादुई ऊर्जा तोपों की आवाज थी। क्या ऐसा हो सकता है कि स्काईशिप तैनात कर दिए गए हों? बैकहिल विलेज जैसे छोटे से गांव में जादुई तोपें नहीं थीं। प्रवेश द्वार पर ऊंची दीवारें प्रभावशाली लग रही थीं, लेकिन दोनों तरफ केवल दो सुरक्षा मीनारें थीं और दीवारों के ऊपर कोई जादुई तोप नहीं थी। इसलिए बमबारी के लिए जादुई तोपों का इस्तेमाल करने का एकमात्र विकल्प स्काईशिप ही बचा था। इसका मतलब यह था कि तोपों की आवाज स्काईशिप की तैनाती का संकेत थी। बाहर वास्तव में क्या हो रहा है? गरजती तोपों ने दुसा को बेहद बेचैन कर दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि इतने दिन बीत जाने के बाद राक्षसों का हमला इतना भयंकर हो जाएगा कि न सिर्फ लिन फैंग और रॉकी ने एक एक करके अपनी अपनी सेनाएं मार गिराई, बल्कि स्काईशिप भी युद्ध के मैदान में उतर आए। अब जाकर दुसा को समझ आया कि रॉकी और उसके पिता पिछले कुछ दिनों से इतने परेशान क्यों दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इतने लंबे समय तक सुप्त पड़े रहने के बाद राक्षसों ने सचमुच जोरदार हमला बोल दिया था। लेकिन किस प्रकार की राक्षसी शक्ति आ गई थी जो इतनी शक्तिशाली थी कि बैकहिल गांव के सैनिक और थंडहॉक शहर के रक्षक उसे रोक नहीं सके और मजबूरन उन पर बमबारी करने के लिए स्काईशिप का उपयोग करना पड़ा। कैंपसाइट में होने के कारण डूसा स्वाभाविक रूप से इसका उत्तर नहीं जान सकती थी, लेकिन किसी भी स्थिति के बारे में जितना कम उसे पता होता उतना ही वह उसकी जांच पड़ताल करना चाहती थी। इसलिए वह दुविधा में फंस गई और सोचने लगी कि क्या उसे खुद जांच करने के लिए दीवार तक दौड़ना चाहिए। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए दुसा ने मन ही मन सोचा, यदि वह बिना किसी की नज़र पड़े दीवार तक पहुंच जाए तो क्या कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई उसे खोज भी ले तो वह बस इतना कह सकती थी कि कैंपसाइट में अकेले रहना बहुत डरावना है। इस तरह उसके पिता नाराज तो नहीं होंगे, है ना? कम से कम नगर स्वामी उसे दोष तो नहीं देंगे, है ना? काफी समय तक विचार करने के बाद दुसा को लगा कि उसका विचार व्यवहार्य है। हालांकि जैसे ही वह अपनी योजना को दोषरहित मानते हुए स्वयं को सिर हिला रही थी, अचानक लोगों का एक समूह दीवारों की ओर से दौड़ता हुआ आया। यह क्या है? दुसा ने आते हुए समूह को गार्ड कोर के रूप में पहचान लिया और उसे एहसास हुआ कि गार्ड उसकी ओर आ रहे हैं। क्या लड़ाई खत्म हो गई है? पहरेदारों को वापस आते देख दुसा तुरंत मुस्कुराया, ये सोचकर कि युद्ध समाप्त हो गया होगा। हालांकि जब उसने इन गार्डों को ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि उनका एक छोटा दस्ता था और वे दो दो करके स्ट्रेचर ले जा रहे थे जिन पर घायल लोग थे। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, ये गार्ड घायलों को ले जाने के लिए वापस लौट रहे थे। गार्डों को शिविर की ओर स्ट्रेचर ले जाते देख दुसा जल्दी से उनसे मिलने के लिए दौड़ा। चाचा आगा, क्या लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है? जैसे ही वह स्ट्रेचर ले जाने वाले गार्ड के पास पहुंची, दुसा ने नेता को आगा के रूप में पहचान लिया और जल्दी से स्ट्रेचर ले जाने में मदद करने के लिए कहा। उसी समय उसने स्ट्रेचर की ओर देखा और उस नजर से उसका पूरा अस्तित्व स्तब्ध रह गया, नहीं स्तब्ध। बहन लिलिया, स्ट्रेचर पर शिविर में वापस ले जाए जा रहे लोगों में लिलिया भी शामिल थी। लिलिया को स्ट्रेचर पर देखकर दुसा एकदम से अचंभित रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिलिया को स्ट्रेचर पर वापस ले जाया जाएगा। हालांकि सौभाग्य से लिलिया की चोटें बहुत गंभीर नहीं थी, क्योंकि दुसा ने जब उसकी ओर देखा तो उसे स्ट्रेचर से उतरने के लिए संघर्ष करते देखा। दुर्भाग्यवश आसपास के गार्डों ने उसके संघर्ष को रोक दिया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। गार्डों को अपने ऊपर दबाव डालते और उतरने से रोकते देख लिलिया जोर से चिल्लाई, लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कप्तान, आपको वापस लाना नगर स्वामी का आदेश है, हम आपकी आज्ञा नहीं मान सकते। मुझे जाने दो तुम। दुसा के झुंड, लिलिया जो लगातार संघर्ष कर रही थी, संयोग से दुसा पर उसकी नजर पड़ गई। बहन लिलिया, आपको क्या हुआ? आप इतनी बुरी तरह घायल कैसे हो गईं? स्ट्रेचर उठाने में मदद करते हुए दुसा ने चिंतित चेहरे के साथ लिलिया की ओर देखा। उसकी आंखें पहले से ही आंसुओं से भरी हुई थीं। दुसा को देखकर लिलिया, जो लगातार स्ट्रेचर से उतरने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा शांत हुई और फिर दुसा की ओर मुस्कुराई। छोटी बच्ची, बहन ठीक है, बस लापरवाही से मामूली चोट लग गई है। दुसा को उन स्पष्ट रूप से सांत्वना देने वाले शब्दों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, और वैसे भी वह अंधी नहीं थी। लिलिया का शरीर खून से लथपथ था और हालांकि ज्यादातर हिस्सा उसका अपना नहीं था, फिर भी उसके हाथ पर लगा खूनी घाव किसी से छिपा नहीं था। लिलिया घायल हो गई थी और चोटें हल्की नहीं थीं। इसलिए बाद में दुसा ने कोई और सवाल नहीं पूछा और गार्डों के साथ मिलकर लिलिया और अन्य घायलों को वापस शिविर में ले गया। लिलिया और अन्य लोगों को निपटाने के बाद प्रमुख आगा ने दुसा को अपने पास बुलाया। छोटी बच्ची, नगर के स्वामी ने तुम्हारे लिए एक आदेश दिया है। आह, कौन सा आदेश? आगा की बातें सुनकर दुसा स्तब्ध रह गया। नगरपाल ने तुम्हें कैप्टन लिलिया पर नजर रखने का आदेश दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे शिविर नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा गांव के डॉक्टर भी जल्द ही दूसरों के साथ आएंगे। मैं यहां दो लोगों को छोड़ दूंगा, जब समय आएगा तो तुम्हें मदद करनी होगी, ठीक है? ठीक है, उसने जोर से सिर हिलाया और सहमति जताई। ये कहने के बाद आगा ने दो गार्डों को छोड़ दिया जिन्हें भी मामूली चोटें आई थीं, और फिर जल्दी से बाकी गार्डों को वहां से ले गया। आगा को लोगों को जल्दी जल्दी ले जाते देख दुसा को अचानक कुछ याद आया और उसने पुकारा, चाचा आगा, मेरे पिताजी का क्या हाल है? वे कैसे हैं? प्रशिक्षक ठीक हैं, चिंता मत करो। चिल्लाते हुए आगा अपने आदमियों के साथ शिविर से बाहर चला गया और उसका उत्तर सुनकर दुसा को भी बहुत राहत मिली। हालांकि जैसे ही वह शांत हुई, उसने लिलिया की आकृति को देखने के लिए मुड़कर देखा। वह कमीना रॉकी, वह सचमुच बहुत क्रोधित करने वाला है। दुसा के पीछे खड़ी होकर लिलिया बुदबुदाई और फिर शिविर से बाहर की ओर बढ़ी। जाहिर है उसका इरादा युद्ध के मैदान में लौटने का था। लिलिया बहन, तुम नहीं जा सकती। लिलिया को युद्ध के मैदान में वापस लौटने की कोशिश करते देख दुसा ने रॉकी के निर्देशों को याद किया और जल्दी से अपनी बाहें फैला दी, जैसे कोई चील किसी चूजे को पकड़ती है, और उसका रास्ता रोक दिया। दुसा, खिलवाड़ बंद करो। लिलिया ने दुसा की ओर देखा और बिना कुछ कहे उसके चारों ओर घूम गई। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, दुसा फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ। बहन लिलिया, नगर स्वामी ने मुझे आप पर नजर रखने का निर्देश दिया है, इसलिए मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। अपने होंठ काटते हुए दुसा हठपूर्वक अडिग थी, पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। उसकी जिद ने लिलिया को निराश कर दिया। अगर गार्ड कोर का कोई और उसे रोक रहा होता तो लिलिया उसे पहले ही गिरा चुकी होती। हालांकि वह दुसा के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बस आह भरी। आह भरते हुए उसे अचानक चक्कर आने लगा। अगर दुसा ने उसे तुरंत सहारा न दिया होता तो लिलिया लगभग गिर ही जाती। लिलिया की चोटें बिल्कुल भी हल्की नहीं थीं। यद्यपि उसे गंभीर बाहरी चोटें नहीं आई थीं, लेकिन राक्षसों द्वारा उसके हाथ पर किए गए घाव के कारण उसका बहुत अधिक रक्त बह गया, जिससे वह आगे की लड़ाई के लिए अयोग्य हो गई, और यही कारण था कि रॉकी ने उसे गांव में वापस जाने का आदेश दिया था। लगभग बेहोशी की हालत में लिलिया के पास दुसा के सहारे तंबू में लौटने और वापस लाए गए अन्य घायलों के साथ आराम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ ही देर बाद गांव के डॉक्टर ग्रामीणों के साथ पहुंचे और घायलों का इलाज शुरू कर दिया। इलाज के दौरान दुसा ने स्वाभाविक रूप से काफी मदद की। मोटे जब दानव शिकारी था तब उसे अक्सर चोटें लगती थीं, इसलिए दुसा को ऐसे मामलों का काफी अनुभव था। लेकिन ठीक इसी वजह से जब दुसा ने गार्डों के घाव देखे तो वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। वापस लाए गए गार्डों को बहुत गंभीर चोटें आई थीं। हालांकि पिछली लड़ाइयों में भी लोग हताहत हुए थे, लेकिन गार्डों को मामूली चोटें ही आई थीं और कुछ दिनों के आराम के बाद वे ठीक हो गए थे, जिनमें मोटे भी शामिल था जो सबसे ज्यादा घायल हुआ था। लेकिन इस बार गार्डों की चोटें कहीं ज्यादा गंभीर थीं। लिलिया के साथ वापस लाए गए पहरेदारों में से एक की छाती फट गई थी, एक बड़ा घाव उसके रूनिक कवच को भी चीर रहा था। जब दूसरा और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे तो पहरेदार लगातार चिल्ला रहा था, लेकिन वह उन चार अन्य लोगों की तुलना में अपेक्षाकृत भाग्यशाली था जिन्हें उसके साथ वापस लाया गया था। उनकी चोटें और भी गंभीर थीं और वे सभी कोमा में चले गए थे। बाहर अभी भी कितनी भयंकर लड़ाई चल रही थी। प्रत्यक्ष युद्ध में शामिल सभी गार्ड रून उपकरणों से सुसज्जित थे। हालांकि रॉकी द्वारा बनाए गए रून उपकरण वेंसेल की रचनाओं की बराबरी नहीं कर सकते थे, फिर भी उनमें कुछ शक्ति थी। रूनिक ढाल और रूनिक कवच का संयोजन उनकी रक्षात्मक शक्ति को काफी बढ़ा सकता था, और आमतौर पर एक काली आंखों वाला दानव भी एक ही वार से किसी रक्षक को गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकता था। फिर भी ये सभी गार्ड गंभीर रूप से घायल थे, यहां तक कि बेहोश भी थे। इसका क्या तात्पर्य था? इससे ये संकेत मिलता है कि वे किसी राक्षस के एक ही प्रहार से घायल नहीं हुए थे, उन्हें इतनी गंभीर चोटें आने के लिए अनगिनत बार प्रहार किया गया होगा। इस बार कितने राक्षस आए थे? ये प्रश्न एक बार फिर दुसा के मन में आया, और स्पष्टतः इसका उत्तर केवल लिलिया को ही पता था। इसलिए जब उसने घायलों की डॉक्टर से मदद कर ली तो वह लिलिया के पास दौड़ी। अब ऐसा लग रहा था कि वापस लाए गए लोगों में लिलिया सबसे कम घायल थी, क्योंकि वह कम से कम अभी भी होश में थी। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत गलत होंगे, क्योंकि लिलिया ने वेंसेल द्वारा तैयार किए गए रून उपकरणों का पूरा सेट पहना हुआ था। ऐसे उपकरणों के बावजूद भी वह घायल हो गई थी। इसका मतलब था कि युद्ध में उसे कितने गंभीर प्रहार सहने पड़े होंगे, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बहन लिलिया, आपको पहले थोड़ा पानी पीना चाहिए। लिलिया के फटे होंठों को देखकर कुछ अनजान दुसा ने जल्दी से उसके लिए एक कप पानी लिया और उसके पास बैठ गया। बहन लिलिया, कितने राक्षस बाहर आ गए हैं और सभी इस तरह घायल कैसे हो सकते हैं? बाहर दुसा के प्रश्न का सामना करते हुए लिलिया ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि तंबू के बाहर से अराजक कदमों की एक और आवाज आई और शीघ्र ही सैनिक स्ट्रेचर लेकर तंबू में घुस आए। अधिक घायलों को लाया गया था, और भी घायलों को लाते देख दुसा और लिलिया स्वाभाविक रूप से अपनी सहज बातचीत जारी नहीं रख पाए। दुसा तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ी, और जब लिलिया ने अपने कप में पानी गटक लिया तो वह भी दृढ़ता से खड़ी होकर मदद के लिए आगे बढ़ी। इस बार वापस लाए गए घायल बैकहिल विलेज के सैनिक थे, और घायल सैनिकों की संख्या एक दर्जन से ज्यादा थी। इन घायल सैनिकों की मदद के लिए हर कोई बेतहाशा व्यस्त था, किसी को बोलने का भी वक्त नहीं मिल रहा था। गार्ड कोर की चोटों की तुलना में बैकहिल गांव के सैनिक ज्यादा गंभीर रूप से घायल थे। उनके पास अपनी रक्षा के लिए रून उपकरण नहीं थे, केवल सामान्य उपकरण पहने हुए वे राक्षसों के हमलों का सामना करते समय मुख्य रूप से अनुभव पर निर्भर थे, और मूल रूप से उनके पास भरोसा करने के लिए कोई बाहरी ताकत नहीं थी, इसलिए एक बार घायल होने पर यह गंभीर होना ही था। ऐसी स्थिति में वापस लाए गए हर सैनिक के शरीर पर गहरे घाव थे। उनमें से सबसे बुरे सैनिक का पैर एक राक्षस ने बेरहमी से फाड़ दिया था, और जब उसे अंदर लाया गया तो उसकी चीखें तंबू में गूंज उठी, लेकिन कुछ ही देर बाद चीखें गायब हो गईं। उसकी मृत्यु हो गई। राक्षसों के विरुद्ध लड़ाई अंततः जीवन लेने के लिए शुरू हो गई थी। जैसे ही मृतक सैनिक को तंबू से बाहर ले जाया गया, अंदर मौजूद सभी लोग चुप हो गए। यहां तक कि व्यस्त डॉक्टर भी दूसरों को निर्देश देते समय धीमे स्वर में बोलने लगा, मानो वह फुसफुसा रहा हो। एक अदृश्य उदासी ने सभी को घेर लिया। इस दमनकारी अंधकार के बीच न जाने कितनी देर की भागदौड़ के बाद वे अंततः घायलों के नए समूह को बसाने में कामयाब हो गए और फिर तंबू में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। इस मौत के सन्नाटे में घायल सैनिक या तो बिस्तरों पर या जमीन पर लेटे हुए थे। प्रत्येक के चेहरे पर एक खालीपन था। उन्हें पता नहीं था कि वे क्या देख रहे हैं। जबकि बैकहिल गांव के डॉक्टर और ग्रामीण सभी चुप थे, कुछ तो चुपचाप आंसू बहा रहे थे। उनका गांव बड़ा नहीं था और सभी लोग एक दूसरे को पहचानते थे, इसलिए हालांकि सभी मृतक गार्ड उनके रिश्तेदार नहीं थे, फिर भी ग्रामीणों को दुख हुआ। इस मनोदशा का असर दुसा पर भी पड़ा। वो भी ऊर्जाहीन लग रही थी। उसने बात करना बंद कर दिया और लिलिया के बगल में बैठ गई, मानो किसी बात को लेकर चिंतित हो। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दुसा को अकेले में खोया हुआ देखकर लिलिया ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मोटे ठीक हो जाएगा। कम से कम जब मुझे वापस बुलाया गया तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई। वास्तव में ये सुनकर दुसा ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। उसके चेहरे पर चिंता कम दिखाई दी। बेशक ये सच है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। तो फिर नगर स्वामी के बारे में क्या? नगरपाल, वह मूर्ख ठीक होगा मुझे लगता है। रॉकी के बारे में सोचते ही लिलिया को गुस्सा आ गया। अगर वह न होता तो वह कैसे घायल हो जाती। दुर्भाग्यवश यह न जानते हुए कि क्या हुआ था, दुसा ने ये सुनकर सिर हिलाया और पूरे विश्वास के साथ कहा, ठीक है, नगर स्वामी इतना शक्तिशाली है, उसे निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। ये जानने के बाद कि उसके पिता और रॉकी दोनों ठीक हैं, दुसा का उदास मन ठीक हो गया और वह खुद को ये पूछने से नहीं रोक सकी, बहन लिलिया, इस बार वास्तव में कितने राक्षस आए थे? 10। लिलिया ने दुसा की ओर देखा और तुरंत जवाब दे दिया। हालांकि उसके जवाब ने न केवल दुसा को चौंका दिया बल्कि बैकहिल गांव के ग्रामीणों को भी अविश्वास से उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। 10 राक्षस, ये कैसे संभव हो सकता है? बैकहिल गांव की सेनाएं रॉकी के गार्ड कोर के साथ मिलकर केवल 10 राक्षसों के हमले के सामने इन दोनों सेनाओं को इतना गंभीर नुकसान कैसे हो सकता है? लेकिन जब सभी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लिलिया ने कहना जारी रखा, पहले तो केवल 10 राक्षस थे, फिर 10 और आए, फिर 10 और, फिर एक और, जब तक मुझे वापस खींचा गया तब तक 10 और आ चुके थे। 10 राक्षस, फिर 10 और, फिर 10 और, फिर 10 और, अंततः 10 और। लिलिया के शब्दों ने दुसा और बाकी लोगों को कुछ पल के लिए जवाब देने से रोक दिया। उन्हें यकीन नहीं था कि उन्होंने ठीक से सुना नहीं था या ठीक से गिनती नहीं की थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असल में कितने राक्षस थे। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इस बार बहुत सारे राक्षस हमला कर रहे थे। सचमुच यही मामला था। इतने दिनों तक छिपे रहने के बाद राक्षस न केवल पुनः प्रकट हुए बल्कि एक अथक ज्वार की तरह। राक्षसों की पहली लहर वास्तव में केवल 10 थी और इस संख्या ने शुरू में लिन फैंग को बहुत राहत दी थी, जो रक्षा के प्रभारी थे, क्योंकि उनके विचार में 10 राक्षस कम नहीं हो सकते थे। लेकिन बैकहिल गांव की सेना निश्चित रूप से उन्हें पीछे हटाने में सक्षम थी। सिर्फ वही नहीं बल्कि रॉकी भी, जो सबसे पहले ऊंची दीवार की ओर दौड़ा था, निश्चिंत था यह विश्वास करते हुए कि लिन फैंग निश्चित रूप से उन्हें रोकने में सक्षम होगा। वास्तविक स्थिति वैसी ही थी जैसी दोनों ने कल्पना की थी। जब लिन फैंग ने बैकहिल गांव की सेना को ऊंची दीवारों के पार ले जाकर 10 राक्षसों से मुकाबला किया तो उन्होंने तुरंत बढ़त हासिल कर ली। लेकिन उसी समय राक्षसों की दूसरी लहर प्रकट हो गई। राक्षसों की दूसरी लहर भी ठीक 10 की संख्या में थी। हालांकि लिन फैंग की सेना ने पहली लहर के केवल 3 राक्षसों को ही मारा था, इसलिए जब राक्षसों के दोनों समूहों ने अपनी सेनाएं मिलाई तो उनकी संख्या 17 हो गई। इन 17 राक्षसों का सामना करते हुए लिन फैंग और उसके सैनिकों ने तुरंत अपने सभी फायदे खो दिए। बैकहिल गांव के सैनिकों की संख्या 200 थी, लेकिन उनमें से आधे धनुर्धर और जादूगर थे, जो दूर से युद्ध करने के लिए सुसज्जित थे। केवल 100 योद्धा ही राक्षसों का सीधा सामना कर सकते थे, जिसका मतलब था कि प्रत्येक योद्धा को लगभग 2 राक्षसों से निपटना था, जिससे लिन फैंग और उसके सैनिकों पर दबाव तुरंत कई गुना बढ़ गया। सौभाग्य से रॉकी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। लगभग उसी समय जब राक्षसों की दूसरी लहर प्रकट हुई, उसने मोटे से गार्ड कोर को संगठित करने को कहा और उसके तुरंत बाद वह गार्ड्स को ऊंची दीवार के ऊपर ले गया। रॉकी के समय पर दिए गए समर्थन से लिन फैंग और उसके सैनिकों पर दबाव बहुत कम हो गया और रेंज यूनिटों की मदद से वे लड़ाई को स्थिर रखने में कामयाब रहे। लेकिन तभी घटनाओं में एक अप्रत्याशित मोड़ आया जब राक्षसों की तीसरी लहर अचानक उनके दृष्टि क्षेत्र में प्रवेश कर गई। ये तीसरी लहर भी 10 सैनिकों वाली थी और आते ही सीधे युद्ध क्षेत्र में घुस गई। जब तक ये तीसरी लहर प्रकट हुई, लिन फैंग और उसके सैनिकों ने रॉकी और गार्ड कोर के साथ मिलकर केवल 6 राक्षसों को ही मार डाला था, जिसका मतलब था कि जैसे ही तीसरी लहर लड़ाई में शामिल हुई, राक्षसों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। यदि कोई यह सोचता था कि 21 राक्षस पर्याप्त नहीं थे, तो राक्षसों की अगली चौथी लहर ने सभी को पूरी तरह से आतंकित कर दिया। तीसरी लहर के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद चौथी लहर भी प्रकट हुई, जिसकी संख्या भी 10 थी और वे भी शीघ्र ही युद्ध में शामिल हो गईं। तथा प्रवेश करते ही रॉकी और लिन फेंग दोनों की सेनाओं पर लगभग पहाड़ी जैसा दबाव बना दिया। तभी रॉकी ने तुरंत एक फैसला लिया। वह हवा में उड़ गया और एक विशाल जादुई फ्लैश छोड़ा, जिससे स्काईशिप के सैनिकों को संकेत मिल गया। राक्षसों की इतनी बड़ी भीड़ का सामना करते हुए केवल उनकी सेना पर निर्भर रहना अब व्यवहार्य नहीं था, इसलिए उन्होंने निर्णायक रूप से स्काईशिप को बुलाया। संकेत भेजे जाने के लगभग 10 मिनट बाद स्काईशिप अत्यंत तेजी से वहां पहुंचा और फिर तोपों की आवाज के साथ दुसा द्वारा देखे गए दृश्य का पीछा किया। स्काईशिप के समय पर पहुंचने से सभी पर से दबाव कम हो गया, लेकिन युद्ध का रुख उनके पक्ष में नहीं हुआ क्योंकि स्काईशिप बहुत देर से पहुंचा था। आकाशयान का सबसे बड़ा कार्य हवाई श्रेष्ठता का लाभ उठाकर जादुई तोपों की विशाल शक्ति से राक्षसों पर बमबारी करना था, जिससे राक्षसों को भारी क्षति पहुंच सकती थी। हालांकि इस लड़ाई में जब तक स्काईशिप युद्ध के मैदान में पहुंची, रॉकी और लिन फेंग पहले ही अपने सैनिकों को राक्षसों के साथ घनिष्ठ युद्ध में ले जा चुके थे। दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ उलझ गए, जिससे स्काईशिप के लिए व्यापक बमबारी करना असंभव हो गया। आखिरकार जादुई तोपें भेदभाव नहीं करती। ऐसी स्थिति में आने वाले आकाशयान केवल पृथक राक्षसों पर ही यथासंभव बमबारी कर सकते थे, और यद्यपि इसका एक निश्चित प्रभाव था, ये बहुत सीमित था। यही कारण है कि दुसा ने तोप की आग की केवल छिटपुट आवाजें सुनी। इस प्रकार युद्ध क्षेत्र अपने सबसे क्रूर दौर में प्रवेश कर गया, जहां रॉकी और लिन फेंग अपनी अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते हुए राक्षसों से पूरी तरह उलझ गए और उनका बेहद करीब से सामना हुआ। और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, हताहतों की संख्या बढ़ने लगी। इससे वह दृश्य उत्पन्न हुआ जहां लिलिया घायल हो गई और उसे वापस गांव ले जाया गया। अपनी ताकत के साथ लिलिया को इतनी आसानी से चोट नहीं लगनी चाहिए थी। रूनिक कवच पहने होने के कारण उसकी सुरक्षा रॉकी के बाद दूसरे नंबर पर थी और उसे आमतौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उसके घायल होने का असली कारण यह नहीं था कि वह राक्षसों को नहीं हरा सकती थी, बल्कि इसलिए कि वह रॉकी की रक्षा कर रही थी। इस लड़ाई में रॉकी शून्य जादू कवच पहने हुए स्वाभाविक रूप से प्राथमिक शक्ति बन गया, क्योंकि वह उड़ सकता था। हवा में लड़ने की क्षमता ने उसे युद्ध के मैदान में सर्वोच्च रैंक वाले लिन फेंग से भी ज्यादा मूल्यवान बना दिया, और रॉकी खुद भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। इसलिए उसने युद्ध में बेहद बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अकेले ही तीन राक्षसों को उलझा दिया। अकेले ही तीन राक्षसों को रोकना साहस का कार्य था, जिससे हर कोई उसकी सराहना करेगा, लेकिन ऐसा कार्य स्पष्टतः उसकी क्षमता से परे था। रॉकी शून्य जादुई कवच से मिली ताकत के कारण वाकई बहुत ताकतवर था। अगर सभी की युद्ध शक्ति को क्रम से देखा जाए तो वह लिन फेंग के बाद दूसरे नंबर पर होगा, यहां तक कि मोटे से भी ज्यादा ताकतवर, जिसके पास सिर्फ एक हाथ बचा था। लेकिन कृपया यह मत भूलिए कि यह शक्ति केवल शून्य जादू कवच द्वारा प्रदान की गई शक्ति से आई थी और रॉकी के पास स्वयं इस प्रकार की शक्ति नहीं थी। यदि शून्य जादू कवच कच्ची शक्ति में वृद्धि प्रदान कर सकता है, तो जब युद्ध अनुभव की बात आती है तो रॉकी में इसकी गंभीर कमी थी। उसने बहुत कम लड़ाइयों में हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से उसके अनुभव की भारी कमी थी। ये कमी भले ही कम संख्या में राक्षसों का सामना करते समय न दिखे, लेकिन जब संख्या एक सीमा से ज्यादा हो जाती तो वह उनका सामना नहीं कर पाता। और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, रॉकी, जो तीन राक्षसों को रोके हुए था, लगातार खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने लगा। कई बार वह बेहद मुश्किल में फंस गया, कई बार उसे हवा में ही राक्षसों ने छीन लिया, जिनसे वह समय रहते बच नहीं पाया, और उसे बचाने के लिए ही लिलिया घायल हो गई। जब लिलिया घायल हो गई और उसे वापस गांव ले जाया गया, तब तक उसे नहीं पता था कि युद्ध के मैदान में क्या हुआ था, लेकिन वह निश्चित थी कि जब तक उसे निकाला गया, राक्षसों की पांचवीं लहर प्रकट हो चुकी थी। हाँ, जब लिलिया को ले जाया गया तो राक्षसों की पांचवीं लहर आ गई। चूंकि राक्षसों की पांचवीं लहर के प्रकट होने पर लिलिया को जबरदस्ती स्ट्रेचर पर रखा गया था, इसलिए उसने राक्षसों की सही संख्या नहीं देखी, लेकिन पिछली स्थिति के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पांचवीं लहर में 10 से कम राक्षस नहीं थे। यही कारण था कि वह शिविर पहुंचते ही युद्धभूमि में वापस भाग जाना चाहती थी। लिलिया अच्छी तरह जानती थी कि जैसे ही राक्षसों की पांचवीं लहर लड़ाई में शामिल होगी, रॉकी और लिन फेंग पर दबाव और भी बढ़ जाएगा। इस तथ्य की पुष्टि वास्तव में हो चुकी थी। एक के बाद एक वापस ले जाए जा रहे घायल सैनिक इसका सबसे बड़ा प्रमाण थे, और हताहतों की बढ़ती संख्या साफ तौर पर बता रही थी कि युद्ध के मैदान पर दबाव अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गया था। ऐसी परिस्थितियों में यद्यपि लिलिया दुसा को सांत्वना देती रही, किंतु वह दुसा से कहीं अधिक चिंतित थी। उसके जाने के बाद युद्धभूमि की स्थिति जानने के लिए उतनी ही उत्सुक थी। सोच रही थी कि क्या पांचवीं लहर के आने के बाद राक्षसों की छठी या सातवीं लहर भी आ गई है। पुनश्च इन अध्यायों में युद्ध क्षेत्र का अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया गया है। हो सकता है कि वे बहुत नाटकीय न हो, लेकिन चिंता न करें, राक्षसों के साथ एक वास्तविक बड़ी लड़ाई जल्द ही होने वाली है। दूसरों की तुलना में लिलिया युद्ध के मैदान की स्थिति को लेकर और भी ज्यादा चिंतित थी, लेकिन दुर्भाग्य से बाकियों की तरह अब वह भी चुपचाप इंतजार कर सकती थी। अब वह बस यही कर सकती थी कि प्रार्थना करे कि देवता अपना आशीर्वाद दें। अफसोस की बात है कि ऐसी प्रार्थनाएं निरर्थक प्रतीत हुई, क्योंकि बाद के समय में अधिक से अधिक घायल सैनिकों को वापस लाया गया, जिससे निस्संदेह ये साबित हुआ कि लड़ाई अभी भी जारी थी और भी अधिक क्रूर हो गई थी। समय पल पल बीतता गया और आसमान दिन के उजाले से सूर्यास्त में बदल गया। इस दौरान घायलों की संख्या लगातार बढ़ती गई, जिनमें गार्ड कोर और बैकहिल विलेज के दर्जनों सैनिक शामिल थे। इस स्थिति में लिलिया और दुसा के पास चिंता करने का भी समय नहीं था। उन्होंने घायलों का इलाज करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, जो कि वे ज्यादा से ज्यादा कर सकते थे। बहन लिलिया, सुनो। अनिश्चित समय के बाद एक घायल सैनिक की पट्टियां बांधने के ठीक बाद दुसा ने अचानक अपना सिर उठाया। उसने तंबू के बाहर की ओर देखा और लिलिया से कहा, बहन लिलिया, तोपों की गोलाबारी बंद हो गई है। तोपखाने की आग। दुसा के शब्दों ने लिलिया को ध्यान से सुनने पर मजबूर कर दिया और उसे एहसास हुआ कि जैसा उसने कहा था, पहले जो लगातार बमबारी सुनाई दे रही थी वह अनजाने में बंद हो गई थी। तोपों की गोलाबारी बंद हो गई, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि युद्ध समाप्त हो गया? यह विचार करते हुए लिलिया ने जल्दी से अपने हाथों में मौजूद सभी चीजें एक तरफ रख दी और तंबू से बाहर निकल गई। तंबू से बाहर निकलते ही वह तुरंत ऊंची दीवार की ओर दौड़ी, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसे दीवार के पार से आती हुई कुछ धीमी आवाजें सुनाई दी। वह आवाज जयकार की थी। जयकार! क्या वे जीत गए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि रॉकी और बाकी लोग पहले ही जीत चुके हों? दीवार के दूसरी ओर से आ रही धीमी जय जयकार सुनकर लिलिया एक क्षण के लिए रुकी और फिर दीवार की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह दीवार के सामने पहुंची, उसके ऊपर चढ़ने से पहले ही दीवार के द्वार खोल दिए गए और कुछ ही देर बाद बड़ी संख्या में स्ट्रेचर लेकर लोग वहां आ गए। ऐसा लग रहा था कि युद्ध वास्तव में समाप्त हो गया है, और जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध क्षेत्र से हताहतों को तुरंत गांव में वापस लाया गया। सामान्य परिस्थितियों में ये सब अपेक्षित होता है, लेकिन जब लिलिया ने घायलों को ले जाने वालों को अपने सामने आते देखा तो वह घबरा गई, क्योंकि इन लोगों में मोटे भी था। मोटे स्ट्रेचर पर नहीं लेटा था, वह वास्तव में स्ट्रेचर को उठाए हुए था। कौन घायल हो सकता है जिसके कारण मोटे को स्वयं स्ट्रेचर ले जाना पड़े? उत्तर स्वतः स्पष्ट था, इसलिए लिलिया तुरंत मोटे की ओर दौड़ी और जब वह उसके द्वारा उठाए गए स्ट्रेचर के पास पहुंची तो उसने वह दृश्य देखा जिसे वह बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। रॉकी शून्य जादू कवच पहने हुए स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। चट्टान का उस वक्त स्ट्रेचर पर पड़ा रॉकी खून से लथपथ था। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था, जिससे लिलिया पूरी तरह स्तब्ध रह गई। यहां तक कि जब उसे गंभीर चोटें लगी थी तब भी उसने अपनी भौहें सिकुड़ी नहीं थी। अब वह अचानक फूट फूट कर रोने लगी। मैं ठीक हूं। जैसे ही लिलिया अनियंत्रित होकर रोने लगी, स्ट्रेचर पर पड़े रॉकी ने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने मुस्कुराहट बिखेरी। ये स्पष्ट था कि रॉकी अपनी मुस्कान को यथासंभव मर्दाना दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति और पीले चेहरे को देखते हुए उसकी मुस्कान लिलिया के लिए आश्वस्त करने वाली नहीं थी, बल्कि इसे उसका दिल का दर्द और बढ़ गया। इसलिए रॉकी के बोलने का इंतजार किए बिना लिलिया ने उत्सुकता से पूछा, तुम कहाँ घायल हो? क्या तुम अब भी पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? आपके शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है? क्या आप अपना पैर हिला सकते हैं? जैसे ही वह स्ट्रेचर के साथ साथ शिविर की ओर दौड़ी, लिलिया ने उस पर तेजी से सवालों की बौछार कर दी, इतनी तेजी से कि रॉकी जवाब नहीं दे सका। कोई विकल्प न होने पर रॉकी को उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटानी पड़ी, और तभी लगातार सवाल पूछ रही लिलिया रुकी और आखिरकार रॉकी को बोलने का मौका मिला। मैं घायल नहीं हूँ, ये सिर्फ इतना है कि शून्य जादू का वच मैना से बाहर है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यद्यपि यह एक छोटा वाक्य था, रॉकी रुक रुक कर बोल रहा था, जिससे पता चल रहा था कि उसके पास बोलने के लिए भी ऊर्जा नहीं बची है। लेकिन वह झूठ नहीं बोल रहा था। हालांकि उसे स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया था, फिर भी उसे कोई चोट नहीं लगी थी। वह स्ट्रेचर पर इसलिए पड़ा था क्योंकि वह पूरी तरह थका हुआ था और ऊपर से शून्य जादुई कवच का मान खत्म हो गया था। अभी अभी समाप्त हुई लड़ाई ने रॉकी की सारी ताकत खत्म कर दी थी, इसलिए जैसे ही यह खत्म हुई वह पूरी तरह से गिर पड़ा, यहां तक कि खड़ा भी नहीं हो सका। उसी समय शून्य जादू कवच ने भी लड़ाई के दौरान अपना मान समाप्त कर लिया था, और एक बार जब मान चला गया तो कवच का पूरा वजन तुरंत रॉकी के शरीर पर दबाव डालने लगा, जिससे पहले से ही थका हुआ योद्धा ऐसा महसूस करने लगा जैसे उसने एक छोटा पहाड़ पहन रखा हो और उसके पास स्ट्रेचर पर वापस ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ये स्पष्टीकरण रॉकी ने खुद नहीं दिया, क्योंकि उसके पास समझाने की ऊर्जा नहीं थी, बल्कि मोंटे ने दिया, जिसने लिलिया को बताया। मोंटेर की बातें सुनकर लिलिया का धैर्य थोड़ा कम हुआ और वह स्ट्रेचर के साथ वापस कैंप की ओर दौड़ी। शहर की दीवारों के बाहर खड़े सैनिक शीघ्र ही क्रमवार गांव में लौट आए और युद्ध का परिणाम स्वतः स्पष्ट था, वे जीत गए थे। हालांकि लिलिया को ठीक से पता नहीं था कि वे कैसे जीते थे। गांव में जल्दी लौटने के कारण उसे पूछने का समय भी नहीं मिला था और वह घायलों का इलाज करने वालों की कतार में शामिल हो गई। दरअसल रॉकी और लिन फैंग के नेतृत्व वाली सेना की जीत तो हुई थी, लेकिन ये जीत भारी कीमत पर मिली थी। युद्ध में हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिससे सुनने वाले दंग रह गए। इस युद्ध में रॉकी और लिन फैंग ने अपनी अपनी इकाइयों का नेतृत्व किया था। कुल 300 योद्धाओं ने युद्ध में प्रवेश किया था, लेकिन अंत तक घायल या मारे गए लोगों की संख्या 63 तक पहुंच गई थी, जिसमें 45 घायल और 18 मृत थे। 300 लोगों के लड़ाई में शामिल होने से 63 लोग हताहत हुए, यानी 5 में से 1 का अनुपात। लेकिन यह उच्च हताहत दर भी सटीक नहीं थी, क्योंकि भाग लेने वाले 300 सैनिकों में से पूरे 101 रेंज यूनिट का हिस्सा थे। इसका मतलब है कि इन 100 सैनिकों ने लड़ाई में सहयोग तो किया, लेकिन राक्षसों से सीधा मुकाबला नहीं किया, जिससे केवल 200 योद्धा ही बचे जिन्होंने राक्षसों से सीधे हाथापाई की। तो अगर हम इस युद्ध में योद्धाओं की हताहतों की संख्या की बात करें, तो यह संख्या और भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी, 4 में से 1 से भी ज्यादा। यानी युद्ध के बाद औसतन हर 4 में से 1 योद्धा घायल हुआ और हर 10 में से 1 योद्धा राक्षसों के हाथों मारा गया। राक्षसों के विरुद्ध युद्ध बहुत ही क्रूर था। 100 साल पहले एक कारण था कि राक्षस प्रकट होते ही पूरे महाद्वीप पर छा जाते थे। वह कारण ये था कि वे इतने शक्तिशाली थे, इतने शक्तिशाली कि मानव शक्ति उनसे मुकाबला नहीं कर सकती थी। और आज की लड़ाई इसका सबसे बड़ा सबूत थी। और कृपया यह मत भूलिए कि आज रॉकी और लिन फैंग ने जिन राक्षसों का सामना किया, उनकी संख्या 100 से ज्यादा नहीं थी। इसलिए जब युद्ध समाप्त हो गया, तो जीत की खुशी मनाने का समय नहीं था। घायलों का इलाज, सैनिकों का पुनर्गठन और अन्य कामों में उनका ध्यान लगा हुआ था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कल राक्षस फिर से हमला करेंगे या नहीं, और सभी को अगले युद्ध की तैयारी जारी रखनी थी। उस रात बैकहिल गांव में किसी को नींद नहीं आई। वे सुबह होने तक व्यस्त रहे और अंततः उन्हें आराम करने का एक संक्षिप्त क्षण मिला। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? रॉकी के बिस्तर के पास बैठी लिलिया ने देखा कि वह जाग गया है और चिंता से पूछते हुए उसे एक गिलास पानी दिया। जब से रॉकी को वापस लाया गया है, लिलिया ने दूसरों की देखभाल करना बंद कर दिया है तथा अपना सारा ध्यान उसकी देखभाल में लगा दिया है, और रॉकी वापस आने पर गहरी नींद में सो गया है तथा पूरी रात सोने के बाद जाग गया है। बहुत बेहतर। पानी का घूंट लेते हुए रॉकी ने लिलिया की ओर देखा और पाया कि वह थकी हुई लग रही थी। जाहिर है कि वह पूरी रात सोई नहीं थी। तुम्हें मेरा इतना ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये देखकर कि लिलिया उसकी देखभाल कर रही थी, रॉकी को बेचैनी तो हुई, लेकिन साथ ही उसका दिल भी खुश हो गया। हालांकि उसे पता था कि उसकी बातें शायद व्यर्थ होंगी, फिर भी उसे उम्मीद थी कि लिलिया थोड़ा आराम करेगी। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, लिलिया ने उसे उदासीनता से देखा। मुझे कोई गंभीर असर नहीं हुआ है, ये कहने के बाद उसने उत्सुकता से पूछा, कल की लड़ाई से निकलने के बाद क्या हुआ? क्या और राक्षस आ गए? लिलिया कल की लड़ाई को लेकर बहुत चिंतित थी। अब जबकि लड़ाई खत्म हो चुकी थी, वह अभी भी समझना चाहती थी कि क्या हुआ था। उसका सवाल सुनकर रॉकी ने बस सिर हिला दिया, उन्होंने किया था। इस बिंदु पर उसने पानी का एक और घूंट लिया और फिर आगे कहा, कल आपके जाने के बाद राक्षसों की 5वीं लहर आई, उसके बाद एक और, इस प्रकार राक्षसों की कुल 6 लहरें आईं। कल की लड़ाई में राक्षसों की कुल 6 लहरें आईं, रॉकी ने सपाट स्वर में कहा। लेकिन उनके तथ्यात्मक लहजे ने उनके शब्दों के प्रभाव को कम नहीं किया, और यह सुनकर लिलिया की सांस अटक गई। उद्धरण चिन्ह ... राक्षसों की 6 लहरें। हाँ, कल की लड़ाई में कुल 60 दानव आए थे, बोलते हुए रॉकी ने लिलिया की तरफ देखा और फिर बिना किसी चेतावनी के मुस्कुरा दिया। अरे, मैंने लड़ाई में 4 दानवों को मार गिराया। बहुत प्रभावशाली है ना? मेरे पैर बहुत प्रभावशाली हैं। रॉकी को अचानक चिढ़ाने और मुस्कुराने वाला रवैया अपनाते देख लिलिया खुद को रोक नहीं सकी और मुट्ठी उठाकर उसके सिर पर जोरदार वार किया। क्या उसे यह एहसास नहीं था कि हर कोई कितना चिंतित था? लिलिया की मुक्का से सिर पर प्रहार होने पर रॉकी 2 बार हंसा और लिलिया उसकी प्रतिक्रिया से असहाय होकर आगे बढ़ने से पहले अपनी आंखें घुमाई। चूंकि मेरे जाने के बाद राक्षसों की एक और लहर आई थी, तो तुम कैसे जीत गए? राक्षसों की कुल 6 लहरों के साथ उनकी संख्या 60 हो गई। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान राक्षसों का नाश हो रहा था, लेकिन यह उनके आगमन जितनी तेजी से नहीं था, जिसका मतलब था कि उनके सामने आने वाले राक्षसों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ईमानदारी से कहें तो लिलिया ये समझ नहीं पा रही थी कि रॉकी और अन्य लोग इस तरह की लड़ाई कैसे जीत सकते हैं। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि जब उसे गांव में वापस लाया गया था, तो युद्ध के मैदान पर सेना पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी और राक्षसों के हमलों का सामना नहीं कर सकती थी। ये सब स्काईशिप्स की बदौलत संभव हुआ। फिर भी उसके प्रश्न का सामना करते हुए रॉकी ने सीधे उत्तर दिया, कल की लड़ाई में वे इसलिए जीत पाए क्योंकि स्काईशिप्स ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यद्यपि स्काईशिप युद्ध क्षेत्र में देर से पहुंचे तथा तब पहुंचे जब दानवों की 4थी लहर न केवल आ चुकी थी, बल्कि सैनिकों के साथ युद्ध में उलझी हुई थी। इससे स्काईशिप अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने में असफल रहे तथा युद्ध क्षेत्र पर उनका प्रभाव अत्यंत सीमित रहा। हालांकि जैसे ही राक्षसों की 5वीं और 6थी लहरें एक के बाद एक प्रकट हुई, स्काईशिप का महत्व स्पष्ट हो गया। जब राक्षसों की पांचवी लहर प्रकट हुई तो आकाशयानों ने उन पर भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। 10 आकाशयानों ने एक साथ गोलीबारी करके इस लहर के आधे से ज्यादा हिस्से को युद्ध में शामिल होने से पहले ही उड़ा दिया। और जब तक राक्षसों की छठी लहर प्रकट हुई तब तक स्काईशिप भी प्रकट हो गए, जिसके परिणामस्वरूप उनकी बमबारी में भी अनेक लोग हताहत हुए। इसलिए हालांकि लिलिया के गांव लौटने के बाद राक्षसों की दो और लहरें आईं, लेकिन स्काईशिप्स की बदौलत इन लहरों ने रॉकी और लिनफेंग पर ज्यादा दबाव नहीं डाला, कम से कम जानलेवा तो नहीं। यही वजह थी कि आखिरकार उन्हें जीत मिली। तो यह ऐसा था, रॉकी के जाने के बाद युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में उसके संक्षिप्त विवरण को सुनकर लिलिया ने विचार करते हुए सिर हिलाया, फिर उसकी ओर देखा। रॉकी, आगे क्या करने की तुम्हारी योजना है? हालांकि उन्होंने कल की लड़ाई जीत ली थी, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। महीने का आधा भी नहीं बीता था, यानी डेमंस अपने हमले जारी रखेंगे और रॉकी को बचाव करते रहना होगा। लेकिन कल की भीषण लड़ाई के बाद गार्ड कोर और बैकहिल विलेज दोनों सेनाओं को भारी नुकसान हुआ था। गार्ड कोर के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और 3 की मौत हो गई थी। अगली लड़ाई में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या 80 से ज्यादा नहीं थी। इसकी तुलना में बैकहिल गांव का नुकसान और भी ज्यादा था। बैकहिल गांव के सैनिकों के खराब उपकरणों के कारण युद्ध में 20 से ज्यादा घायल हुए और 10 से ज्यादा युद्ध के मैदान में ही मारे गए, जिससे उनकी ताकत काफी कम हो गई। इस वजह से रॉकी या लिनफेंग के लिए अपनी अपनी सेना के साथ राक्षसों से अलग अलग लड़ना असंभव हो गया। इसके अलावा पिछली लड़ाई से यह स्पष्ट था कि अब कुछ राक्षसों के खिलाफ कोई छोटी मोटी झड़प नहीं होगी। अब से हर लड़ाई एक कड़ा संघर्ष होने ही वाली थी। इसलिए बचाव कैसे किया जाए, ये वर्तमान प्राथमिकता बन गई। और इस मामले के बारे में रॉकी ने पहले से ही कुछ योजनाएं बना रखी थी, इसलिए उसने सीधे कहा, अब से दोनों पक्षों को एक साथ बचाव करना होगा, अन्यथा हम निश्चित रूप से राक्षसों का सामना नहीं कर पाएंगे। मैं गार्ड कोर का नेतृत्व करूंगा और लिनफेंग बैकहिल गांव के सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। हम में से प्रत्येक अपनी सेना की कमान संभालेगा, कोई और रास्ता नहीं है। ये काफी संयोग था कि जैसे ही रॉकी ने बोलना समाप्त किया, कोई उसके तंबू में प्रवेश कर गया और वह कोई और नहीं बल्कि लिनफेंग था। कमांडर रॉकी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे ही लिनफेंग तंबू में गया, उसने लिलिया को सिर हिलाया और फिर रॉकी के बिस्तर के पास आकर चिंता से पूछा। बहुत बेहतर है, मुझे लगता है कि एक दिन और आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। हल्की सी मुस्कान के साथ रॉकी बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और बोला, कैप्टन लिनफेंग, आप हमारी सेनाओं को एक साथ मिलाने आए हैं, है ना? लिनफेंग का आगमन अप्रत्याशित नहीं था। जैसे लिलिया को चिंता थी कि आगामी लड़ाइयों से कैसे निपटा जाए, लिनफेंग भी स्वाभाविक रूप से इस बारे में सोचेगा। ठीक है, मैं आपकी राय जानना चाहता था। दरअसल लिनफेंग ने सीधे सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह वास्तव में इसी कारण से वहां था। बाद में रॉकी ने उससे इस मामले पर चर्चा की। उन्हें अपनी सेनाओं के विलय पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि दोनों ने मिशन की शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया था और सभी इसके लिए पहले से ही तैयार थे। अतः एक संक्षिप्त चर्चा के बाद यह मुद्दा शीघ्र ही सुलझ गया तथा दोनों पक्ष आगामी युद्धों में अपने अपने सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए सहमत हो गए तथा दोनों पक्ष अपनी अपनी टीमों की कमान संभालेंगे। साथ ही स्काईशिप ब्रेक स्काई पर्वत के ऊपर निष्क्रिय नहीं रह सकते थे। जिस स्थान पर स्काईशिप खड़े थे वह बैकहिल गांव से थोड़ा दूर था। हालांकि वहां पहुंचने में केवल 10 मिनट लगते, लेकिन तेजी से बदलते युद्ध क्षेत्र में ये समय युद्ध का परिणाम तय करने के लिए पर्याप्त था। वास्तव में पिछली लड़ाई में यदि स्काईशिप पहले आ गए होते तो सैनिकों की हताहतों की संख्या निश्चित रूप से इतनी अधिक नहीं होती। इसलिए रॉकी ने प्रतिदिन गश्त के लिए 2 स्काईशिप भेजने का निर्णय लिया, एक ओर ताकि पूर्व चेतावनी दी जा सके और दूसरी ओर इन दोनों स्काईशिप को युद्ध शुरू होते ही अन्य स्काईशिप के आने से पहले युद्ध के मैदान को दबाने के लिए आर्मर के साथ तुरंत शामिल होने की अनुमति मिल सके। इस मामले पर चर्चा समाप्त करने के बाद लिनफेंग ने रॉकी को एक अन्य मुद्दे के बारे में बताया। वास्तव में रॉकी के साथ चर्चा करने के लिए उसके पास अन्य मामले भी थे। कमांडर रॉकी, मैंने कल गांव के मुखिया से इस बारे में बात की थी। इस बार राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम लड़ते रहे तो मेरा अंदाजा है कि हमारे लिए एक महीना भी टिक पाना मुश्किल होगा, इसलिए खनन कार्यक्रम को घटाकर 20 दिन करने का फैसला किया गया है। खनन अवधि कम करने का मतलब है कि अब आपके मिशन का समय एक महीने के बजाय 20 दिन का होगा। लेकिन निश्चिंत रहें कमांडर रॉकी, मिशन के लिए कमीशन का भुगतान अभी भी हमारी पूर्व सहमति के अनुसार ही किया जाएगा और युद्ध में मारे गए सभी राक्षस, जिनमें हमारे द्वारा मारे गए राक्षस भी शामिल हैं, आपके होंगे। कमांडर रॉकी, आप क्या सोचते हैं? ऐसा कहकर लिनफेंग ने रॉकी की ओर देखा, मानो उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हो। यह असाधारण रूप से दुर्लभ था, लेकिन लिनफेंग की निगाहों में घबराहट का भी संकेत था, जैसे कि उसे डर था कि रॉकी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा। रॉकी को देखकर लिनफेंग को अजीब सी घबराहट महसूस हुई, उसे डर था कि कहीं रॉकी उसे मना ना कर दे। क्योंकि उनकी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य यही था। जैसा कि उसने पहले बताया था, खनन ने वाकई बहुत सारे राक्षसों को आकर्षित किया था, लिन फैंग की उम्मीदों से कहीं ज्यादा, जिससे उसे और गांव के मुखिया को खनन जल्दी बंद करने का फैसला लेना पड़ा। वरना बैकहिल गांव एक महीने भी नहीं टिक पाता। इस निर्णय का एक अन्य कारण ये था कि लिन फैंग और गांव के मुखिया को उम्मीद थी कि इससे रॉकी यहीं रहेगा। ये बात नहीं थी कि वह अपने सैनिकों को हमेशा के लिए बैकहिल गांव में रहने के लिए ले जाएं, बल्कि यह थी कि कार्य पूरा होने तक वहीं रहें, जो कि बैकहिल गांव के लिए सबसे महत्वपूर्ण मामला था। कल की लड़ाई ने गांव की सेना को तहस नहस कर दिया था, न सिर्फ कई घायल हुए थे बल्कि कई मारे भी गए थे, जिससे उनकी ताकत काफी कमजोर हो गई थी। ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से प्राथमिक रक्षा की जिम्मेदारी रॉकी और उसके नेतृत्व वाले भाड़े के सैनिकों के समूह, जिसे गार्ड कोर भी कहा जाता है, पर आ गई। यद्यपि कल की लड़ाई में गार्ड कोर को भी हताहत होना पड़ा, लेकिन अनुपात बहुत अधिक नहीं था और उन्होंने अभी भी काफी लड़ाकू ताकत बनाए रखी। साथ ही कल के युद्ध में आकाश जहाजों का प्रदर्शन भी प्रभावशाली रहा। अगर 10 आकाश जहाजों ने उस महत्वपूर्ण क्षण में राक्षसों की पांचवीं और छठी लहरों को न रोका होता, तो कल के युद्ध का परिणाम शायद कुछ और होता। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए रॉकी और उसकी रक्षक सेना अब बैकहिल गांव की मुख्य रक्षा सेना बन गई थी। बैकहिल गांव अगले राक्षसी हमले का सामना कर पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह से रॉकी, रक्षक सेना और स्काईशिप्स के प्रदर्शन पर निर्भर था। यही कारण था कि लिन फैंग और बैकहिल गांव के लोग बहुत चिंतित थे। उन्हें चिंता थी कि रॉकी कार्य पूरा होने से पहले ही चला जाएगा। कल के भीषण युद्ध का अनुभव करने के बाद एक मूर्ख भी समझ सकता था कि अगला युद्ध और भी भयानक होगा। इसलिए रॉकी का जल्दी चले जाना स्वाभाविक था, खासकर जब बैकहिल गांव के अस्तित्व से उसका कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस एक मिशन पूरा करने वहां गया था, और बस। एक बार जब रॉकी अपने सैनिकों को ले जाएगा, विशेष रूप से 10 स्काईशिप को अपने साथ ले जाएगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि बैकहिल गांव राक्षसों के अगले हमले में खत्म हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे 6 महीने पहले हुआ था। हालांकि 6 महीने पहले के विपरीत इस बार बैकहिल गांव में राक्षसों का विरोध करने के लिए 600 या 700 सैनिक नहीं थे। ऐसी स्थिति में रॉकी और उसकी सेना को बनाए रखने के लिए लिन फैंग और ओल्ड जैक ने मिलकर खनन अवधि को घटाकर 20 दिन करने का फैसला किया था। खनन समय कम करने से रॉकी का रक्षात्मक कार्य स्वाभाविक रूप से आसान हो जाता। इसके अतिरिक्त बैकहिल विलेज ने कमीशन में काफी वृद्धि की, इस उम्मीद में कि इससे रॉकी को वहां रहने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। शायद कुछ लोगों को यह अजीब लगे, क्योंकि इस मिशन के लिए कमीशन तो बड़ा ही नहीं था, है ना? लिन फैंग ने तो बस इतना कहा था कि रॉकी सभी राक्षसों की लाशें ले जा सकता है, और बस। दरअसल लिन फैंग ने केवल वह संक्षिप्त बयान दिया था जो मामूली लग सकता है, लेकिन अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। इस मिशन में सोने के सिक्कों और खनिजों से संबंधित कमीशन वास्तव में मामूली था, असली मूल्य युद्ध की लूट में था, जो राक्षसों की लाशें थी। गौर करने वाली बात यह है कि आकाशीय राक्षसों की लाशें बहुत कीमती थी। एक एक लाश कम से कम कुछ 1000 सोने के सिक्कों में बिकती थी, और उनका 10,000 में बिकना कोई असामान्य बात नहीं थी। इसलिए रॉकी जितनी ज्यादा राक्षसों की लाशें हासिल करता, उतना ही ज्यादा पैसा कमा पाता। लेकिन पिछले समझौते के अनुसार केवल रॉकी और गार्ड कोर द्वारा मारे गए राक्षसों को ही उनकी लूट माना जाता था और उन्हें लिया जा सकता था। लिन फैंग और बैकहिल गांव के अन्य लोगों द्वारा मारे गए राक्षसों को वे छू नहीं सकते थे, क्योंकि वे गांव की लूट का हिस्सा थे। हालांकि रॉकी को अपने पास रखने के लिए बैकहिल गांव के लोगों ने लूट का अपना हिस्सा छोड़ने और उसे रॉकी को सौंपने का फैसला किया। रॉकी के लिए ये सचमुच एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मिशन की शुरुआत से लेकर अब तक रॉकी और लिन फैंग ने मिलकर कम से कम 70 राक्षसों का सफाया कर दिया था। इसका मतलब था कि अगर मिशन अभी खत्म होता तो रॉकी को कम से कम 70 काली आंखों वाले राक्षसों की लाशें मिलती। शायद काली आंखों वाले राक्षस विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थे और उनकी लाशों की कीमत भी अधिक नहीं मिलती थी, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से कम 1000 स्वर्ण सिक्कों में बेचा जा सकता था, है ना? 70 लाशें, भले ही प्रत्येक 1000 स्वर्ण मुद्राओं में बिकती हों, तो भी वह 70,000 स्वर्ण मुद्राएं ही थीं। इसके अलावा काली आंखों वाले राक्षसों की लाशें निश्चित रूप से 1000 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा कीमती थीं। वास्तविक कीमत निश्चित रूप से कहीं ज्यादा होगी, और रॉकी जो पैसा कमा सकता था वह निश्चित रूप से 70,000 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा होगा। और यह न भूलें कि मिशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। आगामी कार्यों में लड़ाइयां जारी रहने वाली थीं और अधिक राक्षसों का आना निश्चित था, इसलिए रॉकी को और भी अधिक काली आंखों वाले दानव शव प्राप्त होंगे, जिसका अर्थ है कि जब मिशन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रॉकी कम से कम 100 राक्षस शव प्राप्त कर सकता था। 100 राक्षसों की लाशें सभी सोने के सिक्कों में परिवर्तित हो गईं, कितना पैसा होगा? भले ही रॉकी सोने के सिक्कों और संख्याओं के प्रति एलिन जितना संवेदनशील नहीं था, फिर भी वह जानता था कि यह निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ था, इतना बड़ा कि इससे थंडहॉक सिटी का पूरा खजाना भर सकता था। इसलिए जब लिन फैंग ने बोलना समाप्त किया तो रॉकी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और गहरी सोच में डूब गया। ये कहना असंभव होगा कि उन्होंने कभी मिशन को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था, खासकर तब जब खतरे का स्तर पहले ही उनकी उम्मीदों से अधिक हो चुका था, विशेष रूप से कल की लड़ाई के अंत के बाद जब रॉकी के मन में वास्तव में हार मानने का विचार था। लेकिन वह हिचकिचाया। ये झिझक इस बात को लेकर थी कि यदि उन्होंने मिशन छोड़ दिया तो थंडहॉक सिटी का क्या होगा। बैकहिल गांव में रॉकी की पहचान सिर्फ एक भाड़े के सैनिक समूह के नेता की थी, लेकिन अगर वह वास्तव में सिर्फ एक कमांडर होता तो ये ठीक होता, लेकिन अफसोस वह नहीं था। उसकी असली पहचान एक शहर का स्वामी था। एक शहर के स्वामी के रूप में रॉकी के पास विचार करने के लिए बहुत सी बातें थीं, जैसे कि इस मिशन के कमीशन के बिना थंडहॉक शहर पहले की तरह ही वित्तीय संकट में कैसे फंस जाएगा और फिर क्या होगा। मिशन को छोड़ना आसान था, लेकिन थंडहॉक सिटी को एक और संकट से निकालना मुश्किल था। इन चिंताओं के कारण ही जब लिन फेंग ने रॉकी को बनाए रखने के लिए कमीशन बढ़ाया तो रॉकी को सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ा कि क्या इस पर्याप्त कमीशन राशि के लिए रुकना है या सुरक्षा को प्राथमिकता देना और जल्दी छोड़ देना है। दो विकल्प, प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान, अब रॉकी को उन पर विचार करना था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रॉकी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना फैसला सुना दिया। फिर उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाते हुए कहा, कैप्टन लिन फेंग, जैसा आपने कहा था वैसा ही करते हैं, हम इस मिशन के अंत तक डटे रहेंगे। महान, उसके शब्दों को सुनकर लिन फेंग ने राहत की एक बड़ी सांस ली, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और उसे रॉकी की हथेली से कसकर पकड़ लिया। रॉकी के साथ सब कुछ तय हो जाने के बाद लिन फेंग वहां से चला गया और दिन पूरी तरह से उगने के साथ तथा रॉकी को स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता होने के कारण गांव की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अकेले लिन फेंग पर आ गई, जिसका मतलब था कि वह वहां ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता था। लिन फेंग के जाने के बाद रॉकी ने लिलिया को एक नया काम सौंपा और उसे गार्ड कोर का मूड जानने को कहा। ऐसे नाजुक पल में अगर गार्ड कोर में कोई समस्या हुई तो बहुत परेशानी होगी। ये काम आमतौर पर रॉकी खुद ही करता, क्योंकि भले ही लिलिया और मोटे पहरेदारों के दिलों में बहुत प्रतिष्ठित थे, फिर भी वे रॉकी की बराबरी नहीं कर सकते थे। पहरेदारों की नज़र में रॉकी न सिर्फ उनका नगर स्वामी था बल्कि उनका आदर्श भी था। उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति ने निश्चित रूप से उनका मनोबल काफी बढ़ा दिया होगा। अफसोस की बात है कि रॉकी जाना नहीं चाहता था, बल्कि उसका शरीर उसे जाने नहीं दे रहा था। पिछली लड़ाई ने उसे पूरी तरह से थका दिया था और वह एक दिन भी आराम किए बिना बिस्तर से उठ नहीं सकता था। अगर वह अपनी कमजोर हालत में गार्ड कोर में जाता तो शायद उनका मनोबल नहीं बढ़ता बल्कि इससे उनका मनोबल और भी गिर जाता। इसलिए ये कार्य केवल लिलिया को ही सौंपा जा सकता था कि वह पहले पहरेदारों की आत्माओं की जांच करे। और जब लिलिया भी तंबू से बाहर चली गई तो बिस्तर पर पड़ा रॉकी चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि आगे कैसे बचाव किया जाए, जबकि वह धीरे धीरे समय बीतने का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे दिन बीत गया और यह भी एक घटनाहीन दिन था। जहां तक आज की शांति की बात है, चाहे वह रॉकी हो, लिन फेंग हो या कोई और, उन सभी को इसकी उम्मीद थी क्योंकि हाल ही में ऐसी ही स्थिति घटित हुई थी। ऐसी ही परिस्थितियों की पुनरावृत्ति ने सभी को अनुभव प्रदान किया था। वे सभी जानते थे कि शांति का एक क्षण अगले तूफान के आने से पहले की शांति मात्र है। फिर भी इसी तरह इस अपशकुन ने भी सभी के तनाव को बढ़ा दिया, क्योंकि इसका तात्पर्य था कि जब अगली बार राक्षस प्रकट होंगे तो फिर से भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा। इस आसन भयंकर युद्ध का सामना करते हुए कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। हर कोई केवल छोटी ऊंची दीवारों के पीछे इंतजार कर सकता था, उस अपरिहार्य घटना का इंतजार कर रहा था जो धीरे धीरे आने वाली थी। हालांकि ये शांति अब बैकहिल गांव के लिए बुरी बात नहीं थी, कम से कम इसने उन सैनिकों को पूरी तरह से आराम करने का मौका दिया जिन्होंने अभी अभी भयानक लड़ाई लड़ी थी, और घायल सैनिकों को ठीक होने का मौका मिला। बस इसी तरह पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। बिस्तर पर पड़ा रॉकी आखिरकार बिस्तर से उठ पाया। बिस्तर से उठने के बाद उसने अपनी मांसपेशियों को स्ट्रेच करने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारे और पाया कि हालांकि अभी भी दर्द हो रहा था, लेकिन उसे काफी हद तक काबू में रखा जा सकता था। अगली लड़ाई में भाग लेना अब कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही वह तुरंत गार्ड कोर के पास चले गए। एक दिन पहले रॉकी ने लीलिया को गार्ड्स का हालचाल जानने के लिए बुलाया था, लेकिन लीलिया जो खबर लेकर आई वह अच्छी नहीं थी। पिछली भयानक लड़ाई के बाद गार्ड्स का मनोबल बहुत गिर गया था, मानो उन्हें कोई बुरी हार मिली हो। इससे रॉकी बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि आने वाली लड़ाई में गार्ड कोर ही मुख्य रक्षा बल होगा। अगर उनकी मानसिकता में कोई समस्या होती तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। इसलिए जैसे ही रॉकी को होश आया वह जल्दी से गार्ड कोर की ओर चल पड़ा। रॉकी के कैंप के छोटे से प्रशिक्षण मैदान में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। पहरेदारों ने अभी अभी अपनी नियमित ट्रेनिंग पूरी की थी और आराम कर रहे थे। मेरे नाथ, महाराज आप आ गए। गार्ड जो उस स्थान पर आराम कर रहे थे रॉकी को देखते ही तुरंत उठ खड़े हुए और सहज रूप से पंक्तियां बनाने लगे। पंक्ति बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस ये देखने आया था कि आप सब कैसे हैं। कृपया बैठ जाए। रॉकी ने सभी की ओर हाथ हिलाते हुए न केवल औपचारिकताएं पूरी की बल्कि उनके साथ जमीन पर बैठ भी गए। आपने किस तरह संभाला हुआ है? गार्डों के साथ एक घेरे में बैठकर रॉकी ने भाषण नहीं दिया बल्कि उनके साथ बातचीत करने लगा। इस मिशन के माध्यम से, विशेष रूप से कई लगातार लड़ाइयों के बाद, रॉकी इन गार्डों से बहुत परिचित हो गया था और अब वह गार्ड कोर के प्रत्येक व्यक्ति का नाम सटीक रूप से बता सकता था। इसी तरह पहरेदार भी उससे पहले से ज्यादा परिचित हो गए थे। इस समय, हालांकि वे अब भी रॉकी का बहुत सम्मान करते थे, उन्हें अब वह इतना दुर्गम नहीं बल्कि ज्यादा मिलनसार लगता था। हालांकि, फिर भी, जब रॉकी ने बोलना समाप्त किया तब भी सभी लोग चुप हो गए, उनके सिर नीचे झुक गए, किसी ने भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। मैंने लिलिया से सुना है कि आपकी हालत ठीक नहीं है, इस तनावपूर्ण माहौल में रॉकी फिर बोला। दुर्भाग्यवश इस बार भी किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। क्या तुम युद्ध से डरते हो? रॉकी ने शांत भाव से पूछा, जैसे ही उसने खामोश पहरेदारों की ओर देखा। या फिर तुम मरने से डरते हो? जब उसने ये शब्द समाप्त किए तो कुछ मुख पहरेदारों ने अपने सिर ऊपर उठाए, कुछ की आंखों में आंसू भी थे। युद्ध के मैदानों में मौत एक आम घटना है जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, न ही उसका जिक्र करना चाहता है। फिर भी पिछली लड़ाई में, हालांकि गार्ड कोर के हताहतों की संख्या बैकहिल विलेज के सैनिकों की तुलना में कम थी, फिर भी युद्ध के मैदान में लोग मारे गए, जो सभी के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी जिससे वे अनिश्चित थे कि इसे कैसे निपटें। भगवान, अंकल रीड मर गए, वह मर गए। उसी समय एक युवा व्यक्ति अचानक खड़ा हुआ और रॉकी की ओर देखने लगा। रॉबिन जो खड़ा हुआ वह कोई और नहीं बल्कि गार्ड कोर का सबसे युवा सदस्य रॉबिन था। वह रॉकी की तरफ देख रहा था, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, वह बेहद परेशान लग रहा था। जहां तक रीड की बात है, जिसका जिक्र उसने किया था, रॉकी उसे अच्छी तरह जानता था। रीड एक भोले भाले ईमानदार चाचा थे, आगा से बस एक साल छोटे, और गार्ड कोर में एक बड़े माने जाते थे। वे आमतौर पर सबका बहुत ख्याल रखते थे और सबसे छोटे रॉबिन का खास तौर पर ध्यान रखते थे, इसलिए दोनों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता और भावनात्मक जुड़ाव था। हालांकि अंतिम लड़ाई के दौरान रीड बच नहीं पाया, एक राक्षस ने उसकी छाती में वार कर दिया और वह तुरंत मर गया। इस घटना ने रॉबिन को बहुत प्रभावित किया था, इसलिए जब रॉकी ने मौत का जिक्र किया तो रॉबिन को रीड की याद आई और उसकी भावनाएं बेकाबू हो गईं और वह फूट फूट कर रोने और सिसकने लगा। रॉकी पर रॉबिन की गहरी छाप थी, उसे अब भी याद था कि मूल्यांकन के दौरान वह बाघ जैसे सिर वाला युवक कैसा दिखता था, और इस दौरान हुई उनकी बातचीत से उसे समझ आया कि रॉबिन पूरी तरह से भावनाओं से प्रेरित था। इसके बाद रॉकी ने रॉबिन को इशारा करके अपने पास आने का संकेत दिया। रॉबिन, क्या तुम डरे हुए हो? रीड की तरह युद्ध के मैदान में मरने से डरे हुए हो? नहीं, मैं डरा नहीं हूँ, मैं अंकल रीड से बदला लेना चाहता हूँ। रॉकी द्वारा ऐसा पूछे जाने पर रॉबिन ने तुरंत अपना सिर उठाया, उसका दावा अटल था। इस जवाब पर रॉकी ने सिर हिलाया और फिर उसने अन्य गार्डों की ओर मुड़कर वही सवाल पूछा। क्या तुम डरे हुए हो? क्या तुम रीड की तरह युद्ध के मैदान में मरने से डरते हो? सवाल वही पर जवाब अलग अलग थे। कुछ पहरेदारों ने सिर हिलाया, कुछ ने सिर नीचे कर लिया, सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग थी। सर, क्या आपको डर नहीं लग रहा? क्या आपको मरने का डर नहीं लग रहा? ये स्पष्ट नहीं था कि अचानक किसने रॉकी से पूछा, जिससे सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। डर नहीं लगता, बिना किसी हिचकिचाहट के रॉकी ने अपना सिर हिलाया, मुझे डर नहीं है क्योंकि आप सभी मेरे साथ हैं। इस जवाब से सभी पहरेदार दंग रह गए, लेकिन रॉकी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। वह तुरंत खड़ा हो गया, सब लोग हिम्मत रखो, इस बार हम जरूर जिंदा वापस लौटेंगे। ये कहने के बाद वह अभ्यास स्थल से बाहर निकला और बहुत तेजी से सीधे अपने तंबू की ओर चल पड़ा। वह वास्तव में जल्दी में था, क्योंकि जब वह गार्डों के साथ बातचीत कर रहा था, उसने मोटे को फेली के साथ शिविर में आते देखा और मोटे ने जल्द ही उसे दूर से एक सार्थक नजर दी, ये संकेत देते हुए कि वे पहले तंबू के अंदर जाते हैं। परिस्थितियों को देखते हुए रॉकी को अचानक बातचीत समाप्त करनी पड़ी, क्योंकि स्पष्ट रूप से कुछ तो गड़बड़ थी। इस मिशन में फेली बैकहिल गांव में ललाट युद्ध में भाग लेने के लिए नहीं रुका था, बल्कि रॉकी द्वारा उसे स्काईशिप का कमांडर नियुक्त किया गया था, जो युद्ध क्षेत्र में सहायता के लिए 10 स्काईशिप को निर्देशित करने का प्रभारी था। अंतिम युद्ध के बाद रॉकी ने स्काईशिप को आदेश दिया था कि वे प्रतिदिन बैकहिल गांव के आसपास दो दो के समूह में गश्त करें तथा किसी भी राक्षस के दिखने पर तुरंत सूचना दें। इस कार्य के लिए फेली जिम्मेदार था, इसलिए सिद्धांततः फेली को शिविर में उपस्थित नहीं होना चाहिए था, उसे आकाश से ही स्काईशिप का संचालन करना चाहिए था। तंबू में वापस आकर रॉकी ने देखा कि फेली और मोटे पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। फेली, क्या समस्या है? जैसे ही रॉकी ने फेली को देखा, उसने तुरंत पूछा। सर, गश्त करते समय मैंने राक्षसों को देखा, बिना समय गंवाए फेली ने सीधे कहा, और यह सुनकर रॉकी गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। राक्षस इतनी जल्दी आ गए? तुमने कितने राक्षस देखे? वे कब हमला कर सकते हैं। जैसे ही उसने यह बात कही, रॉकी तंबू से बाहर निकलने और अपने सैनिकों को हमला करने के लिए ले जाने के लिए तैयार था। लेकिन उसी समय फेली ने उसे रोक दिया। सर, कृपया चिंता न करें, हमने राक्षसों को तितर बितर कर दिया है, लेकिन मैं रिपोर्ट करने के लिए वापस आया हूं क्योंकि कुछ गड़बड़ लग रही थी। क्या? रॉकी तेजी से फेली की ओर मुड़ा, उसका मतलब नहीं समझ पाया।